अध्याय का आनंद लें। अनिंसार, हम सुरक्षित रूप से उस क्षेत्र में लौटने में सफल रहे। जाहिर है सीवर से निकलने का रास्ता अज्ञात था, इसलिए ड्यूक और उसके लोग बिना किसी समस्या के स्टैंड बाय पर रखे गए सैनिकों के साथ जुड़ने में सक्षम थे और तुरंत ड्यूक के क्षेत्र में लौटने में सफल रहे। मेरी वापसी विधि मूल ब्यूटर थी, जिसे मैंने लर्डन के उत्तर पूर्व में जंगल में हवाई अड्डे पर छिपा दिया था, लेकिन बेहतर मॉडल के अभ्यस्त होने के बाद मुझे पुराने को उड़ाना थोड़ा मुश्किल लगा। आखिरकार मैं किए गए सुधारों से संतुष्ट था और साथ ही इसने मेरे इंजीनियर होने की भावना को और अधिक सुधार करने के लिए प्रेरित किया। मुझे नहीं पता कि यह कब होगा, लेकिन मैं एक ग्लाइडर बनाना चाहूंगा जैसा कि मैंने पिछले जन्म में उड़ाया था, जिसमें दो सीटें हों या फिर अधिक सीटों वाला एक हल्का विमान। खैर, मैंने सुना है कि तब से शाही राजधानी में स्थिति अच्छी नहीं रही है। इस बार जब सामंतों ने राजा का निर्णय सुना तो उनकी प्रतिक्रियाएं विभाजित थीं। सबसे पहले दक्षिणी अभिजात वर्ग, जो ड्यूक ऑफ रैम्सलेट के इर्द गिर्द मजबूती से एकजुट थे, ने एक भी दलबदल किए बिना ड्यूक का समर्थन किया। यह इस तथ्य का परिणाम था कि आधारभूत कार्य काफी पहले ही कर लिया गया था, तथा पूर्व में ईस्ट साम्राज्य से खतरा महसूस करने वाले लॉर्ड्स ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उनमें से कई लोग ड्यूक ऑफ रैम्सलेट के अनुरूप ही रुख अपनाते प्रतीत होते हैं। इसके दो कारण हैं। पहला ये कि अगर ड्यूक ऑफ रैम्सलेट के क्षेत्र से खाद्य आपूर्ति बंद हो गई तो कई क्षेत्र भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। ब्रुसेनी की भूमि चाहे कितनी भी उपजाऊ क्यों न हो, ये स्पष्ट है कि शाही सेना राज्य के साथ खिलवाड़ करेगी। इसके अलावा उत्पादन में सुधार आने में काफी समय लगेगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी संख्या में निवासियों को निष्कासित कर दिया है। आखिर क्या यह अब भी एक पुरानी दुश्मनी है? मुझे नहीं पता कि उन्होंने वहां के निवासियों को क्यों भगाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वे रोमन साम्राज्य से सीख लेंगे, जिसने अपने विजित लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया था। खैर, इस दुनिया में प्राचीन रोम के बारे में जानने का कोई तरीका नहीं है, और इतिहास में जैसा कि मैंने यहां सीखा है, उससे बड़ा कोई साम्राज्य नहीं है। अब कहानी पर वापस आते हैं। दूसरा कारण ड्यूक ऑफ रैम्सलेट के परिवार का एक साहसी व्यक्ति होने के नाते मेरा अस्तित्व है। पूर्वी साम्राज्य पर मेरी एक तरफा बमबारी और उस पर कब्जा पहले से ही अच्छी तरह से ज्ञात है, विशेष रूप से उन सैनिकों को जिन्होंने पूर्व में ब्रुसेनी की लड़ाई में भाग लिया था और उन्होंने इसकी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। जब तक मैं आपके पक्ष में हूँ, यह आश्वस्त करने वाला है, लेकिन जिस क्षण मैं आपके विरुद्ध हो जाता हूँ, ये दुस्वप्न में बदल जाता है। आखिरकार उड़ान भरने और उतरने के दौरान मुझ पर हमला करने के अलावा मुझे मार गिराने का कोई रास्ता नहीं था, साथ ही ऊपर से बम और आग लगाने वाले बम लगभग बिना किसी सीमा के बरस रहे थे। ऐसे प्रतिद्वंद्वी के साथ मनोबल बनाए रखना कोई बड़ी बात नहीं रह गई थी। वास्तव में पूर्वी सेना ने युद्ध के बीच में ही लड़ने की इच्छा शक्ति खो दी थी। अब दूसरी ओर पश्चिम और उत्तर के रईस शाही परिवार का समर्थन कर रहे हैं, तथा उनकी राय है कि ड्यूक ऑफ रैम्सलेट को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। हालांकि कई कुलीन लोग पश्चिम में वर्तमान राजा और युवराज तथा उत्तर में द्वितीय राजकुमार का समर्थन करते हैं, इसलिए जबकि वे प्रत्यक्ष रूप से ड्यूक ऑफ रैम्सलेट की निंदा कर रहे हैं, वे आंतरिक कलह की स्थिति में भी हैं। और राजा ने विद्रोही ड्यूक ऑफ रैम्सलेट को अधीन करने के आदेश पर जोर दिया है। हालांकि राजा के आदेश के बावजूद जब वास्तव में सेना भेजने की बात आती है तो लॉर्ड्स अपने स्वयं के सैनिकों या अपने गुट के सैनिकों को खोने के लिए अनिच्छुक होते हैं। यह एक ऐसी गड़बड़ स्थिति है जिसके बारे में मैंने विश्व इतिहास में सुना है, लेकिन मैं आभारी रहूंगा यदि मेरा प्रतिद्वंद्वी वास्तव में ऐसी स्थिति में फंस जाए। दूसरी ओर ड्यूक ने निर्दयतापूर्वक कार्रवाई की। सबसे पहले उन्होंने अपने क्षेत्र के बाहर गेहूं का निर्यात रोक दिया। इसका प्रकट कारण यह है कि इसे जॉस साम्राज्य के आक्रमण के परिणामस्वरूप लूटा गया था, लेकिन वास्तविकता अलग है। सबसे पहले ये गेहूं के बीज बोने का समय नहीं था, इसलिए नुकसान उतना बड़ा नहीं था जितना बताया गया था, और रैम्सलेट ड्यूकडम को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उन्हें जॉस साम्राज्य से लूटे गए धन से अधिक मुआवजा मिला था। इसके प्रमाण के रूप में ड्यूक ऑफ रैम्सलेट का समर्थन करने वाले क्षेत्रों जैसे मार्गरेट अल्टमंट और इसाबेला लुइनबर्ग में वितरण की अभी भी अनुमति है। हालांकि इस गेहूं प्रतिबंध ने गैर रैम्सलेट ड्यूकल क्षेत्रों में रहने वाले आम लोगों के जीवन पर भारी प्रभाव डाला। गेहूं की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और कुछ शहरों में प्रतिबंध शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर ही रोटी की कीमत दोगुनी हो गई है। मुझे उन पर तरस आ रहा था, लेकिन मैं चुपचाप बैठकर राजा के अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकता था। यहां मेरे दिल को राक्षस बनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगली बात जो घटित हुई वह थी साहसी लोगों का एक विशाल प्रवास। साहसी लोग राक्षसों का शिकार करके और खजाना हासिल करने के लिए कालकोठरी पर विजय प्राप्त करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन उनके काम की प्रकृति के कारण उन्हें अन्य शहरों में जाने की अनुमति होती है। जब गेहूं की कीमतें आसमान छूने लगी तो इनमें से कई साहसी लोग ड्यूक ऑफ रैम्सलेट के इलाके या ऐसे दूसरे शहरों में चले गए जो गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर थे। कहा जाता है कि इनमें से कुछ युद्ध की मांग की आशंका में ड्यूक ऑफ रैम्सलेट के इलाके में चले गए थे। उनमें से मार्गरेट का अल्मंड विशेष रूप से लोकप्रिय माना जाता है, और मैंने सुना है कि काफी संख्या में साहसी लोग ओर्क के मांस के लिए वहां गए हैं, जिसे ओर्क्स के महान कालकोठरी में उत्पादित किया जा सकता है। मैं केवल यही आशा कर सकता हूं कि मास्टर और अन्य लोग भी इस समूह में शामिल हों। खैर, अब तक हम उस योजना का पालन कर रहे हैं जिस पर मैंने ड्यूक के साथ चर्चा की थी। भविष्य के लिए मैं कुछ चीजें सोच रहा हूं, लेकिन अभी भी कई अनिश्चितताएं हैं। विशेष रूप से ये देखना आवश्यक है कि ईस्ट एम्पायर, जिसने अपने दो महत्वपूर्ण लोगों को खो दिया है, तथा यूनाइटेड किंगडम ऑफ नॉसेंट, जिसने अभी तक अपने पड़ोसी देशों में राजनीतिक परिवर्तनों पर कोई कदम नहीं उठाया है, किस प्रकार उभरेंगे। इसके अलावा स्थिति अप्रत्याशित है कि गैर रैम्सलेट गुट के स्वामी क्या करेंगे, क्योंकि समय के साथ खाद्य स्थिति और खराब होती जा रही है। तारांकन 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 तारांकन। मैंने अपना दिन का काम खत्म किया और अन्ना के कमरे में आ गया। वैसे मेरा काम ड्यूक के राजनीतिक मामलों में उनकी मदद करना है। ऐसे में जहां ड्यूक के इलाके को बिल्ली के पंजे की भी जरूरत है, बेकार की बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। टीएल, बिल्ली का पंजा कर्मचारियों की कमी को दर्शाता है। शुभ संध्या अन्ना, आज तारे भी बहुत सुंदर चमक रहे हैं। मैंने उसे पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जो नौकरानियां प्रतिदिन उसकी सेवा करती हैं, वे ये सुनिश्चित करती हैं कि वह अच्छी तरह से तैयार हो, और वह शानदार दिखती है, एक विस्तृत रूप से बनाई गई मूर्ति की तरह सुंदर। मैंने धीरे से अन्ना के शरीर को उठाया और उसे अपनी ओर मुंह करके घुमाया, ताकि बिस्तर पर घाव न हो, इसलिए उसकी स्थिति बदल दी। हर बार जब मैं उसका शरीर उठाता हूँ, जो हल्का और पतला हो गया है, तो मेरा दिल बैठ जाता है। सुनो अन्ना, ड्यूक ने अन्ना की मुझसे शादी के लिए सहमति दे दी है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारे जागने का समय आ गया है? बेशक मुझे पता है कि ऐसा नहीं होगा। मैं उसे उठाकर उससे बातें करती हूँ और उसके जोड़ों को ढीला छोड़ने की कोशिश करती हूँ, ताकि वे अकड़ न जाएं। ये सही है, परसों अन्ना का जन्मदिन है ना? हमें हवेली में तुम्हारा जन्मदिन मनाए हुए काफी समय हो गया है, और हवेली में हर कोई इसे लेकर बहुत उत्साहित है। तो तुम्हें पता है, कृपया उठ जाओ। मैं नहीं कर सकता, मैंने मुस्कुराकर उससे बात करने का फैसला किया था। मैं थोड़ा रोने लगा, यदि अन्ना इस अवस्था में जागती तो उसे चिंता होती। अन्ना, शुभ रात्रि। जब मैंने उसे फिर से बिस्तर पर लिटा दिया, तो मैंने उसके माथे पर हल्के से चुंबन किया और कमरे से बाहर चला गया। चांदनी में अन्ना का शरीर अभी भी इतना सुंदर और नाजुक लग रहा था कि मुझे डर था कि वह किसी भी क्षण गायब हो जाएगी। स्वागत है दोस्तों, मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद उलिसिस। म्यूजिकल नोट कैरेट कैरेट। और अब वह क्षण आ गया है जिसका सभी को इंतजार था। अध्यायों का आनंद लें। अनिंसार, मैंने नौकरानी से तैयार होने और औपचारिक पोशाक पहनने में मदद मांगी। मैंने अपने बाल संवारे और उपहार ले लिया। ठीक है, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। फिर मैं अपनी माँ को लेने उनके कमरे में गया। वैसे जब से ड्यूक ने अन्ना से मेरी शादी को मंजूरी दी है, मेरी माँ भी ड्यूक के आवास में रह रही हैं। इसका कारण यह है कि डचेस के मंगेतर की माँ भी निशाने पर है और उसे संरक्षित करने की जरूरत है। मैं समझ गया, निश्चित रूप से ये सच है। कुलीन समाज परेशान करने वाला जरूर है, लेकिन मैंने खुद को इसी रास्ते पर चलने के लिए तैयार कर लिया है। मुझे लगता है मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद मेरी माँ एक ड्रेस पहनकर अपने कमरे से बाहर आईं। उन्हें हील्स और ड्रेस पहनने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, जिसकी उन्हें आदत नहीं थी, लेकिन वो मेरी हमेशा की तरह सौम्य माँ से अलग दिख रही थी और मुझे वो बहुत खूबसूरत लगी। मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें अन्ना के कमरे में ले गया। नौकरानी ने मेरे लिए दरवाजा खोला और हम अंदर गए। ड्यूक, एलिजाबेथ सान और फ्रेडरिक सान पहले से ही वहां मौजूद थे और अन्ना के पास खुशी से बातें कर रहे थे, जो अभी भी बिस्तर पर सो रही थी। मैं देरी से हूँ, आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। माँ ने विनम्रता से उनका अभिवादन किया, जबकि मैं अपने सामान्य स्वभाव में था। हाहा, अभी तो समय भी नहीं हुआ है, फिर भी हम सब यहाँ हैं। मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली और पाया कि ड्यूक सही कह रहा था, अभी तो 10 मिनट ही हुए थे। लगता है आखिरकार सभी लोग अन्ना के जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ओह, ये सच है। तो फिर चलो थोड़ा जल्दी शुरू करते हैं। जब ड्यूक ने ये कहा तो वह एक बार खांसा और फिर अन्ना से धीरे से बोला, अन्ना, 17वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। ड्यूक के शब्दों को संकेत मानकर हम चुपचाप एक एक करके अपनी बधाई देते हैं। अच्छा अन्ना, मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हें सही जानकारी दे दूं। ड्यूक ने अन्ना का हाथ पकड़ लिया और ऐसा कहा, उसके चेहरे पर प्रार्थना का भाव था। अन्ना, तुम्हारा एलन तुम्हारा मंगेतर बन गया है। हालांकि जब अन्ना मूर्ति की तरह सोती रही, तो मैंने निराशा में अपना सिर हिलाया। इसके अलावा हमने आज तुम्हारे लिए अन्ना की बहुत सारी पसंदीदा चीजें तैयार की हैं। जितना चाहो उतना खाओ, ठीक है? ऐसा कहते हुए वह मेज पर सजाए गए सुंदर व्यंजनों की ओर इशारा करता है, लेकिन अन्ना कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और सोती रहती है। जन्मदिन मुबारक हो अन्ना, मैंने एक घर का बना केक बनाया है जो तुम्हें बचपन से पसंद है। अन्ना, जन्मदिन मुबारक हो। मैंने तुम्हारे लिए वो सफेद घोड़ा ला दिया है जिसके लिए तुम पूछ रही थी। वो बाहर है, कैसा रहेगा? क्या तुम उस पर सवारी नहीं करना चाहोगी? अनास्तासिया सामा, जन्मदिन मुबारक हो, और मेरे बेटे को चुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो अभी भी कई क्षेत्रों में कमजोर है। मैंने सुना है कि आपको ये पसंद आया। एलिजाबेथ सान ने उसे एक यादगार केक दिया। फ्रेडरिक सान ने उसे एक घोड़ा दिया जो अन्ना चाहता था, जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, और मेरी माँ ने उसे एक लपेटा हुआ मिष्ठान दिया, लेकिन अन्ना अभी भी सो रही थी। अब मेरी बारी है। जन्मदिन मुबारक हो अन्ना। मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें ये सब सहना पड़ा क्योंकि मैं काफ़ी अच्छा नहीं था। लो, ये रही वो स्काई नाइट तलवार जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। इतना कहकर मैंने तलवार निकाली और अन्ना को खूबसूरत पतली आसमानी नीले रंग की धार दिखाई। धार में उसका खूबसूरत चेहरा झलक रहा था। मैंने धीरे से अन्ना के हाथ में स्काई नाइट तलवार रख दी। ये तब की बात है। स्काई नाइट तलवार से एक चमकदार रोशनी चमक उठी। एह अन्ना, मैंने जल्दी से आगे बढ़कर अन्ना का हाथ पकड़ लिया, लेकिन वह इतना चकाचौंध था कि मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुंह फेर लिया। फिर जैसे ही प्रकाश बुझ गया, मैंने एक धीमी आवाज़ सुनी। लेल न, ये वह आवाज़ थी जिसे सुनने के लिए मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था। मैं इतने लंबे समय से यही उम्मीद कर रहा था। मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका और सो रही अन्ना को पूरी ताकत से गले लगा लिया। अन्ना अन्ना, आंसू अनवरत बहते रहते हैं। अरे लानत है, हालांकि मुझे मुस्कुराना चाहिए था। अन्ना ने मुझे कमजोर आवाज में धीरे से उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 लेन, मत रो। ऐसा कहते हुए उसने अपना बायां हाथ, जिसमें तलवार नहीं थी, मेरी पीठ पर रख दिया, लेकिन वह बहुत कमजोर था। मैं खुशी और सुरक्षा महसूस करता हूँ और साथ ही मेरा दिल दुख से भर जाता है। अन्ना, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। ए लेन, हमने एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे पीछे से खांसी की आवाज़ सुनाई दी। आह, मैंने उसके माथे को चूमा और धीरे धीरे अनिच्छापूर्वक अन्ना से दूर चला गया। पिता, वहाँ, माँ, भाई, ये क्या है? शायद बोलना कठिन है क्योंकि उसने कमजोर आवाज में तीनों लोगों को बुलाया। ओह ओह अन्ना, तुम्हारा वापस आना अच्छा है। ये प्रादेशिक निवास है। अन्ना अन्ना, फिर ड्यूक ने रोते हुए अन्ना को गले लगा लिया और एलिजाबेथ सान और फ्रेडरिक सान ने भी उसी तरह रोते हुए अन्ना को गले लगा लिया। उसके बाद हम सब खूब रोए और फिर हमें शांत होने में काफी समय लगा। तारांकन 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 तारांकन, एक बार फिर जन्मदिन मुबारक हो अन्ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ड्यूक के बधाई शब्दों का उत्तर अन्ना ने दृढ़तापूर्वक दिया, जो बिस्तर पर केवल अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा ऊपर उठाए बैठी थी। इसके बाद उसने अपना गला गीला करने के लिए थोड़ा पानी पिया, जिससे उसे कमोबेश बोलने में मदद मिली। ड्यूक ने अन्ना से बात करना जारी रखा। अन्ना, एलन ने तुम्हें अपहरण के बाद अकेले ही शाही महल से बचाया था और तुम्हें वापस यहाँ लाया था। एह एलन, तुम, मैं सचमुच ऐसा करना चाहता था। एलन, अन्ना खुश और थोड़ा उदास दिख रही है। मुझे यकीन है कि जब आपने सुना होगा कि मैंने ये सब अकेले ही किया है तो आप चिंतित हो गए होंगे। अन्ना, तुमने जिस आदमी को चुना है वह एक महान आदमी है। पिताजी, इससे इना आश्चर्य से आंखें घुमाती है। मैं तो बस इतना हैरान चेहरा देखकर ही बहुत खुश हूँ। अन्ना, जैसा वादा किया था, ड्यूक ने मुझे स्वीकार कर लिया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ जाता हूँ और अन्ना का हाथ पकड़कर एक बार फिर प्रस्ताव रखता हूँ। हाँ, जैसे ही उसने सिर हिलाया, मैंने धीरे से उसके गालों से आंसू पोंछे, फिर धीरे से उसे गले लगाया और चूमा। अध्याय का आनंद लें। अनिंसार, अन्ना के जन्मदिन के बाद सुबह से ही मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और अपने खाली समय में उसके पुनर्वास में मदद कर रहा हूँ। वह इतने लंबे समय से बिस्तर पर थी कि उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। पहले तो वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी, लेकिन अब वह इतनी स्वस्थ हो गई है कि सहारे से चल भी सकती है। मुझे नहीं पता कि उसे पहले की तरह तलवार चलाने और जादू पर नियंत्रण पाने में कितना समय लगेगा, लेकिन अन्ना की हालत दिन ब दिन सुधर रही है और इससे मुझे बेहद खुशी हो रही है। अन्ना सचमुच उस स्काई नाइट तलवार का इस्तेमाल करना चाहती है जो मैंने उसे दी थी। बेशक मैं उसकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वह ऐसी स्थिति में पड़े जहां उसे तलवार का इस्तेमाल करना पड़े, इसलिए इस बारे में मेरी मिली जुली भावनाएं हैं। हालांकि अन्ना मेरे बगल में इस तरह मुस्कुरा रही है और वह अभी भी जीवित है। केवल इसी बात से मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं, हम खुश हैं। इसके अलावा सौभाग्य से अन्ना को ज्यादा याद नहीं है कि जादुई तलवार उसके हाथों में आने के बाद क्या हुआ। यह एक छिपी हुई कृपा ही थी कि तलवार के मानसिक हमले से उसे कोई गहरा मानसिक आघात नहीं पहुंचा। हालांकि उसे अंधेरे में अकेले रहने से डर लगता है। सोते समय वह हमेशा पास में एक लाइट रखती है और एलिजाबेथ सान उसके बिस्तर के पास बैठकर तब तक उसकी देखभाल करती रहती है जब तक वह सो नहीं जाती। मैं उसकी सुरक्षा करना चाहता हूं ताकि वह जल्दी सो सके। इसके अलावा मैंने उसे स्थिति के बारे में भी बताया क्योंकि अन्ना का अपहरण हो गया था। जैसा कि अपेक्षित था, अन्ना बहुत दुखी हुई जब उसने सुना कि राजा ने बहुत सारे सबूतों के बावजूद युवराज का बचाव किया था और युवराज ने कभी अपना अपराध स्वीकार नहीं किया था, और यह भी कि मैंने अपहरणकर्ताओं को मार डाला था, और यह कि ईस्ट साम्राज्य ने इस बात का और अन्ना के विवाह से इनकार का इस्तेमाल युद्ध शुरू करने के बहाने के रूप में किया था और इस कारण स्कूल को बंद कर दिया गया था, और यह कि छात्र भी एक छात्र लामबंदी के रूप में युद्ध में चले गए थे, यद्यपि यह स्वैच्छिक आधार पर था। ड्यूक ऑफ रैम्सलेट की बेटी और सेंट्रेरियन किंगडम की भावी रानी के रूप में अन्ना ने इस देश को एक बेहतर देश बनाने में इतनी निस्वार्थता दिखाई है कि यह मुझे अत्यधिक लगता है, और यह सब एक कुलीन महिला के रूप में जिम्मेदारी की भावना से किया गया था। हालांकि ये देखकर दुख होता है कि इस तरह से उन्होंने जो कुछ बनाया था उसका कोई फल नहीं मिला और वे पतन की ओर बढ़ रहे हैं, और वह भी मेरी तरह राजा पर इस बात के लिए क्रोधित थी कि उसने मेरी उपलब्धियों को मान्यता नहीं दी और केवल नाइटहुड की उपाधि से ही छुटकारा पाने की कोशिश की। यदि आप उन लोगों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते जिन्होंने इतना कुछ हासिल किया है, तो आप शीर्ष पद पर रहने के लायक नहीं हैं। वास्तव में क्या देश की स्थापना के बाद से यह पहली बार नहीं है कि पूरा ब्रुसेनी हमारे नियंत्रण में है? अगर आप मुझसे पूछें तो ये सच है, शुरू से ही संघर्ष रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि शाही परिवार ऐसा कब बन गया। सबसे पहले संस्थापक राजा अपने लोगों की रक्षा और उनके दुश्मनों को हराने के लिए लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाकर राजा बने। अगर आप अपने लोगों के लिए नहीं लड़ सकते तो आपको राजा बनना छोड़ देना चाहिए। ये कहते हुए अन्ना ने अपना सिर हिलाया। इसके अलावा महामहिम युवराज ने स्वेच्छा से युद्ध में जाने का निर्णय नहीं लिया था। यह शाही परिवार के लिए अंत की बात है, अन्ना ने ये कहा और दूर देखने लगी। उनमें अब पहले जैसी देश के लिए इच्छा शक्ति नहीं दिख रही थी और मुझे लगा कि यह किसी और की समस्या है। मैंने उसे घूरा और कुछ मूर्खतापूर्ण बात सोची, वह कितनी प्यारी है। हम क्या हुआ, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? अन्ना ने मेरी निगाहें देख ली होंगी क्योंकि उसने मुझे संदेह भरी नजरों से देखा और मुझे ऐसा बताया। अरे नहीं, अन्ना का दूर से देखना भी प्यारा है। क्या बेवकूफ, तुम अचानक क्या कह रहे हो? ऐसा कहने के बाद अन्ना का चेहरा लाल हो जाना प्यारा है और क्रोधित अन्ना का चेहरा भी प्यारा है। अरे एलन, तुम्हें क्या हुआ है? अच्छा क्या कहूँ, शायद मैं बीमार हूँ। क्या इतनी जल्दी डॉक्टर बुला लो? जब मैंने देखा कि अन्ना अधीरता से नीला पड़ गया है तो मैं हल्की हंसी हंस दी। ये सारा दिन अन्ना को देखने की इच्छा की बीमारी है। जब मैंने ऐसा कहा तो अन्ना का चेहरा फिर से लाल हो गया। बेवकूफी भरी बातें मत कहो, मैं चिंतित था, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था। मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सैकड़ों गुना ज्यादा चिंतित था जितना तुम मेरे लिए हो, इसलिए मुझे खुशी है कि तुमने इतने प्यारे तरीके से प्रतिक्रिया दी। जब मैंने ऐसा कहा तो अन्ना गुस्से से लाल हो गई और उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन फिर उसने करवट ली और धीरे से बुदबुदाई। क्षमा मांगना, ये ठीक है क्योंकि तुम मेरे पास ठीक से वापस आ गए। एलन, मैं तुम्हें फिर से जाने नहीं दूंगा। ओ भगवान, मैं एलन को फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने धीरे से अन्ना को गले लगाया और उसने भी मुझे गले लगाया। अन्ना की गर्माहट महसूस करते हुए मैंने गहरी सांस ली। अन्ना की मीठी खुशबू मेरी नाक में भर गई और उसके लौटने पर कृतज्ञता की एक गर्म भावना मेरे दिल में भर गई। टीएल नोट, और अब हम इस वेबसाइट पर मेरे अनुवाद के अंत में हैं। दुर्भाग्य से मुझे यहीं रुकना पड़ रहा है क्योंकि वेबसाइट का रखरखाव मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी भरा हो रहा था और मैंने नॉकटर्नल्स पर जाने का फैसला किया है। जब तक मेरी साइट बंद होगी तब तक वहां अध्याय 46 तक अपलोड हो चुके होंगे। अपलोड नियमित है और प्रति सप्ताह 3 अध्याय अपलोड हो रहे हैं, इसलिए इस मुकाम तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया है, यह मेरे लिए एक अच्छा ब्रेक होगा और मैं अपने स्टॉक में मौजूद उपन्यास को पूरा कर पाऊंगा। खैर, मेरे काम का समर्थन करने और उसका आनंद लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कमेंट सेक्शन में सभी की प्रतिक्रियाएं पढ़कर बहुत अच्छा लगा और इसने मुझे इसे जारी रखने के लिए प्रेरित किया, ये जानने के लिए कि अगले अध्याय में सभी की क्या प्रतिक्रिया होगी। मेरे लिए यह एक मजेदार सफर था, लेकिन हर सफर का एक अंत होता है जो एक नए सफर की शुरुआत का संकेत देता है। तो सयोनारा मिन्ना माता ने, अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे। अनीसा, अन्ना को जागे हुए लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे। वह इतनी स्वस्थ हो गई थी कि वह खुद चल सकती थी और अब बगीचे में टहल भी सकती थी। इसके कारण उसकी मुस्कुराहट काफी बढ़ गई है, जिससे मुझे उसके मंगेतर के रूप में खुशी होती है। वैसे मैंने जादुई सीलिंग कॉलर पहले ही हटा दिया है। जैसा कि उस बिगवेल ने कहा, ये चीज ज्यादा झंझट वाली नहीं थी और मैं इसे प्रोसेस करने के बाद जल्दी से नष्ट कर पाया। अब अंततः सेंट्रेरियन साम्राज्य ने अपना मन बना लिया है और ड्यूक ऑफ रैमस्लेट के विद्रोह को दबाने के लिए तैयार हो गया है। जासूसों की खुफिया जानकारी के अनुसार क्राउन प्रिंस किसी कारण से प्रेरित था, क्या इसलिए कि वह योग्य नहीं बनना चाहता था। फिर भी राजा के आदेशानुसार अंततः देश भर से सेनाएं भेजी गईं। ब्रुसेनी में तैनात होने वाले सैनिकों को भी इन टुकड़ियों में शामिल कर लिया गया, जिसे देखकर मुझे हंसी आ गई। टीएन लोल नो, मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने यही किया। एक साइड नोट के रूप में, सेंट्रेरियन साम्राज्य ने अभी तक ईस्ट साम्राज्य के साथ शांति स्थापित नहीं की है, बल्कि उन्होंने हमारे द्वारा पीछे छोड़े गए दो लोगों के सिर का इस्तेमाल किया और इस तथ्य का हर जगह प्रचार किया कि हम युवराज का सिर ले आए हैं, जिससे पूर्वी साम्राज्य में युद्ध करने के लिए उत्साह पैदा हो गया। यह एक मूर्खतापूर्ण बात है, हालांकि मैंने ऐसा न होने देने के लिए बहुत सावधानी बरती थी। खैर, ये हमारा कोई काम नहीं है। अब ड्यूक ऑफ रैमस्लेट ने अंततः सेंट्रारेन के शाही परिवार से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है और दक्षिणी रईसों के साथ मिलकर खुद को रैमस्लेट का साम्राज्य कहा है, और दक्षिणी कुलीनों के अलावा कई अन्य लॉर्ड्स ने भी रैमस्लेट साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा की पेशकश की है। वे कुलीन लोग थे जिनके पास खड़ी पहाड़ी भूमि और राक्षसों से भरी भूमि थी। वे ऐसे लोग भी थे जो केवल अपनी कृषि उपज से अपने लोगों का पेट नहीं भर सकते थे। संक्षेप में, उन्होंने लोगों को भूखा रखकर विद्रोह करने के कारण होने वाले पतन के बजाय निष्ठा का यथार्थवादी दृष्टिकोण चुना। इसके अलावा, अगर वे सेंट्रारेन में ही रहे तो उन्हें रैमस्लेट को हराने के लिए अपनी सेना तैनात करने का आदेश दिया जाएगा। तब जाहिर है कि वे मुझसे लड़ेंगे जिसने ईस्ट एम्पायर को नष्ट कर दिया था। कोई भी अपने सैनिकों को नहीं खोना चाहता, जो किसान भी हैं। परिणामस्वरूप, रैमस्लेट साम्राज्य ने न केवल दक्षिण में बल्कि पूर्व और पश्चिम के कुछ हिस्सों में भी अपना क्षेत्र विस्तारित कर लिया और पूर्व सेंट्रेरियन साम्राज्य के 30-40% हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब ऐसी स्थिति में सेंट्रेरियन किंगडम की सेना ने रैमस्लेट पर आक्रमण कर दिया। सर्वोच्च सेनापति युवराज कार्लहेंज हैं। इसके अलावा किसी न किसी कारण से एमी, मार्कस, लियोनार्डो, ऑस्कर और एमी के रिवर्स हरम के अन्य सदस्य भी यहां मौजूद हैं। खैर, अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर अन्ना, मैं जा रहा हूँ। तुम अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो, इसलिए अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करो। ओह, अपना ख्याल रखना। फिर अन्ना और मैं गले मिलते हैं। जब हम अलग हुए तो अन्ना ने आगे बढ़कर मेरे गाल पर चुंबन ले लिया। वाह, तनाव तो काफी बढ़ गया। तो फिर चलो राजकुमारी को विजय प्रदान करें। थोड़ी ठंडक के साथ मैंने अपने ब्यूटर रेव का विंड मैजिक इंजन चालू किया और उड़ान भरी। फिर मैंने शर्माती हुई अन्ना को हल्का सा हाथ हिलाया और युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। तारांकन 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 तारांकन, 1 घंटे से भी कम समय बाद मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां दोनों सेनाएं गतिरोध में उलझी हुई थी। मैंने सुना है कि हमारी ओर से यह संख्या 5,000 है, जबकि सेंट्रेरियन की संख्या लगभग 30,000 है। यद्यपि संख्या की दृष्टि से हम काफी पिछड़ गए थे, फिर भी हमारे पक्ष में कोई दुख की भावना नहीं थी, क्योंकि हर कोई जानता है कि मैं युद्ध का रुख किसी भी ओर मोड़ सकता हूँ। और जो कुछ मैं हवा से देख सकता था उससे ऐसा लगता था कि वे अभी भी एक दूसरे पर तीर और जादू चला रहे हैं। युद्ध की बात करें तो आप एक शानदार घुड़सवार सेना के आक्रमण की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन युद्ध का मूल विचार लंबी दूरी के हथियारों से हमला करके संख्या को कम करना और फिर निकट युद्ध में शामिल होना है। बेशक ऐसे समय भी आते हैं जब घुड़सवार सेना उन पर हमला कर देती है या अलग अलग इकाइयों के साथ उन पर हमला कर देती है, लेकिन आमतौर पर ऐसा आमने सामने की लड़ाई में होता है। खैर, कोई भी उस स्थान पर आक्रमण नहीं करना चाहता जहां उन पर तीरों और जादू से एक तरफा हमला किया जाता है। अब मैं बिना इस बात की चिंता किए कि कौन कहां है दुश्मन पर बमबारी करूंगा। कितना आसान काम है। हो सकता है कि दूसरी तरफ कोई परिचित व्यक्ति भी शामिल हो, लेकिन यदि वे युद्ध के मैदान में दुश्मन थे तो यह अपरिहार्य था।
मैं भी ऐसा करने के लिए तैयार हूं। और बमबारी से तबाह हुई सेंट्रेरियन सेना तुरंत घबरा गई। मैंने उस अवस्था में दुश्मनों पर निर्दयतापूर्वक अतिरिक्त बम बरसाए, मानो बारिश हो रही हो। अब बस काम ही काम है। वही मंजर सामने आ रहा है जो तब था जब मैंने ईस्ट एम्पायर और ज़ाउस किंगडम के सैनिकों को तबाह कर दिया था। लगभग 1 घंटे की बमबारी के बाद मैंने देखा कि सेंट्रेरियन सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और मैं राजधानी लौट आया। जैसे ही मैं ड्यूक के निवास के पिछवाड़े में पहुंचा, जो कोई शाही महल नहीं था, अन्ना दौड़कर मेरे पास आए। एलन, क्या तुम्हें चोट लगी है? मैं घर आ गया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, सब कुछ ठीक है। मैं तो बस आसमान में उड़ रहा था। अन्ना को ये शब्द सुनकर राहत मिली। मैंने अन्ना को गले लगाया और उसे प्यार से चूमा और फिर शाही महल में चला गया। मुझे अपनी बाहों में उस अनमोल औरत की गर्माहट महसूस हुई। मेरे एक तरफा बमबारी अभियान के परिणामस्वरूप हमारी रैमस्लेट साम्राज्य सेना और सेंट्रेरियन साम्राज्य सेना के बीच युद्ध का फैसला हो गया। परिणामस्वरूप रैमस्लेट साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर एक बहुत बड़ी संख्या के विरुद्ध हुई लड़ाई रैमस्लेट साम्राज्य सेना की जीत में समाप्त हुई। इस युद्ध में सेंट्रेरन साम्राज्य ने अपने 30,000 सैनिकों में से 25,000 को खो दिया, जिसमें घायल सैनिक और भगोड़े भी शामिल थे। और युद्ध का इतिहास क्राउन प्रिंस कालहेंस, सुप्रीम जनरल और कुलीन परिवारों के उत्तराधिकारियों की अपमानजनक हार से चिन्हित था, जिन्हें युद्ध के कैदियों के रूप में पकड़ लिया गया था या लड़ाई में मार दिया गया था। मुझे उन लोगों से बात क्यों करनी है, मैंने उस सिपाही से जो मुझे बुलाने आया था अपनी चिड़चिड़ाहट छिपाए बिना प्रश्न किया। लेकिन उन्होंने जिद की, हालांकि वे युद्धबंदी हैं, फिर भी वे सेंट्रेरन किंगडम के युवराज हैं, और तो और उन्होंने मुझे अपने परिचित एलन डोनो को भी साथ लाने को कहा, और मुझे नहीं लगता कि कोई खतरा है क्योंकि सभी को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। हम ये तो झंझट है, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और उससे बात करूंगा। इसके अलावा भले ही मैं तलवार नहीं चला सकता, पर मैं जादू में तो माहिर हूं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नहीं, मुझे सबसे ज्यादा चिंता अन्ना की व्यक्तिगत सुरक्षा की है। हे भगवान, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि इतना कुछ करने के बाद भी वे मुझसे बात करना चाहेंगे, जबकि उन्होंने दुश्मन के रूप में हमारे खिलाफ तलवारें तान दी हैं। मैं सोच रहा हूं कि कौन संत है और कौन खलनायका, इसलिए मैं अनिच्छा से उस कमरे में आ गया जहां एमी और उसका रिवर्स हरम रखा गया था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वे पांचों मुझे ऐसी निगाहों से घूर रहे थे मानो वे अपने माता पिता का बदला ले रहे हों। क्राउन प्रिंस और एमी को छोड़कर सभी को उनकी पीठ के पीछे कसकर बांध दिया गया है और उनका मुंह बंद कर दिया गया है। वैसे पहरे पर तैनात सिपाही कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे से थोड़ी दूरी पर इंतजार कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि कोई निजी बातचीत हो रही हो। साथ ही अन्ना को भी अंदर जाने के बजाय दरवाजे के सामने इंतजार करने को कहा गया है। क्राउन प्रिंस ने मुझे देखा और तुरंत ही मुझे नम्रतापूर्ण गर्वपूर्ण लहजे में आदेश दिया, अरे आम आदमी, हमें अभी रिहा करो, शाही परिवार के खिलाफ उठना देशद्रोह है। क्या यह आदमी इस स्थिति में भी ऐसी बातें कर रहा है, क्या वह समझदार है? यह सही है, क्या आपको लगता है कि आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं दान के संत? जाहिर है यह महिला अभी तक अपने सपने से नहीं जागी है। अरे उससे भी महत्वपूर्ण बात, रस्सी खोलना। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन उसने अचानक अपना रवैया बदल दिया और एक मूर्खतापूर्ण कार्य के साथ मोहक प्रस्ताव भी दिया। घिनौना, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम मुझे इस तरह से फंसा सकते हो? मैं एमी की अप्रियता को नजरअंदाज कर देता हूं और सीधे क्राउन प्रिंस की आंखों में देखते हुए पूछता हूं, मैं महाराज से कुछ पुष्टि करना चाहता हूं। अनातासिया सामा को गुप्त रूप से साम्राज्य को बेचने और जेड सील की जालसाजी करने वाला महाराज ही थे, है ना? जब मैंने इस बारे में पूछा तो क्राउन प्रिंस ने बिना किसी डर के सिर हिला दिया। मैं भविष्य का राजा हूं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके अलावा साम्राज्य उस महिला को चाहता था। इसके अलावा अगर इससे ब्रिसनी क्षेत्र वापस आ जाता है तो यह अच्छी बात है, ये कुलीन वर्ग की जिम्मेदारी है। क्या आपने मैजिक डिवीजन कमांडर गुंथ के साथ कोई सौदा किया था? यह सही है, यदि आपने हस्तक्षेप न किया होता तो हम ब्रिसनी को रक्तहीन वापस ले आते। मैं समझ गया, क्या तुमने सचमुच उस बेतुकी कहानी पर यकीन कर लिया और सौदा कर लिया? एमी सामा, क्या तुम्हें वह कहानी पता है? नहीं, क्या एमी सामा ने ही उसे उकसाया था? एमी ने फिर विजयी भाव से कहा, हम क्या ये स्पष्ट नहीं है, वह महिला गड़बड़ करने और साम्राज्य का हथियार बनने के लिए है। मैं चाहता हूं कि आप सही काम करने के लिए मेरी प्रशंसा करें। मुझे आश्चर्य है कि पहले वाली मूर्खतापूर्ण हरकतें कहाँ चली गईं। यह सही है, क्राउन प्रिंस ने तुरंत एमी की टिप्पणी की पुष्टि की और शेष तीनों ने एमी और क्राउन प्रिंस के भयानक तर्कों पर सहमति जताई, जिनका कोई मतलब भी नहीं था। ये लोग बिल्कुल बेकार हैं, लगता है अब इनमें सही फैसला लेने की भी क्षमता नहीं रही। नहीं, ऐसा लगता है कि मार्कस और ऑस्कर के बीच सुधार का माहौल है। आखिर क्या हुआ? सबसे पहले तो ईस्ट साम्राज्य का शुरू से ही ब्रिसनी क्षेत्र को वापस करने का कोई इरादा नहीं था। अनातासिया सामा तो बस एक बहाना था। सबसे पहले दुश्मन देश से सैनिकों को बुलाकर अपने ही देश के ड्यूक को धोखा देना पागलपन है। क्या क्वतनांग पहले की तरह ही आश्चर्यजनक रूप से कम है? मुझे नहीं लगता कि खेल में यह इतना बुरा था। खैर, लोग अपने जीवन में अपने करीबी लोगों से प्रभावित होते हैं और दूसरा व्यक्ति वह एमी थी, असली नायिका नहीं। केवल इसी बात पर मुझे इस युवराज के प्रति सहानुभूति है। जब मैं इस बारे में सोच रहा था, एमी अपने हमेशा के घमंडी रवैये से मुझे परेशान कर रही थी, लेकिन वह औरत साम्राज्य के हाथों में पड़ गई है। वह शायद अब तक दानव तलवार से मंत्रमुग्ध हो चुकी होगी, तुम्हें पता है। क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं हनी ट्रैप में फंस जाऊं? मैं थोड़ा उलझन में हूं क्योंकि उसके शब्द बहुत ही समझ से परे हैं। मैं जानता था उस औरत के दिल में इतना अंधेरा रहा होगा कि वह जादुई तलवार की ओर आकर्षित हुई होगी। ऐसा लगता है कि क्राउन प्रिंस एमी की ऐसी बेतुकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। अरे क्या तुम ठीक हो? तुमने दानव तलवार पर इतनी आसानी से विश्वास क्यों कर लिया? एमी, संत ये कह रही हैं, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। संत हो। अगले ही क्षण दरवाजा जोर से खुला और अन्ना, जो बाहर इंतजार कर रही थी, कमरे में दाखिल हुई। क्या अनातासिया, तुम यहाँ क्यों हो? वे दोनों आश्चर्य से चिल्लाए और अन्य तीनों की भी आंखें चौड़ी हो गईं। महाराज, बहुत समय हो गया है, और बाकी सभी भी, आप पहले की तरह ही ऊर्जा से भरपूर लग रहे हैं, एना नमस्ते कहती है, या यूं कहें कि व्यंग्यात्मक लहजे में, और मेरे पास आ जाती है। मैं उसे धीरे से सहारा देता हूं और वो अपना शरीर मेरे ऊपर टिका देती है। ऐसा नहीं है कि यह उन पर कोई इशारा करने के लिए कहा गया था। अन्ना अब सामान्य रूप से चल सकती हैं, लेकिन उन्हें लंबे समय से ज्यादा चलने से मना किया गया है। और महाराज, आपको उपाधि याद नहीं आ रही? मैं अब रामस्लेट साम्राज्य की प्रथम राजकुमारी हूँ। मैं आपको ये बात बहुत समय से बता रही हूँ, लेकिन हमेशा की तरह लगता है आपने इसे बिल्कुल भी नहीं सीखा है। क्या क्या, हम रामस्लेट साम्राज्य को मान्यता नहीं देते, तुम लोग विद्रोही हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए कि तुम एक आम आदमी से चिपकी हुई हो और उसका समर्थन कर रही हो, जबकि तुम खुद को राजकुमारी होने का दावा करती हो? क्राउन प्रिंस के स्वर ने मुझे और अन्ना को एक साथ आह भरने पर मजबूर कर दिया। महाराज, अपनी बातचीत में सावधानी बरतें। भले ही आप अभी देश को नहीं पहचानते, लेकिन जल्द ही आपको उसे पहचानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और मैं आपको एक आम आदमी की तरह एलन का अपमान करने की इजाज़त नहीं दूंगा। अन्ना ने फिर ठंडी निगाहों से युवराज को घूरा। उसके चेहरे का भाव उस भाव से अलग था जो वह अपने देश के लिए रखती थी, मानो वह किसी गंदगी के टुकड़े को देख रही हो। एलन मेरा मंगेतर है, मेरे मंगेतर का अपमान करना मेरा अपमान करने के समान है। हम एक आम आदमी से सगाई कर ली, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्राउन प्रिंस की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। नहीं, एलन रामस्लेट साम्राज्य का नायक है। उसने मुझे महामहिम और साम्राज्य की नरिशंस साजिशों से बचाया, जॉस साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध में अकेले ही अधिकांश शत्रुओं का नाश किया, और सेंट्रेरन साम्राज्य की सेना को भी सफलतापूर्वक नष्ट किया, जिसने एक अनुचित कारण से रामस्लेट साम्राज्य पर आक्रमण किया था। ये स्वाभाविक ही है कि किसी देश की राजकुमारी ऐसे दुर्लभ नायक से विवाह करेगी। अतीत पर नजर डालें तो ऐसे विवाह की अनगिनत कहानियां हैं। क्या, तो तुम कह रहे हो कि वो इन सभी विस्फोटों का कारण है? तुम निष्पक्ष लड़ाई से इनकार करते हो, तुम काया हो। जीएन, बचकानी बकवास। अन्ना ने अपनी अभिव्यक्ति में कोई भी परिवर्तन किए बिना युवराज से कहा, जो चौंक गया, जोर से चिल्लाया और किसी कारणवश मुझे गालियां देने लगा। दूसरे शब्दों में, यह एक राजनीतिक विवाह भी है, हालांकि एलन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। इतना कहने के बाद जब अन्ना ने आखिरकार अपना भाव हल्का किया, तो मैंने उसे धीरे से गले लगा लिया। अन्ना ने भी मुझे कसकर गले लगा लिया।
ठीक है, इसीलिए तो रिहाई नहीं हो रही है। हालांकि मुझे लगता है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद आप घर जा सकते हैं, इसलिए आपको यहीं रहना होगा और चुप रहना होगा। हम इतना कहने के बाद मेरी नज़र एमी की कमर पर बंधी छड़ी पर पड़ी। अरे, एक कैदी के पास हथियार क्यों होता है? मैंने जल्दी से अन्ना को अपने पीछे छिपा लिया और एमी की छड़ी उतार दी। अरे, इसे वापस दो, यह मेरा है। नहीं, ये स्टाफ है। ये सही है, यह मेरे लिए, एक संत के लिए एक छड़ी है। तुम्हें, जो चुना हुआ नहीं है, इसे रखने की अनुमति नहीं है। इसे वापस दे दो। निश्चित रूप से ये स्टाफ परिचित है। हाँ, यह कोई और नहीं बल्कि वही छड़ी है जिसने एमी को खेल में एक संत के रूप में जगाया था। एक संत है ना आप? हाँ, मुझे इस दिव्य मार्गदर्शन के कर्मचारी द्वारा पहचाना गया था, इसीलिए मैं दान का संत हूँ। नहीं, आप इसे किसी भी तरह से देखें, आप संत के बिल्कुल विपरीत हैं। तो फिर आशीर्वाद का क्या हुआ? उसके बिना तो आप संत कहलाने के योग्य नहीं होते। अच्छा, यही बात है, मैं संत बन गया। नहीं नहीं, ये कैसा तर्क है? मैं अपने द्वारा नियुक्त स्टाफ का मूल्यांकन करता हूँ। नाम, दिव्य मार्गदर्शन का कर्मचारी। वर्णन, जो लोग इस छड़ी को सच्ची इच्छा से अपने हाथों में लेते हैं और जिनकी इच्छा की शक्ति पहचानी जाती है, उन्हें एक ऐसा कौशल या आशीर्वाद प्राप्त होगा जो उनकी सबसे गहरी सच्ची इच्छा को पूरा करेगा। इसका उपयोग प्रति व्यक्ति केवल एक बार ही किया जा सकता है। ग्रेड, पौराणिक कीमत। क्या आपको अपनी सच्ची इच्छाओं को पूरा करने के लिए कौशल या आशीर्वाद दिया जाएगा? झुंझलाहट के साथ मैंने छड़ी को अपने पास मेज पर रख दिया, मेरे पास मौजूद एक जादुई पत्थर निकाला और एमी की स्थिति का मूल्यांकन किया। नाम, एमी वॉन ब्रायस। आयु, 17। आशीर्वाद, उपचार ईर्ष्या की चुड़ैल। कौशल, निवास स्थान लुरदेन। कब्जा, 9728। स्तर, 16। शारीरिक शक्ति, ए, जादुई शक्ति। सी, उपलब्धि। हीलिंग, यह उन लोगों को दिया जाता है जो लोगों के घावों, बीमारियों और दिलों को ठीक करना चाहते हैं। ये व्यक्ति की हीलिंग जादू की योग्यता को काफी बढ़ा देता है। ईर्ष्या की चुड़ैल, यह उस महिला को दिया जाता है जो विपरीत लिंग के सभी सदस्यों को पाने की इच्छा रखती है और पूरे दिल से मानती है कि वह ऐसा कर सकती है। यह एक महिला के रूप में उसके आकर्षण को बहुत बढ़ा देता है और कोतदामा के लिए उसकी योग्यता को भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा देता है। कोतदमा किसी व्यक्ति द्वारा उच्चारित शब्दों पर जादुई शक्ति डालना और उनके भावों को लक्षित व्यक्ति पर अंकित करना संभव है। ये तभी प्रभावी होता है जब लक्षित व्यक्ति उन शब्दों को अनुग्रह, विश्वास, वासना या किसी अन्य भावना के संदर्भ में सकारात्मक रूप में ग्रहण करता है, और ग्रहण जितना अधिक सकारात्मक होगा, प्रभाव उतना ही अधिक होगा। हम एक मिनट रुको, चुड़ैल, मैं आश्चर्य से चिल्लाया। एक हास्यास्पद राक्षस पैदा हो गया है। यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो हम गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। अरे गार्ड लियो, जैसे ही मैंने चिल्लाया, क्राउन प्रिंस ने लियोनार्डो का नाम चिल्लाया। तभी लियोनार्ड अपने पेट के नीचे से चीखता है और एक अप्रिय आवाज निकालता है। लियोनार्डो ने फिर बलपूर्वक बंधन से बाहर निकलकर पास की एक कुर्सी पकड़ी और अन्ना पर हमला किया, जो अपने हाथ में दैवीय मार्गदर्शन का दंड देख रही थी। बाहर देखो, आह, मैंने तुरंत अन्ना की रक्षा के लिए कदम उठाया, जो हिलने में असमर्थ थी। मैं अन्ना को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन लियोनार्डो का वार सीधे मुझ पर पड़ा और मैं भी उसके साथ उड़ गया। लानत है, मैं अन्ना पर प्रभाव को रोकने में कामयाब रही, लेकिन मेरे पेट में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। मैं दर्द से कराहते हुए खड़ा हुआ और लियोनार्डो से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे बेरहमी से मारा। जब मेरे चेहरे पर सीधा वार हुआ तो मेरी आंखों के सामने तारे उड़ गए और मैं लगभग बेहोश हो गया। एलन, एलन, मैं घुटनों के बल बैठा हूँ और अन्ना मेरे बगल में है, मेरी ओर देख रही है और मुझे पुकार रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वह रोने वाली है। चलो यहाँ से चलें। जब वह अभी भी बंधा हुआ खड़ा हुआ तो राजकुमार चिल्लाए, नहीं मेरे कर्मचारी, इसके अलावा हमें उस आदमी का अंत करना होगा। ये सही है, अरे नहीं नहीं, एमी को भागने देना बेहतर है। एमी की आवाज सुनकर एक क्षण के लिए तो वह लगभग सिर हिला ही बैठे, लेकिन अंत में युवराज ने भागने का निर्णय लिया। एमी, तुम सही कह रही हो, मैं इन्हें पूरा करने और स्टाफ वापस लाने के लिए रुक जाऊंगा। कृपया महाराज एमी का ध्यान रखना। और ठीक है, लेकिन आप निश्चित रूप से जीवित वापस आ रहे हैं, है ना? एमी और अन्य लोगों ने लियोनार्डो को सिर हिलाते हुए देखा और वे बिना किसी रुकावट के भाग गए। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? बाहर इंतजार कर रहे पहरेदार क्या कर रहे हैं? मैं किसी तरह खड़ा हो जाता हूँ, अन्ना मेरी पीठ को सहारा देती है और लियोनार्डो को घूरता हूँ। यदि आप ध्यान से देखें तो लियोनार्डो की बाईं कलाई कुचली हुई है और उसमें से बहुत अधिक खून बह रहा है। मैं समझ गया, जाहिर है उसने अपने बाएं हाथ की कीमत पर खुद को बलपूर्वक इस बंधन से बाहर निकाला, और यह संभवतः क्राउन प्रिंस द्वारा दिए गए हीरो बफ का प्रभाव है जिसने इसे संभव बनाया। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि उसका शीघ्र ही उपचार नहीं किया गया तो वह तलवार पकड़ने में असमर्थ हो जाएगा। हालांकि एमी को उपचारात्मक जादू का उपयोग करने में सक्षम माना जाता है। यह एक क्रूर बात है। जैसा कि मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा समय तक लड़ पाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी भी पहले से कुछ नुकसान हुआ है और पहले वार से टूटी हुई कुर्सी का एक टुकड़ा मेरे शरीर में फंसा हुआ है। मर जा नीचाम आदमी। इस बार लियोनार्डो ने अपने हाथ में एक मोमबत्ती थामे हुए मुझ पर नहीं बल्कि अन्ना पर निशाना साधते हुए फिर से हमला किया। तुम मजाक कर रहे हो, हम में से कौन काया है? मैं जल्दी से अपनी तलवार खींचता हूँ और उसके और अन्ना के बीच में आकर मोमबत्ती पकड़ने लगता हूँ। चाहे उसे नाइट का कितना भी वरदान क्यों ना मिला हो, अगर वह सिर्फ एक हाथ से काम चला सकता है तो मैं काम चला लूंगा। मुझे भी यही लगा था, लेकिन हीरो के वरदान के साथ, सच कहूं तो यह आदमी एक राक्षस था। मेरी तलवार हल्के से दूर चली जाती है और वह अपने दाहिने हाथ में पकड़ी हुई मोमबत्ती से मेरी बगल में वार करता है। मैं जो वार को झेल नहीं सका, उड़ गया और दीवार से जोर से टकराया। इस झटके के कारण मैं एक क्षण के लिए सांस नहीं ले सका, लेकिन मैंने किसी तरह खड़े होने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा कुर्सी का टुकड़ा मेरी बगल में घुस जाने के कारण घाव खुल गया था और खून टपक रहा था। शायद यह अकेली चोट घातक हो सकती है। जिस क्षण मुझे यह एहसास हुआ, मैं जमीन पर गिर पड़ा, मेरे घुटनों से सारी शक्ति खत्म हो गई। ये ठीक नहीं है अन्ना, मुझे उसकी रक्षा करनी है। खड़े हो जाओ, हटो। एलन, लियोनार्डो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आम आदमी की तरफ से। लियोनार्डो ने शांति से अन्ना की गुस्से भरी निगाहों से बचते हुए मुझे फिर से अपमानित करने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अन्ना ने अपना जाप समाप्त कर लिया और अपना जादू प्रकट कर दिया। बर्फ तलवार नृत्य। उस क्षण अनगिनत चमकती बर्फ की तलवारें प्रकट होती हैं और फिर पलक झपकते ही वे लियोनार्डो पर हमला कर देती हैं। क्या गा, लियोनार्डो हिलने में भी असमर्थ हो गया। अन्ना के जादू से प्रभावित होकर वह बिना कोई आवाज किए चुपचाप गिर पड़ा। एलन, एलन, रुको, अन्ना का चिंतित चेहरा मेरे सामने है। अरे ऐसे मत देखो। आह, लेकिन यह मेरी गलती है। उफ, अन्ना माफ करना। कोई बात नहीं, रुको। अन्ना ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने उससे उसे परेशान करने के लिए माफी मांगी। अब मैं खून से लथपथ था। अन्ना, खून तुम्हारे हाथों पर, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मत मरो, अरे ऐसी जगह पर, अरे एलन मुझे पता है मुझे भी ये पसंद नहीं, लेकिन मैं अन्ना के मरने से बेहतर यही चाहूंगा। मेरी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली हो गई। ओह मैंने तो सोचा था कि यह एक सुखद अंत है। मैं फिर सावधान नहीं था। अन्ना की आवाज और भी दूर होती जाती है और मेरे सामने अन्ना का रोता हुआ चेहरा है। यदि आखिरी चीज जो मैं देख सकता हूँ वह अन्ना का चेहरा है तो क्या ये भी संभव है? ओह लेकिन जैसा कि अपेक्षित था मैं चाहता हूँ कि आप हंसें। क्या यही बात नहीं है? अन्ना मुझे माफ करना, मैंने सुना है कि अन्ना मुझे बुला रही है, लेकिन काफी ठंड है। ठंड तो है पर किसी तरह ठंड नहीं लगती जबकि ठंड लगनी चाहिए, बल्कि गर्मी लगती है। इसका अर्थ क्या है? मैंने अन्ना को फिर से मुझे पुकारते सुना, फिर मेरा शरीर जो ठंडा होना चाहिए था गर्म होता गया। ये है एलन, मैं आवाज सुनकर चौंक गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने अन्ना खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर राहत की झलक थी। कैसे? सपना? बेवकूफ, ये सपना नहीं हो सकता। तुम जिंदा हो एलन, मुझे खुशी है एलन। इतना कहते ही अन्ना की गर्मजोशी, जिसने मुझे कसकर गले लगा लिया था, मेरे अंदर फैल गई और अन्ना की मीठी खुशबू मेरी नाक में फैल गई और यह अप्रतिरोध्य और मनमोहक थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा जीवन जुड़ा हुआ था अन्ना और ड्यूक के अनुसार, नहीं गेरहाद सान, अन्ना ने मेरे जख्म भर दिए। उसने कहा कि अचानक उसे आवाजें सुनाई देने लगी और वह ऐसा करने में सक्षम हो गई और उसे बर्फ संत का आशीर्वाद मिला। बर्फ जादू का आशीर्वाद भी गायब हो गया और उसे पवित्र बर्फ जादू का कौशल प्राप्त हो गया। मैं इसके कारण की कल्पना कर सकता हूँ, लेकिन निश्चितता के लिए मैंने उसका मूल्यांकन करवाया। स्काई नाइट, लोगों की रक्षा करने की इच्छा रखने वालों को दिया जाने वाला नाइट का आशीर्वाद स्काई नाइट तलवार में विकसित होता है। एक नाइट के रूप में योग्यता के अलावा पवन जादू की योग्यता भी काफी बढ़ जाती है। बर्फ संत, एक गहरी प्रेम और महान आत्मा वाली महिला जिसे पवित्र आशीर्वाद दिया गया है और जो बर्फ जादू का प्रयोग करती है। वह बर्फ के माध्यम से पवित्र शक्ति का संचालन करने में सक्षम है और पवित्र बर्फ जादू के लिए उसकी योग्यता बहुत बढ़ जाती है। यह आशीर्वाद मिलने पर पवित्र बर्फ जादू कौशल प्राप्त होता है, जिससे पवित्र बर्फ जादू के लिए व्यक्ति की योग्यता में बहुत वृद्धि होती है। पवित्र बर्फ जादू का आशीर्वाद या कौशल तब विकसित होता है जब उसका स्वामी बर्फ संत बन जाता है। आप पवित्र शक्ति से युक्त बर्फ को नियंत्रित कर सकते हैं। ये बर्फ जादू के कौशल को पूरी तरह से समाहित करता है। ऐसा ही प्रतीत होता है। मेरे जैसी औरत एक संत है। अन्ना की अभिव्यक्ति विशुद्ध रूप से विस्मयकारी है। हो सकता है, लेकिन अन्ना को प्रकाश की आत्मा का आशीर्वाद मिला था, है ना? इसलिए मुझे लगता है कि अन्ना की इतनी प्रबल इच्छा इस दिव्य मार्गदर्शन के कर्मचारी द्वारा पूरी हुई। क्या ऐसा है? अन्ना को अब भी ऐसा लगता है कि जब उसे ऐसा कहा जाता है तो उसे यह सही नहीं लगता। लेकिन शुक्रिया अन्ना, तुम ही की वजह से मैं अभी भी जिंदा हूँ। ओह हाँ हाँ, ऐसा ही है। मुझे लगा था कि मेरा दिल रुक जाएगा, तुम्हें पता है। क्षमा मांगना, मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो, ठीक है? हाँ मुझे माफ करना। ओह अगर आप इसे समझते हैं तो ये ठीक है। अन्ना ने जब ये कहा तो वह इतनी प्यारी थी कि मैंने उसे फिर से गले लगा लिया। आह खांसी, यह अच्छी बात है कि आप और आपके मंगेतर इतनी अच्छी तरह से मिल रहे हैं, लेकिन क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? मैंने अन्ना के साथ छेड़खानी शुरू ही की थी, लेकिन गेरहाद सान ने मुझे रोक दिया। गुननू, तो चुड़ैलों के बारे में यह क्या बात है? हाँ, जब मैंने उस महिला एमी वॉन ब्राइस का मूल्यांकन किया तो मुझे ईर्ष्या की चुड़ैल का आशीर्वाद दिखाई दिया और इसका प्रभाव एक महिला के रूप में उसके आकर्षण को बढ़ाने के साथ साथ कोतदामा कौशल के लिए उसकी योग्यता को भी बढ़ाता है। कोतदामा है ना, मैंने इसके बारे में परियों की कहानियों में सुना है, लेकिन असल जिंदगी में इसका इस्तेमाल बहुत ही घटिया हुनर है। संक्षेप में, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ कहते हैं जो आपकी चालों पर जरा भी प्रतिक्रिया करता है तो आप उसे पलक झपकते ही भ्रष्ट कर सकते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि वह लंबे समय से उन 5 लोगों को इस तरह से लुभा रही है? अन्ना ने भौहें चढ़ाकर कहा। नहीं, मुझे लगता है कि उसने शायद हाल ही में ये शक्ति हासिल की है। इसके अलावा अगर उसके पास ये पहले होती तो अकादमी की हालत बहुत खराब होती। हालांकि उस स्कूल की अजीब स्थिति के मद्देनजर ये निर्विवाद है कि उसने बिना किसी आशीर्वाद या कौशल के कमजोर को तदामा कौशल को सक्रिय किया होगा। ये सही है, निश्चित रूप से इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह महिला चाहेगी कि सभी पुरुष उसकी सेवा करें। और इसका मतलब एलन भी है। शायद स्थिति की कल्पना करते हुए अन्ना के शरीर से ठंडी हवा रिसने लगी। टीएन, वाह यंदेरे अन्ना, मंगा का इंतजार है। ओमेगा अन्ना, ऐसी बात नहीं है, निश्चिंत रहो, मैं सिर्फ अन्ना का हूँ। ऐसा कहते हुए किसी तरह मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। मैं उसे कभी नहीं कहूंगा कि मुझे पहले नहीं लगा था कि वह खतरनाक है, क्योंकि उस समय वह अच्छी दिख रही थी। सबसे पहले तो मैं बर्बादी की इच्छा नहीं रखता, और सबसे बढ़कर मुझे यकीन है कि अगर मैंने ऐसा कुछ कहा तो अन्ना को ठेस पहुंचेगी। ओह हाँ, ये सही है ना? ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे एलन ऐसी औरत के प्यार में पड़ जाए। ये सही है, मेरी एकमात्र प्रिय महिला अन्ना है, मैंने ये कहा और फिर अन्ना का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखा। अन्ना के चेहरे के भाव अचानक ढीले पड़ गए और उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई। आह खांसी, क्या तुम दोनों ठीक हो? आह, हमें फिर से अपनी दुनिया से वापस लाया गया। अच्छा खैर, वो चुड़ैल अच्छी नहीं है। अगर हम ऐसी खतरनाक क्षमताओं वाले किसी व्यक्ति को यूं ही छोड़ देंगे तो दुनिया मुसीबत में पड़ जाएगी। मैं एक बार फिर कड़ा आदेश जारी करूंगा। जब उन्होंने ये कहा तो गेरहाद सान कमरे से बाहर चले गए। अध्याय 88। ग्रामीण ने देश की स्थापना का पता लगाएं। दुर्भाग्यवश एमी और अन्य जो बच निकले थे अंततः बच निकले। एमी ने स्पष्ट रूप से एक चुड़ैल के रूप में अपनी क्षमताओं का पूर्ण प्रदर्शन किया और यहां तक कि कुछ सैनिकों और निवासियों को कड़े शब्दों में अपनी बात कहने पर मजबूर भी कर दिया। बेशक रैम्सलेट सेना चुपचाप बैठी नहीं रही, उन्होंने तुरंत एक खोज दल भेजा और ऑस्कर को पकड़ने में सफल रहे, लेकिन जंगल में प्रवेश करते समय एमी, क्राउन प्रिंस और मार्कस की नज़र उन पर नहीं पड़ी। मुझे नहीं पता कि वे लोग जंगल से सुरक्षित निकल पाएंगे या नहीं, लेकिन अगर मैं ऐसा कर पाया तो मैं चाहूंगा कि वे राक्षसों और जानवरों द्वारा लगातार शिकार बनते रहें। नहीं, मैं जानता हूं कि यह कहना बहुत भयानक बात है, लेकिन एमी बहुत खतरनाक है। इसके अलावा एडवेंचरर्स गिल्ड के जरिए हमने एमी पर 30 करोड़ का इनाम रखा है, इस शर्त के साथ कि चाहे जिंदा हो या मुर्दा, यानी अगर उसे मार भी दिया जाए तो कोई बात नहीं, और उसे एक ऐसी डायन के रूप में ढूंढा जाएगा जो अपनी बातों से दूसरों को बरगलाती है। उसे जिंदा पकड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि एडवेंचरर उसका सिर जरूर काटेगा और उसे मार डालेगा। रंगीन बालों की इस दुनिया में भी मुझे याद नहीं कि मैंने उसके अलावा किसी और को गुलाबी बालों के साथ देखा हो, इसलिए हो सकता है कि वह पकड़ी जाए। दूसरी ओर ये पता चला कि जिन लोगों का कोटोडामा से ब्रेन वॉश किया गया है उन्हें अन्ना के पवित्र बर्फ जादू द्वारा बहाल किया जा सकता है। इसका नाम पवित्र बर्फ जागृति है। जब ये जादू किसी ऐसे व्यक्ति पर इस्तेमाल किया जाता है जो एमी के शब्दों से पागल हो गया है तो उसका सिर सचमुच बर्फ पर रख दिया जाता है। बर्फ तुरंत टूट जाती है, लेकिन उस व्यक्ति को कोतदामा के प्रभाव से मुक्त करने के लिए बस इतना ही काफी है। खैर संक्षेप में ये जादू है जो अपना सिर ठंडा करो संवाद के माध्यम से आपके सिर को जमा देने वाले प्रभाव को पुनः उत्पन्न करता है, जिसे आप कभी कभी मंगा और एनीमे में देखते हैं। संयोगवश अन्ना का कहना है कि बर्फानी तूफान का उपयोग करके ये काम एक विस्तृत क्षेत्र में किया जा सकता है। मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसने सोचा था कि मैं जागने से पहले हमेशा के लिए सो जाऊंगा। खैर इतना सब कुछ होने के बाद हमारे रामस्लेट साम्राज्य ने राष्ट्रीय स्थापना दिवस समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसकी तैयारी के लिए मैं ब्यूटर रेव को ईस्ट एम्पायर और यूनाइटेड किंगडम ऑफ नॉसेन के उपयुक्त शहर में ले गया और एडवेंचरस गिल्ड से अनुरोध किया कि वे प्रत्येक देश के राजनयिक कार्यालयों को संबोधित राजा रामस्लेट का पत्र पहुंचा दें। इसका कारण यह है कि इन दोनों देशों तक हमारे रामस्लेट साम्राज्य से सेंट्रेरियन साम्राज्य से गुजरे बिना नहीं पहुंचा जा सकता। इसके अलावा चूंकि जाउज राज्य और वेस्टडेल राज्य सीमा पर हैं, इसलिए हमने सीमावर्ती शहर जाउज और बंदरगाह शहर वेस्टडेल को एक पत्र दिया जहां नियमित जहाज चलते हैं और वहां से एक दूत भेजा गया। बेशक इसकी विषय वस्तु देश की स्थापना की सूचना और अनुमोदन के लिए अनुरोध है। जवाब में जॉस साम्राज्य, जिसे हाल ही में पूरी तरह से कुचल दिया गया था, ने रामस्लेट साम्राज्य को इस शर्त पर मान्यता दी कि एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए जाएं। स्वाभाविक रूप से अन्य देशों से अभी तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ईस्ट एम्पायर और यूनाइटेड किंगडम ऑफ नॉसेन संभवतः इसे मंजूरी दे देंगे, जबकि वेस्टडेल इसमें देरी करेगा और प्रतिक्रिया को स्थगित कर देगा। हम ईस्ट एम्पायर और यूनाइटेड किंगडम ऑफ नॉसेन से इसकी स्वीकृति की अपेक्षा करते हैं। इसका कारण सरल है, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। ये दोनों देश सेंट्रेरियन किंगडम को दुश्मन के रूप में देखते हैं, और यदि शत्रु देश का महत्वपूर्ण दक्षिणी भाग स्वतंत्र हो जाए तो बिना कुछ किए ही शत्रु की शक्ति कम हो जाएगी। उनके लिए इससे अधिक स्वादिष्ट कहानी और कोई नहीं होगी। बेशक जहां तक मेरा सवाल है, मैं ईस्ट साम्राज्य को अन्ना के साथ छेड़छाड़ के लिए माफ नहीं कर सकता, लेकिन वर्तमान रामस्लेट साम्राज्य उस सीमा तक अपना विस्तार करने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसके अलावा मैंने दो मास्टरमाइंडों को मार डाला है, इसलिए इसे हमेशा के लिए अच्छा मान लें। अगली बार जब वे मेरे साथ फिर से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो मैं इंपीरियल सिटी को मलबे के ढेर में बदल दूंगा, और मैं वेस्टडेल साम्राज्य से अपना उत्तर स्थगित करने की अपेक्षा इसलिए करता हूं क्योंकि वे वर्तमान में सेंट्रेरियन साम्राज्य के मित्र हैं। फिर भी यदि सेंट्रारेन साम्राज्य का पतन हो गया तो हमारा मानना है कि वेस्टडेल साम्राज्य पश्चिमी क्षेत्रों को हड़पने के अपने प्रयास में अथक प्रयास करेगा। उस समय रामस्लेट के साथ राजनयिक संबंधों का रास्ता बंद करना उनके हित में नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे अभी सेंट्रारिन साम्राज्य से लड़ाई नहीं कर सकते। यदि ऐसा है तो तार्किक रूप से उनकी प्रतिक्रिया उनके उत्तर को स्थगित करने की होनी चाहिए। संक्षेप में कहें तो राष्ट्रों के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। हे भगवान, तारांकन 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 तारांकन, राष्ट्रीय स्थापना दिवस समारोह का दिन आ गया। हमारी शाही राजधानी विशेन में महल के सामने का चौक लोगों से खचाखच भरा था। हालांकि हम राष्ट्रीय स्थापना दिवस समारोह आयोजित कर रहे थे, फिर भी हम सेंट्रेलियन साम्राज्य के साथ स्वतंत्रता संग्राम में उलझे हुए थे, इसलिए हमने बड़े पैमाने पर परेड की योजना नहीं बनाई थी। बस इतना ही करना था कि गेरहाद सान राष्ट्र की स्थापना की घोषणा और नए राजा और उनके शाही परिवार का परिचय पढ़े। जैसा कि कहा गया है, चूंकि यह शहर मूल रूप से ड्यूक ऑफ रैमस्लेट की राजधानी था, इसलिए शासक नहीं बदले हैं, लेकिन संक्षेप में यह एक प्रकार का स्पष्ट भेद है। और दूसरी बात है मेरी और अन्ना की सगाई की घोषणा करना। इसलिए मैंने रैमस्लेट रॉयल आर्मी की औपचारिक चमकदार सैन्य वर्दी पहन रखी है और अन्ना अपनी चमकदार पोशाक में एक राजकुमारी की तरह सजी हुई है। अरे नहीं, अन्ना मूलतः ड्यूक की बेटी थी और अब वह रामस्लेट राज्य की पहली राजकुमारी है, इसलिए उसका राजकुमारी होना सही है। मेरे लिए वर्दी पहनना अधिक परिचित बात है, इसलिए मेरा कोई अन्य इरादा नहीं है। और मुझे लगता है कि अन्ना अपनी ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हैं। वह वाकई बहुत खूबसूरत हैं। एना की बाई अनामिका उंगली में वह अभी भी सब्स्टिट्यूट रिंग पहने हुए है जो मैंने उसे दी थी। एना ने कहा कि उसे यही चाहिए, इसलिए यह उसकी सगाई की अंगूठी बन गई। वैसे मेरी अंगूठी एक साधारण अंगूठी है, लेकिन मैंने इसे विशेष रूप से सब्स्टिट्यूट रिंग की तरह दिखने के लिए बनवाया था। खैर, समारोह सुचारू रूप से संपन्न हुआ और गेरहाद सान जो राजा बने ने राष्ट्र की स्थापना की घोषणा पढ़ी। इस लेख में सेंट्रारिन साम्राज्य के शाही परिवार के अत्याचारों की ओर इशारा किया गया और उसकी वैधता को नकारा गया। इसके जवाब में ड्यूक ऑफ रैमस्लेट अपने लोगों के रक्षक के रूप में सामने आए। यह एक अच्छा भाषण था, पारंपरिक लेकिन रैमस्लेट परिवार की खासियत। और आप सभी के लिए मेरी तरफ से एक और खुशखबरी, यह मेरी बेटी प्रथम राजकुमारी अनास्तासिया के बारे में है। ऐसा लगता है कि गेरहाद सान अंततः हमारी सगाई शुरू करने के चरण तक पहुंच गए हैं। मुझे अपनी बेटी अनास्तासिया की सगाई एलन से करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जो एक नायक था जिसने आक्रमणकारियों से हमारी रामस्लेट भूमि की रक्षा की थी। इससे दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही एक निराशा भरी एह की आवाज भी सुनाई दी। हालांकि गेरहाद सान अपना भाषण जारी रखते हैं। पवन देवता का आशीर्वाद प्राप्त एलन वीरों में एक वीर है जिसने अनेक युद्धों में अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और अकेले ही शत्रु सेना का 80% भाग नष्ट कर दिया है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस प्रकार हमारे राज्य को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये सुनते ही दर्शक एकदम से उत्साहित हो गए। आखिरकार युद्ध में विजय दिलाने वाला नायक लोकप्रिय तो होता ही है। एलन अनास्तासिया से शादी करेगा और अपना नाम एलन वॉन रामस्लेट रखेगा। मैं चाहता हूं कि हर कोई इस खुशी के मौके का जश्न मनाए। जब गेरहाद सान ने आखिरकार यह कहा और अपना भाषण समाप्त किया तो उपस्थित श्रोतागण खुशी से झूम उठे। अन्ना और मैंने मंच से श्रोताओं का अभिवादन किया। मैं समझ गया, क्या यही नज़ारा है जो इस तरफ के लोग देखते हैं? क्या मुझे कभी इसकी आदत हो जाएगी? वह आश्चर्यजनक है। जब मैंने अन्ना को मुस्कुराते हुए और मेरे बगल में हाथ हिलाते हुए देखा तो मैं खुद को बुदबुदाने से नहीं रोक सका। ओह, ये सही है, मुझे ऐसे आशीर्वाद की उम्मीद नहीं थी। ये सब एलन की कड़ी मेहनत का नतीजा है। शुक्रिया। ओह, धन्यवाद, लेकिन मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ। हाँ, मुझे इसकी आदत डालनी होगी। मैंने अन्ना के बगल में खड़े होने का फैसला किया है। मैं ऐसी किसी भी चीज से पीछे नहीं हटने वाला। अन्ना मेरी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराए और राष्ट्रीय स्थापना दिवस के साधारण समारोह के बाद महल में एक शानदार पार्टी का समय आ गया था। यहाँ सेंट्रारिन के पूर्व कुलीन जो रामस्लेट साम्राज्य के जागीरदार थे और जाउस साम्राज्य की दूसरी राजकुमारी आए थे। ये दूसरी राजकुमारी फ्रेडरिक सान से खूब बातें कर रही है, लेकिन फ्रेडरिक सान उसे उचित तरीके से संभाल रहे हैं। शायद यही बात है। वैसे चूंकि मैं बहुत अच्छा नृत्य नहीं कर सकता और अन्ना अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, इसलिए पार्टी में लंबे समय तक उपस्थित रहना मुश्किल है, इसलिए हम सिर्फ नमस्ते कहेंगे। और हम जो पार्टी में शामिल हुए थे, हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे आमंत्रित अतिथियों से निपट रहे हैं। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे अच्छी तरह से संभाल पा रहा हूँ, लेकिन अन्ना की प्रतिक्रिया शानदार है। अन्ना मुस्कुरा रही है और मुझसे बातें कर रही है, लेकिन वह बहाने के तौर पर मेरे साथ नृत्य के सभी निमंत्रण ठुकरा रही है। अन्ना सामा, एलन कुन। तभी दो परिचित लोग आए। वे मार्गरेट और इसाबेला हैं। स्कूल बंद होने पर वे दोनों वापस आ गए थे और इस बार उन्होंने अपने माता पिता को इस समारोह में शामिल होने के लिए मजबूर किया था। सगाई होने पर बधाई। बधाई हो। ओ धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैं स्वाभाविक रूप से हंसने और उनके आशीर्वाद के लिए उन्हें धन्यवाद देने में सक्षम था। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि वे दोनों अन्ना के मित्र थे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बिना किसी बाधा के व्यवहार किया। मुझे लगता है कि यही कारण है कि मेरे पास स्कूल की सुखद यादें हैं। फिर भी एलन कुन, तुमने सचमुच ये कर दिखाया। अन्ना का दिल जीतने के लिए तुमने कई खतरनाक रास्ते पार किए, और अब जब ड्यूक, या यूं कहूं कि महामहिम ने तुम्हें पहचान लिया है, तुमने रैम्सलेट परिवार की अपनी शाखा बना ली है और दामाद के रूप में गोद ले लिए गए हो, तो इससे ज्यादा तुम और क्या चाह सकते हो। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी एलन सान अद्भुत हैं, और मैं हैरान हूं कि आप उड़ सकते हैं। धन्यवाद। फिर भी अन्ना सामा, तुम्हें सचमुच प्यार किया जाता है ना? ये सही है। कृपया मुझे प्यार पाने का रहस्य बताएं। क्या? रुको, अरे तुम लोग। जब अन्ना को ये बताया गया तो उसका चेहरा लाल हो गया और वह चौंक गई। प्यारा, मैं समझ गया, यही अंतर है। मैं समझता हूँ अन्ना सामा, हम भी आपसे सीखेंगे। ए मार्गरेट, इसाबेला, अरे एलन भी, कुछ तो बोलो। अन्ना जो मुझसे मदद मांगती है वह भी प्यारी है। अन्ना बहुत प्यारी है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या बेवकूफ, ऐसी जगह पर। अन्ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। उफ मूर्ख, मैं भी। जिन दो लोगों ने ये सुना वे खुशी से चिल्ला उठे। फिर थोड़ी देर बाद हमें जाने की अनुमति दे दी गई और राष्ट्रीय स्थापना दिवस समारोह का लंबा दिन समाप्त हो गया। राष्ट्रीय स्थापना दिवस समारोह के कुछ ही समय बाद ये सूचना आई कि सेंट्रारिन साम्राज्य ने ब्रुसेनी क्षेत्र को पूरी तरह से खो दिया है। जिस तेजी से यह सूचना प्रसारित हुई उसे देखते हुए यह अनुमान लगाना सुरक्षित है कि यह संभवतः स्थापना समारोह के आसपास ही हुआ होगा। खैर, ये स्वाभाविक परिणाम था। वे ब्रुसेनी से, जो संतुलन में था, सेना लेकर आए और रामस्लेट पर हमला कर दिया। ईमानदारी से कहूं तो मैं इसे केवल मूर्खता ही मान सकता हूं। एक अन्य जानकारी यह मिली कि सेंट्रेरियन साम्राज्य के द्वितीय राजकुमार के गुट ने द्वितीय राजकुमार को ध्वज बनाकर उत्तर में एक सेना खड़ी कर ली थी। दूसरी ओर दुर्भाग्यवश एमी के साथ जीवित बचे क्राउन प्रिंस शाही राजधानी में लौट आए हैं और मुख्य रूप से पश्चिम में समर्थन जुटाने तथा शाही राजधानी के आसपास इन आंदोलनों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और जहां तक हमारा सवाल है, हम फिलहाल चुपचाप बैठे रहेंगे। इसके अलावा इस संघर्ष में दखल देने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमें बस एमी से सावधान रहना है, जो एक डायन बन गई है और जरूरत पड़ने पर उसकी हत्या करने के लिए तैयार हैं। हमें नहीं पता कि अगर हम उसे अकेला छोड़ देंगे तो वह हमारे साथ क्या करेगी। हाँ, और हाँ, पूर्वी साम्राज्य से एक संदेशवाहक आया था और कह रहा था कि वे हमारी स्वतंत्रता को मान्यता देते हैं। ये क्राउन प्रिंस की हत्या करने वाले देश और राजकुमारी का अपहरण करने वाले देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना है। वैसे नॉर्सेन या वेस्टेडेल से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। वेस्टेडेल के मामले में यह उम्मीद के मुताबिक ही है, लेकिन नॉर्सेन के मामले में ये संभव है कि भौगोलिक कारणों से इसमें देरी हो रही हो, लेकिन ये भी संभव है कि ऐसा न हो। यह मानते हुए कि नॉर्सेन द्वितीय राजकुमार के गुट का समर्थन कर रहा है, राज्य की मंजूरी से द्वितीय राजकुमार के सत्ता में आने पर रामस्लेट साम्राज्य के साथ संबंध अजीब हो जाएंगे। ये केवल काल्पनिक है, लेकिन यदि नॉर्सेन द्वितीय राजकुमार का समर्थन करते हुए सेंट्रारिन पर मजबूत प्रभाव डालने की कोशिश करता तो रामस्लेट के क्षेत्र के बिना द्वितीय राजकुमार को निश्चित रूप से नॉर्सेन से पर्याप्त खाद्य सहायता की आवश्यकता होती। हालांकि अभी तक विवरण अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है, इसलिए हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। अब विषय बदलने के लिए, मैं ऑस्कर से पूछ पाया, जिसका घाव अन्ना के जादू से ठीक हो गया था और उसका सिर ठंडा हो गया था, कि क्या हो रहा था। फिर बातचीत कुछ इस तरह हुई। ऑस्कर, उस औरत के पास वह छड़ी क्यों है, और क्या तुम्हें नहीं पता कि वह चुड़ैल बन गई है, अन्ना ने ऑस्कर से पूछा, जो पूछताछ कक्ष में बंद था। फिर उसने बिना किसी प्रतिरोध के बोलना शुरू किया। एमी ने अचानक कहा कि इस देश में कहीं एक वीरान चर्च में उसके लिए एक छड़ी है, इसलिए मैंने सैनिकों के एक दल को शाही राजधानी के पास जंगल में एक वीरान चर्च की खोजबीन करने का आदेश दिया, और वहां सचमुच एक छड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने बताई थी। मैं समझ गया, तो एमी को भी आखिरकार समय से आगे निकलने का आइडिया सूझ गया है ना? जैसा कि अपेक्षित था, अकेले मेरे लिए एक परित्यक्त चर्च की खोज करना असंभव था, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि वह कहाँ है, और उस समय ये स्टाफ मेरे लिए बहुत कम प्राथमिकता वाला था। अब अगर मैं इसके बारे में सोचूं, तो बेहतर होता अगर मैंने इसे पहले ही इकट्ठा कर लिया होता, लेकिन मैं परिदृश्य को प्राथमिकता देते हुए और अलग दिखने के लिए कोई बड़ा कदम उठाए बिना उसी के अनुसार आगे बढ़ने की सोच रहा था। सच कहूं तो मुझे लगा था कि मैंने बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ना शुरू किया था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो शायद कुछ चीजें छूट गई होंगी। तो जब एमी ने उस छड़ी को छुआ तो उसमें से एक रोशनी निकली, फिर एमी के शरीर से एक काली आभा निकली, या शायद एक अशुभ आभा। एमी के शरीर से कुछ ऐसा ही बह निकला। ये चर्च के भित्तिचित्रों में दिखाई देने वाले सर्वनाश जैसा था। ये वैसा ही था, मुझे लगा कि यह बुरा है। ऑस्कर एक बार दर्द से नीचे देखता है, लेकिन एमी मुझे अब भी पसंद थी। मेरे आसपास की औरतें, जो सिर्फ मेरा चेहरा, दुआएं और मेरे परिवार का पैसा देखती थी, उनके उलट, वह मेरी परेशानियों को समझती थी। हालांकि मैं जाहिर नहीं करती, मैं अपने चेहरे को लेकर सचमुच चिंतित थी, लेकिन उसने बिना कुछ कहे ही मेरी बात समझ ली और मुझसे सहानुभूति जताई। क्योंकि वह एक ऐसी महिला थी, मैं उसके साथ रहना चाहती थी, चाहे मुझे अपना पद क्यों न छोड़ना पड़े, और अगर मैं ऐसा न कर सकूं, तो भी मैं उसका साथ देना चाहती थी। ये कहते हुए ऑस्कर अपने होंठ काटता है, लेकिन जब तुमने कहा कि वह एक चुड़ैल है, तो ये बात कुछ हद तक सही लगी। ऐसा नहीं था कि वह बिना कुछ कहे मुझे समझ गई थी, बल्कि एमी को मेरी समस्याओं का अंदाजा था। ऑस्कर ने उदास चेहरे के साथ कहा, सच तो यह है कि चुड़ैल की ताकत की वजह से उसे इस बारे में पता नहीं था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसे शुरू से ही शक था। ऑस्कर ने फिर गंभीर भाव से अन्ना की ओर देखा और सामान्य से भिन्न गंभीर स्वर में उसे क्षमा मांगी। राजकुमारी अनास्तासिया, मैं स्कूल में अपने कई अपमानजनक व्यवहारों के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे पता है कि मेरी माफी माफ नहीं की जाएगी, लेकिन अगर इस सिर से आपको थोड़ी भी तसल्ली मिलती है, तो मैं खुशी खुशी इसे आपको दे दूंगा। मैं समझ गया, ऑस्कर और मार्कस को लेकर कुछ संदेह जरूर थे, लेकिन लगता है कि मामला यही था। इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्कस के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। ऑस्कर, मैं आपकी माफी स्वीकार करती हूँ, अब ये बात पुरानी हो चुकी है। इसके अलावा अब मैं खुश हूँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं आभारी हूँ। ऑस्कर द्वारा अपनी गलती स्वीकार करने तथा अन्ना द्वारा उसकी माफी स्वीकार करने के साथ ही ऑस्कर के साथ उसके रिश्ते का अंत हो गया। उसके बाद मैंने उसे जाने के लिए कहा और एमी, जो अब एक चुड़ैल है, के बारे में उसे चेतावनी दी कि अगर उसके मन में अब भी उसके लिए कोई स्नेह है, तो वह फिर से अपनी इच्छा शक्ति खो देगा और खुद पर नियंत्रण खो देगा। हाँ, जैसा कि इस दुनिया में प्रथा है, मैंने सुना है कि हमें फिरौती के रूप में बहुत सारा पैसा मिला है। वह अमीर विमलेट मार्क्विस का सबसे बड़ा बेटा है। मैंने नहीं सुना कि उसकी कुल संपत्ति कितनी थी, लेकिन मुझे यकीन है कि यह बहुत बड़ी रकम थी। अब आइए विषय को सेंट्रेरियन साम्राज्य पर वापस ले चलते हैं। इसलिए सेंट्रेरियन साम्राज्य अब हमारे बारे में चिंतित नहीं रह सकता और बिना किसी बाधा के युद्ध विराम हो गया है। हमारे पास अपने लोगों का पेट भरने के लिए पर्याप्त उत्पादन है, इसलिए हमारा अपने क्षेत्र का और विस्तार करने का कोई इरादा नहीं है। इसलिए हमने सेंट्रेरियन पर हमला नहीं किया है और दोनों देशों के बीच स्थायी शांति बहाल हो गई है। और जहां तक मेरी बात है, मैं आज फिर से काम पर हूं। ऐसा लगता है कि अगर मैं अन्ना से आधिकारिक तौर पर शादी कर लूं, तो वे अन्ना और मेरे लिए कुछ जमीन छोड़ देंगे, इसलिए मैं एक प्रशिक्षुता कर रहा हूं जो उस काम के लिए भी एक अध्ययन का काम करेगी। खैर, ये बहुत दिलचस्प नहीं है क्योंकि यह सब कागजी कार्रवाई है, लेकिन इसमें एक आकर्षण है क्योंकि मुझे खाता बही पढ़ने का कोई ज्ञान नहीं था। फिर अन्ना के साथ दोपहर के भोजन के बाद मैं फिर से काम पर लग जाता और दिन का काम नाश्ते के समय समाप्त हो जाता। उसके बाद अन्ना के साथ प्रशिक्षण होगा। अन्ना हाल ही में इतनी स्वस्थ हो गई है कि वह दौड़ सकती है, भले ही वह हल्का फुल्का ही सही, इसलिए मैं उसके साथ कुछ अच्छा समय बिता पाया हूँ, थोड़ा तलवार चला पाया हूँ और नृत्य का अभ्यास कर पाया हूँ, जो कि मेरा पसंदीदा काम नहीं है। वैसे आज का नृत्य मुझे सबसे कम पसंद आया। फिलहाल मैं अन्ना के पैर पर पैर रखे बिना ही काम पूरा करने में कामयाब रहा, इसलिए खुद की प्रशंसा करें कि यह बड़ी प्रगति है। खैर, ये कहना कठिन है कि मुझमें सुधार हुआ है, लेकिन मैं अभी भी एक कदम बेहतर हूँ। इस तरह दिन बिताने के बाद अब रात के खाने का समय हो गया था। हाल ही में हम सब मिलकर एक परिवार के रूप में खाना खा रहे हैं और आज मैं रैम्सलेट किंगडम के शाही परिवार और अपनी माँ के साथ मेज पर बैठी हूँ। आज का मुख्य व्यंजन बीफ फिलेट स्टेक था। मांस इतना कोमल था कि जीभ पर पिघल गया, तो जरूर यह उच्च गुणवत्ता वाला मांस रहा होगा। और इस प्रकार एक शानदार रात्रिभोज का आनंद लेने के बाद अन्ना ने अपना मुंह खोला। वैसे एलन, क्या तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? हो सकता है कि वह किसी वर्षगांठ की बात कर रही हो, लेकिन मुझे इसकी कोई याद नहीं है। सबसे पहले, क्या ये पिछले साल का वह समय नहीं था जब मुझे उनसे बात करने की भी अनुमति नहीं थी? जब मैं अधीर हो गया, तो अन्ना ने मुझे अचंभित दृष्टि से देखा। अच्छा नहीं, क्या मैंने किसी तरह से कोई सालगिरह भूलकर उसे नाराज कर दिया? एक क्षण के लिए तो मैंने ऐसा ही सोचा, लेकिन अन्ना मुस्कुराए और अपना मुंह खोल दिया। एलन, जन्मदिन मुबारक हो। गेरहाद सान, एलिजाबेथ सान, फ्रेडरिक सान और माँ ने मुझे बधाई दी, जो आश्चर्यचकित थे। तुम्हें धन्यवाद। अरे एलन, ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों? ओह भगवान, ये लो, यह मेरी तरफ से है। इसके साथ ही अन्ना ने मुझे एक खूबसूरत कढ़ाई वाला रुमाल भेंट किया। उस पर दो काले और सफेद ड्रैगन, एक आत्मा और ब्यूटी की आकृतियां थीं, जिन्हें मिलाकर एक प्रतीक चिन्ह जैसा बनाया गया था। ये क्या अन्ना? ओह अच्छा, तुम्हें पता है उस समय मैं ज्यादा हिल डुल नहीं सकता था। तो ओम कैसा है? धन्यवाद, ये बहुत अच्छा है, मैं इसे संजोकर रखूंगा। जब मैंने ये कहा तो अन्ना को राहत महसूस हुई। मैंने अपनी सास कैटरीना से सुना था कि एलन को अपनी शादी का जश्न ज्यादा धूमधाम से मनाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसे इस तरह से मनाया। ओह हाँ, धन्यवाद, मैं पिछली वाली की तरह गेंदों में बहुत अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। ओह, ये जानकर अच्छा लगा। इसके साथ ही अन्ना ने मुझे एक खूबसूरत मुस्कान दी जिसे मैं हमेशा देखना चाहता था। मुझे अन्य सभी लोगों से भी उपहार मिले और पहली बार मैंने देखा कि मेरा जन्मदिन मेरी माँ के अलावा किसी और ने मनाया। ओ समझा, क्या बढ़ते परिवार का मतलब यही है, ये बहुत अच्छा है। पक्ष एमी 10। हाँ एमी, धीरज रखो, हम लगभग सीमा पार कर चुके हैं। हाँ ये सही है, फिर हम किंग्स लैंडिंग लौट सकते हैं। मैं भागा भागा फिरा, मुझे नहीं लगा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। लियो और ऑस्कर ने हमें भागने में मदद की, हमें उनका एहसान चुकाने के लिए जिंदा रहना होगा। हाँ बिल्कुल सही, चाहे वह बेवकूफ कितना भी धोखा दे, वह उन जख्मों से बच नहीं सकता। और अगर खलनायका लियो है तो उसे भी आसानी से हरा दिया जाना चाहिए। वह बहुत अच्छी हालत में नहीं दिख रही थी, लेकिन अभी भी मैं इसे देख सकता हूँ। यह एक गांव है। अरे क्या हम सफल हो गए, ये सही है, हमने विद्रोहियों द्वारा कब्जा की गई भूमि छोड़ दी है। ओह भगवान का शुक्र है, जब मुझे राहत महसूस हुई तो मेरी ताकत खत्म हो गई। फिर काल सामा ने मुझे राजकुमारी की तरह उठाया। क्या मैं इसकी चिंता मत करो एमी, मैं यह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें यहाँ तक पैदल चलने पर मजबूर किया। मैंने अपना सिर प्यार से हिलाया। हाँ मैं काल सामा और माकस दोनों को अपने साथ पाकर खुश हूँ, मैंने यह बात ऊपर की ओर देखते हुए कही, फिर थोड़ा नीचे देखा और दृढ़ता से कहा, चलो चलें, उन दोनों के लिए भी, ये सही है, हमें दोनों के लिए एमी की रक्षा करनी चाहिए। मैंने उनकी बातों पर सिर हिलाया और अपनी जान बचाकर शाही राजधानी में वापस भागने में कामयाब रहा। हे भगवान, आखिर क्या हो रहा है, जब मैं अभी अभी दान का संत बना हूँ तो दूसरा राजकुमार क्यों भाग रहा है, और तो और उत्तराधिकार का संघर्ष ऐसे समय में हो रहा है। जो उत्तरी अभिजात वर्ग मेरा विरोध करते हैं वे तैयार रहें, और मैंने सुना है कि ईस्ट एम्पायर के साथ मोर्चे को किसी तरह पीछे धकेला जा रहा है। क्या हो रहा है, क्या इस देश के सैनिक कुछ हद तक बेकार हैं। बस मैं एक अच्छी चीज लेकर आया हूँ, ये थोड़ी चुनौतीपूर्ण बात है, लेकिन आइए इस रणनीति पर चलें। यदि ऐसा है तो मुझे यथाशीघ्र काल सामा से मदद मांगने जाना होगा। तारांकन 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 तारांकन, इमी का इस तरह की गतिविधि में शामिल होना बहुत अच्छी बात है। वास्तव में चैरिटी का संत बनने के बाद से एमी इतनी तेजी से आगे बढ़ी है कि मुझे लगता है कि हम पीछे रह जाएंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा तारीफ है, वैसे भी मैं दानवीर संत हूँ तो ये तो स्वाभाविक ही है। फुफू, मुझे नहीं लगता कि मैं और कुछ कैप्चर कर पाऊंगा, लेकिन मुझे आप दोनों से और भी ज्यादा अनुकूल प्रतिक्रिया मिल रही है। ठीक है एमी, हम यहाँ हैं, ये कहकर काल सामा मुझे एक बड़े कमरे में ले गए। फुफू, यहाँ बहुत सारे सैनिक हैं, काल सामा ने सैनिकों का सामना करते हुए भाषण देना शुरू किया। यहाँ एकत्र होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश के पूर्व में ईस्ट एम्पायर है, दक्षिण में विद्रोही पूर्व ड्यूक रैम्सलेट है, और उत्तर में मेरा मूर्ख भाई है जिसे विद्रोही ड्यूक श्लेस्टीन ने धोखे से विद्रोह के लिए उकसाया है। फूफू, ये तो बिल्कुल काल सामा जैसा है ना, उसकी बोली भी बहुत अच्छी है, लेकिन यह आपके प्रयासों के कारण ही है कि शाही राजधानी और उसके लोग शांति से रह पा रहे हैं। ओ तो लीजिए, हमारे राजा की प्रिय संत एमी आपको प्रोत्साहित करने आई हैं। उन्होंने अपने करुणामय हृदय से आप सभी को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव रखा है। कृपया अपनी बारी लें, पंक्ति में खड़े हों और एमी से बात करें। ओ फूफू, कैसा है, ये ऑपरेशन सेंट है जहां आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। सैनिक पहले ही साफ तौर पर कतार में खड़े हो चुके हैं, अब बस इसे हाथ मिलाने की तरह ही संभालना बाकी है। मैं डैनियल हूँ, मैं एक नाइट प्रशिक्षु हूँ। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वाह डैनियल सामा, आप बहुत अच्छे हैं, प्रशिक्षु होना कठिन है ना, कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। हाँ मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। फिर अगला, एक मिनट रुको, मैं डैनियल सामा को अपना आशीर्वाद दूंगा। तो मैंने डैनियल नाम के इस बेवकूफ आदमी से हाथ मिलाया और उसकी तरफ ऊपर की ओर आंखें उठाकर देखा। फिर कितना प्यारा, पलक झपकते ही वह पूरा लाल हो गया। इमी, दान के संत हमेशा तुम्हारे साथ हैं, कृपया सबकी रक्षा करो डैनियल सामा। डैनियल जाते हुए सपनों में खोया हुआ लग रहा था, उसके बाद डैनियल मेरा पूरा प्रशंसक बन गया। खैर अब आगे, मैं ओलिवा हूँ, मैं एक नाइट प्रशिक्षु हूँ। ओह तुम अच्छे लग रहे हो, इसके बाद बार बार लगभग वही बातचीत होती रही। इसमें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जब आपको लगता है कि आप आलू के बारे में बात कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा वे शूरवीर हैं, अच्छी तरह प्रशिक्षित होने की वजह से वे थोड़े ताकतवर हैं, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि उनमें कोई डरपोक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर मुझे डरावने मोटे लोगों के साथ काम करना पड़ता तो मैं इतने लंबे समय तक हाथ मिलाने का कार्यक्रम नहीं कर पाता। एमी, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। ओह एमी, ये बहुत बढ़िया था। मैं देख रहा हूँ कि सैनिकों का मनोबल काफी बढ़ गया है। अरे नहीं, मैंने तो बस वही किया जो मैं कर सकता था। आपकी विनम्रता भी अद्भुत है एमी। मैं हर दिन अलग अलग सैनिकों से हाथ मिलाता था, फिर यह सब कुछ ही समय में खत्म हो जाता था। इसके अलावा मैंने घायलों को भी ठीक किया है, और मैं पहले से ही सैनिकों के बीच चैरिटी एमी सामा का सुंदर और सौम्य संत हूँ। इस दौरान एक शूरवीर प्रशिक्षु गंभीरता से इस बात पर चर्चा कर रहा था कि एमी सामा की मदद कैसे की जाए, क्या आप जानते हैं। मुझे हंसी आ गई, मैं तो तुम लोगों को आलू से ज्यादा कुछ नहीं समझता। कम से कम मेरे लिए काम तो करो क्या। फिर भी दान के संत की शक्ति वास्तव में सुविधाजनक है ना। खेल में प्रार्थना और शब्दों ने पिछली बॉस खलनायिका को कमजोर कर दिया था, और अब ओह लियो को उसे हरा देना चाहिए था, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। लियो, तुम ठीक होकर वापस आओगे है ना। अरे नहीं, मैं तो विषय से भटक गया। इसके बाद चच है, अगर मैं उन्हें अपनी पहचान दिला सकूं तो देश में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मुझे संत न माने। लेकिन आप जानते हैं क्या, वे जिद्दी हैं। वे कहते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने कोई चमत्कार नहीं किया है या कोई सबूत नहीं दिखाया है। वे ये कैसे नहीं देख सकते कि मेरा अस्तित्व ही इसका प्रमाण है। उन लोगों से निपटना मुश्किल है जो ज्यादा समझदार नहीं है। सचमुच पक्ष एमी 11। मुझे समझ नहीं आया, आखिर खलनायक और बेवकूफ अभी भी जीवित कैसे हैं। इसके अलावा मैं दान का संत एक चुड़ैल के रूप में वांछित हूँ, क्या आप पागल नहीं हैं। और तो और, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मुझे मारना ठीक है। क्या तुम मुझसे इतना डरते हो हे दान के संत। यह शायद सही है, आखिरकार वह खलनायिका है। मुझे यकीन है कि बहुत सी चीजें भ्रमित करने वाली हैं, लेकिन इंतजार कीजिए और देखिए, हम इसे जल्द ही आसान बना देंगे। जब मैं इस बारे में सोच रहा था तो मुझे कुछ अविश्वसनीय समाचार मिला है ना। उस खलनायिका के इलाके को एक देश के रूप में मान्यता दी गई, और तो और जॉस राज्य जो उनसे लड़ने वाला था ने भी उसे मान्यता दी और समारोह में एक राजकुमारी भेजी, और उसके ऊपर उस बेवकूफ और खलनायिका की सगाई की घोषणा की गई थी है ना। हो तुम मजाक कर रहे हो। उसी समय माकस हमारे कमरे में घुस आया। महाराज कुछ भयानक हुआ है। क्या हुआ माकस? लियो है, लियो है। लियो का क्या हुआ? क्या वह वापस आ गया? वह ताबूत में है। क्या ए लियो है मृत? एक जब मैंने ये सुना तो मेरी आंखें खाली हो गईं। एमी, लेकिन तभी काल सामा ने मुझे गले लगा लिया और अपने पास रख लिया। ओह ओह, लेकिन हाँ मैं अभी भी ठीक हूँ। लेकिन फिर भी मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उन्होंने लियो को मार डाला। लियो तो एक गिरफ्तारी का निशाना है, उस खलनायिका और उस बेवकूफ भीड़ के उलट। तुम्हें पता है तुमने उसे क्यों मारा? मैंने, नायिका और दान की संत ने तुम्हें किसी भी कीमत पर वापस आने के लिए कहा था, इसलिए तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा। तुम क्या सोच रही थी? अक्षम्य मेरे लियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कालसामा लियो, बदला लो लियो। ठीक है, मैं उन्हें जरूर मार डालूंगा। बिल्कुल सही, हमें उस खलनायिका और उस बेवकूफ को तुरंत मार देना चाहिए था। मैं दान का संत हूं और उनके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करता था, इसलिए उन दुष्टों ने मेरा फायदा उठाया। टीएन, नहीं, आप मूर्ख हैं। मैं फिर असफल नहीं होऊंगा। मुझे पता है एमी, लेकिन अगर हम उस काय के बारे में कुछ नहीं करते तो। क्षमा करें महाराज, क्या बात है, क्या तुम हवा को नहीं पढ़ सकते? ओह दान के संत भी, आप हमेशा की तरह बहुत सुंदर हैं। ठीक है, धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं। फिलहाल मैंने दान के संत के रूप में उत्तर दिया। क्या हुआ, क्या बात है? हाहा, ईस्ट साम्राज्य के खिलाफ मोर्चा ध्वस्त हो गया है और ब्रुसेनी का सारा हिस्सा खो गया है। क्या आपने क्या कहा? क्या रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया था कि कार्डासिया नहीं गिरेगा भले ही उसे कुछ पीछे धकेल दिया जाए? ऐसा लगता है कि वहां एक गुप्त रास्ता था जिसके बारे में हमें पता नहीं था, जिसका इस्तेमाल शहर की दीवारों के भीतर से हम पर हमला करने के लिए किया गया था। तो फिर हाहा, महल में दुश्मन सैनिकों की अचानक उपस्थिति से हमारा पक्ष भ्रमित हो गया और हमने अपने आधे सैनिकों को खो दिया जो कुचल दिए गए। उनमें से आधे आप कहते हैं? हाहा, और पूर्वी शाही सेना जिसने पूरे ब्रुसेनी को हरा दिया है अब अपनी सेना को और संगठित कर रही है। संभावना है कि वे जल्द ही लुर्देन की ओर अपना मार्च शुरू कर देंगे। लानत है, क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर दुष्ट महिला न भी हो तो भी शाही राजधानी गिर जाएगी? लेकिन मैं दान का संत यहां हूं, तुम्हें पता है।
हाँ, ये सही है, हम हारेंगे नहीं।
मैं समझ गया, यह आखिरी बॉस लड़ाई होगी।
टीएन, एक बार के लिए वह सही है।
ओह, मैं यहाँ हूँ।
कालसामा, मैं इस लड़ाई में सभी का समर्थन करूंगा।
हाँ, ये सही है, दान का संत हमारे साथ है, हम हार नहीं सकते।
जब तक हमारे पास दान का संत है, तब तक डरने की कोई बात नहीं है।
मेरे शब्दों ने सभी को प्रेरित किया।
बिल्कुल सही, अब समय आ गया है कि मैं अपनी नायिका की ताकत दिखाऊं।
रामस्लेट राज्य में आखिरकार सर्दी आ ही गई। अगर हम स्कूल जाते रहते तो हम ग्रेजुएट हो जाते।
अब तक रामस्लेट साम्राज्य में शांति है, लेकिन सेंट्रेरेन में काफी गतिविधियां हुई हैं।
एस्ट साम्राज्य ने खेल की तरह पश्चिम की ओर लुर्डेन की ओर कूच किया, जो सेंट्रेरेन साम्राज्य की शाही राजधानी थी।
खेल की तरह रास्ते में पड़ने वाले शहरों पर शीघ्र ही कब्जा कर लिया गया और सेना लर्डन के पास पहुंच गई, लेकिन खेल के विपरीत लर्डन बिना गिरे डटा रहा।
रिपोर्टों के अनुसार लुर्डेन के सैनिक मृत सैनिकों में बदल गए हैं और हताश प्रतिरोध कर रहे हैं।
टीएन, ज़ोंबी की तरह लेकिन जीवित, यहां तक कि मरते वक्त भी वे संत अमर रहे चिल्लाते हुए मरते हैं।
तो मुझे लगता है कि जिसका मुझे डर था वही हुआ।
ऐसा लगता है कि जैसा कि अपेक्षित था, पुरुषों को व्यवस्थित तरीके से छिपाया जा रहा है, तथा जो पुरुष जासूस उस महिला से मिले थे उन सभी को नीचे उतार लिया गया है।
हालांकि ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ ठीक चल रहा है।
कुछ मामलों में इस तरह से फंसे हुए पुरुषों का उपयोग उनके परिवारों और प्रेमियों को फंसाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन ऐसे लोग भी होंगे जो विरोधी होंगे।
अब ऐसा लगता है जैसे शाही राजधानी में एक नया पंथ उभर आया है, जिसमें एमी को दान का संत माना गया है, और यह युवराज से लेकर कुलीन वर्ग और सैनिकों तक मुख्य रूप से शाही दरबार में फैल गया है और धीरे धीरे शहर में फैल रहा है।
हालांकि चर्च एमी को संत के रूप में मान्यता नहीं देता है,
वे हर चीज का सबूत मांग रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया जो स्थिति की जांच करके स्पष्ट हो जाना चाहिए था।
लेकिन उस समय जिस तरह से उसने बात की थी, उससे ऐसा लग रहा था कि उसे दान के संत का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, ठीक उसी तरह जैसे खेल की नायिका को मिला था।
मुझे नहीं पता कि एमी को इतनी साधारण बात का पता नहीं है या फिर वह जानबूझकर इस पर पर्दा डाल रही है और इसे नजरअंदाज कर रही है,
लेकिन किसी भी तरह से एमी पहले से ही पागल है और मुझे नहीं पता कि अगर हम उसे जाने देंगे तो उस महिला के कारण कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा।
सबसे खराब स्थिति में चर्च द्वारा अन्ना को बर्फ संत के रूप में मान्यता देना आवश्यक हो सकता है।
हालांकि अगर ऐसा होता तो कहा जा सकता था कि अन्ना को चर्च के संरक्षण में रखा जाना चाहिए।
बेशक ऐसा हो ना पाए, लेकिन इससे मामला जरूर पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि संत चर्च में अधिकार का प्रतीक होता है।
मैं जितनी जल्दी हो सके एमी से छुटकारा पाना चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से ये निराशाजनक है कि चीजें इतनी आसानी से नहीं हो रही हैं।
सबसे पहले रामस्लेट साम्राज्य की वर्तमान राष्ट्रीय शक्ति को देखते हुए ईस्ट साम्राज्य का सामना करना असंभव है।
अगर मैं उन पर बमबारी करूं तो शायद मैं एक छोटी सी लड़ाई जीत सकूं, लेकिन हमारे पास पर्याप्त सैनिक या नौकरशाह नहीं है।
यदि हम ऐसी स्थिति में युद्ध में उतरते हैं तो हम लोगों को अनावश्यक रूप से थका देंगे, तथा किसी भी पक्ष को इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा।
जैसा कि कहा गया है, यदि हम पूर्वी साम्राज्य का पक्ष लेते हैं और सेंट्रारेन गिर जाता है तो हम पूर्वी साम्राज्य की सीमा पर होंगे और यह हमारे लिए अच्छा नहीं है।
पहली बात तो ये कि जब दुश्मन और संभावित दुश्मन आपस में लड़ रहे हों तो एक पक्ष की मदद करना और दूसरे पक्ष के साथ हस्तक्षेप करना एक बुरा विचार है।
तो फिर हम क्या करें?
यह मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त सिद्धांत है।
यदि हम स्थानांतरित नहीं हो सकते तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति को स्थानांतरित करना होगा जिसकी रुचियां हमारे समान हों।
इसीलिए मैं ब्यूटर रेव के साथ सेंट्रेरेन किंगडम के उत्तरी भाग के सबसे बड़े शहर कीलबर्ग आया था।
यह क्षेत्र ड्यूक श्लेस्टीन द्वारा शासित द्वितीय राजकुमार के गुट का गढ़ है, और कहा जाता है कि द्वितीय राजकुमार स्वयं यहां रहते हैं।
संक्षेप में, हम इस द्वितीय राजकुमार के गुट से बात करना चाहते हैं और क्राउन प्रिंस और एमी से छुटकारा पाना चाहते हैं।
मैंने बिना किसी समस्या के शहर में प्रवेश करने के लिए छिपाव का उपयोग किया, और शहर की गपशप की त्वरित जांच के बाद मैं ड्यूक की हवेली में घुस गया।
क्या वह एक थोड़ा छोटा लड़का जो बिल्कुल युवराज जैसा दिखता है एक सजे धजे बुजुर्ग के साथ हवेली में घूम रहा है?
शायद वह दूसरा राजकुमार लुडविग और श्लेस्टीन का ड्यूक है।
जहां तक मुझे याद है, दूसरा राजकुमार डॉफिन से 3 साल छोटा था, यानी अब उसकी उम्र 13 या 14 साल होगी।
ये बात ध्यान में रखते हुए मैं उनके करीब गया और उनकी बात सुनने लगा।
ग्रेगर दोनों, मुझे लगता है कि हमें उस जहरीली औरत से तुरंत बदला लेना चाहिए और मेरे भाई को उसके द्वारा पागल होने से रोकना चाहिए।
मुझे नहीं लगता कि ऑस्कर की कहानी भी झूठ है।
ग्रेगोर श्लेस्टीन के ड्यूक का नाम है।
मुझे लगता है कि उनका असली नाम ग्रेगोर जूलियस वॉन श्लेस्टीन था।
महाराज, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन फिलहाल उन्हें लड़ने दीजिए। इसके अलावा मुझे लगता है कि ऑस्कर की कहानी थोड़ी बड़ा चढ़ाकर कही गई है। उस जहरीली औरत में वाकई दूसरों को पागल करने की ताकत है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ऑस्कर को इतने समय बाद अपने किए की गंभीरता का एहसास हो गया हो और वह जिम्मेदारी से बच रहा हो। मुझे नहीं पता कि सेंट्रारिन में उसे वापस करने के बाद वह कहाँ गया, लेकिन ऐसा लगता है कि ऑस्कर यहीं था। लेकिन ग्रेगोर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो लर्डेन उनके हाथों में चला जाएगा। वहां स्वयंभू दान पुण्य की संत और उनकी मंडली को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने दो। इसके अलावा अगर लर्डन गिर गया तो रामस्लेट को भी हटना होगा। उस समय नायक भी बाहर आ जाएगा और जब वे इसे उनसे छीन लेंगे तो हम इसे वापस ले लेंगे। लेकिन इससे तो लर्डेन बर्बाद हो जाएगा। इसका खामियाजा लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। क्या राजपरिवार को अपने लोगों की रक्षा के लिए नहीं लड़ना चाहिए? दूसरे राजकुमार का स्वर गर्म हो गया। फिर भी यह आश्चर्यजनक है, उस मूर्ख पिता और भाई के साथ वह इतना सीधा कैसे हो गया? क्या यह उसके शिक्षक होने की वजह से है? महाराज, कृपया शांत हो जाए। आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है। हालांकि आशीर्वाद के बिना आपके पास अपने भाई या नायक जैसी युद्ध शक्ति नहीं है। यदि आप प्रकट भी हो जाएं, तो भी महामहिम के लिए युद्ध की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव लाना मुश्किल होगा। समझ गया, मैंने दूसरे राजकुमार के आशीर्वाद के बारे में कभी नहीं सुना था। मुझे लगता है कि इसे गुप्त नहीं रखा गया था, बल्कि यह तो उनके पास था ही नहीं। यही कारण है कि हीरो के आशीर्वाद से क्राउन प्रिंस को ऐसा अधिमान्य व्यवहार दिया गया। दूसरा राजकुमार स्थिति से संतुष्ट नहीं है और वह अभी भी श्लेस्टीन के ड्यूक से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। घग, लेकिन आपको क्या लगता है हमारे कितने लोगों की बलि दी जाएगी? महामहिम, लोग तो संख्याएं हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्तियों के साथ क्या होता है। अगर महामहिम जैसे पद पर बैठा व्यक्ति व्यक्तिगत लोगों के बारे में चिंतित है तो सरकार नहीं बन सकती। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है यही मायने रखता है। लेकिन महाराज, यदि आप एक जरूरतमंद को दान देते हैं तो आपको भी दूसरों को देना चाहिए। लेकिन ऐसा करना असंभव है। क्या ये स्पष्ट है? एक ऐसे राजा बनिए जो व्यक्ति को नहीं बल्कि समग्रता को देखता हो और देश पर शासन करता हो। मुझे पता है, लेकिन मैं समझ गया, उसे नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए आप बात बदल रहे हैं। लोगों की कीमत पर राजनीतिक शत्रुओं और विरोधियों को कुचलना, ये कहने से बिल्कुल अलग है कि राजघरानों को कुछ व्यक्तियों को विशेष सुविधा नहीं देनी चाहिए। हालांकि ये तथ्य कि वह इसका उचित खंडन करने में असमर्थ है संभवतः इस बात का संकेत है कि दूसरा राजकुमार अभी तैयार नहीं है। महाराज, अपने लोगों के प्रति आपकी चिंता बहुत सराहनीय है, लेकिन अब सहन करने का समय है। कुह, मुझे पता है, दूसरे राजकुमार ने खेद के साथ ऐसा कहा। शायद दूसरे राजकुमार के नेतृत्व वाला देश समझौता कर सके और अगर सही तरीके से काम किया जाए तो शायद श्लेस्टीन के ड्यूक से भी निपटा जा सके। हम अब क्या करें? शुभ संध्या महामहिम श्लेस्टीन के ड्यूक। कुछ विचार करने के बाद मैंने श्लेस्टीन के ड्यूक से बात करने का निर्णय लिया। मैं तब से कुछ समय से इस बातचीत पर ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि दूसरे राजकुमार की सोच अभी भी काफी युवा है और मुझे ऐसा लगता है कि श्लेस्टीन के ड्यूक के पास ही असली शक्ति है। उस स्थिति में कहानी को ड्यूक श्लेस्टीन के पास ले जाना बेहतर होगा, जो दूसरे राजकुमार को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर रहा है। ये बात ध्यान में रखते हुए मैं ड्यूक श्लेस्टीन के निजी कमरे में घुस गया और इस तरह उनके पास पहुंचा। आप कौन हैं? श्लेस्टीन के ड्यूक अपने निजी कक्ष में बिना आवाज के घुसपैठ से चौंक गए और मुझसे सावधान हो गए। आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं एलन हूँ। और क्या ये बात समझ में आएगी अगर मैं कहूँ कि अगले साल मैं एलन वॉन रामस्लेट हो जाऊंगा? मैं ऐसा कहता हूँ और झुकता हूँ। क्या रामस्लेट के प्रिय बच्चे की शक्ति इतनी अधिक है? आप एस्ट के बारे में जानते हैं, है ना? गुत्सु, तुम यहाँ किस लिए आए हो? जब मैंने इस तथ्य का उल्लेख किया कि मैंने ईस्ट साम्राज्य के युवराज का सिर ले लिया है तो श्लेस्टीन का चेहरा नीला पड़ गया। ठीक है, पहला अभिवादन अच्छा रहा। कृपया आश्वस्त रहें, मुझे रामस्लेट साम्राज्य के राजा गेरहार्ड का एक पत्र सौंपा गया है। कृपया इसे स्वीकार करें। मैंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और उसे मेज पर रख दिया। हम, यह मोम की सील है। हम, ड्यूक श्लेस्टीन ने पत्र खोला और उसे पढ़ना शुरू किया और तुरंत ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या एलन दोनों को इस पत्र की विषय वस्तु के बारे में पता है? हाँ, मुझे पता है। तो क्या यहाँ जो लिखा है वह सच है? ये चुड़ैल वाला मामला? हाँ, ये सब सच है। अगर उस महिला को, जो अब अपने ही लालच में डूबी हुई है, अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो संभव है कि इस महाद्वीप पर हर किसी को नियंत्रित किया जा सके। और यह कहना जितना आसान है बलपूर्वक करना उतना आसान नहीं है। हम, तो ऑस्कर दोनों ने जो कहा वो था? ड्यूक श्लेस्टीन कराहती हुई आवाज में बुदबुदाता है। हाँ, मैंने ऑस्कर को वह जानकारी इसलिए दी थी ताकि उसे उस औरत के खतरे का एहसास हो सके। तुम्हारे देश का राजा तो पहले ही फंस चुका होगा, तुम्हारी खुफिया इकाई को भी भारी झटका लगा होगा, है ना? जैसी कि उम्मीद थी उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन चुप रहना भी पुष्टि के समान ही होगा। आप क्या करेंगे? अगर आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे, लेकिन हमारे देश का इरादा खून खराबे से जो हासिल हुआ है उसे छोड़ने का नहीं है, समझ रहे हैं? जब मैंने ये कहा तो ड्यूक स्लेस्टीन ने पत्र को और भी कठोर भाव से देखा। आप चाहते हैं कि हम चले जाएं? हाँ, मैं संक्षेप में उत्तर देता हूँ। अतिरिक्त जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस अपने विवेक से अनुमान लगाएं। लेकिन क्या हम जीत सकते हैं? ईस्ट एम्पायर के अभिजात वर्ग को भी कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है, तुम्हें पता है। हम भी इसमें सहयोग करेंगे। हमारे पास उस महिला के ब्रेन वॉश का मुकाबला करने की शक्ति है। वह वास्तव में क्या है? ड्यूक स्लेस्टीन अंदर की कहानी जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अभी अपने पत्ते नहीं खोल सकते। बेशक मैं इसे अभी और यहाँ नहीं बता सकता। घग, आपकी मांगे क्या हैं? सेंट्रेन किंगडम द्वारा रामस्लेट साम्राज्य को बिना शर्त बराबरी का दर्जा दिया जाना। ड्यूक स्लेस्टीन ने एक क्षण सोचा, फिर मुझ पर गुर्राहट से बोला, क्या आप हमसे एस्ट के खिलाफ ढाल बनने के लिए कह रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ उस क्षेत्र की रक्षा करना चाहते हैं जो हमारे पास है और उन लोगों की जो अभी हमारे संरक्षण में हैं। जब मैंने ये कहा तो ड्यूक स्लेस्टीन ऐसे दिखे जैसे उन्हें कोई कड़वा कीड़ा काट रहा हो। क्या वह शक्ति निश्चित है? हमारे कुछ सैनिक उस महिला के जाल में फंस गए थे, लेकिन इस शक्ति की बदौलत हम उन्हें वापस ला पाए। इससे ऑस्कर के दिमाग को धोने की कोशिश भी नाकाम हो गई, जो मुझे लगता है कि आपके संरक्षण में है। क्या ऐसा है? फिर ड्यूक स्लेस्टीन को दबा दिया गया। क्या अब आप निर्णय ले सकते हैं? जब मैंने ये कहा तो ड्यूक स्लेस्टीन ने अपना सिर हिलाया। मान लीजिए कि हम चले जाते हैं तो रामस्लेट क्या करेगा? हम उन सैनिकों को बहाल करेंगे जिन्हें उस महिला ने पागल कर दिया है। आप सेना नहीं भेजेंगे? यदि आप अपनी सेना नहीं भेजेंगे तो आपको बराबर नहीं माना जा सकता है ना? ड्यूक स्लेस्टीन हार मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मैं पहले से ही शीर्ष पर था। आप क्या कहते हैं? आपके देश में गृह युद्ध चल रहा है। हमारा देश दूसरे राजकुमार के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा को दूर करने में आपकी मदद करने की पेशकश कर रहा है, आपको पता है। कुह, इसके अलावा अगर हमारा देश सेना भेजने वाला है तो हम इसके लिए भुगतान चाहेंगे। हम इतने मित्रवत नहीं हैं कि बिना किसी इनाम के आपके देश के गृहयुद्ध में सेना भेज दें। ये बराबरी नहीं होगी, है ना? पश्चिमी सीमा का दक्षिणी भाग हमारे उद्योग के अनुकूल प्रतीत होता है। आप क्या सोचते हैं? जब मैंने ऐसा कहा तो श्लेस्टीन के ड्यूक को ऐसा लगा जैसे उन्होंने हार मान ली हो। यदि हम और अधिक अन्न भंडार क्षेत्र खो देंगे तो हम अपना देश भी खो देंगे। जब उन्होंने ये कहा तो ड्यूक स्लेस्टीन ने गहरी सांस ली। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। हालांकि मान्यता मिलने पर हम आपसे शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कहेंगे। सीमाएं पहले जैसी ही रहेंगी। हम आगे किसी भी क्षेत्रीय अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, मुझे खुशी है कि आप समझ गए। अब मैं वो कदम उठा सकता हूँ जो मैं नहीं उठाना चाहता। नहीं, कुछ नहीं। अब क्या आप कृपया मुझे जवाबी पत्र भेज सकते हैं? मेरी बात सुनकर ड्यूक स्लेस्टीन का चेहरा उतर गया और वह थोड़ा पीला पड़ गया। मैं समझ गया, तुम्हें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। ऐसा कहकर ड्यूक ने पत्र पर अपनी कलम चलाई, उसे मोम से सील किया और पत्र को मेज पर रख दिया। मैंने दस्ताने पहने, लिफाफा लिया, उसे अपने साथ लाए कपड़े में लपेटा और अपनी जेब में रख लिया। इसके अलावा हमें कुछ तैयारियां भी करनी हैं। हम शायद साल की शुरुआत में ही ऑपरेशन को अंजाम दे पाएंगे जब सबसे ज्यादा ठंड होगी। अब अगर आप मुझे माफ करें तो। रुको, जब मैंने उससे अपनी बात कह दी तो मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। फिर ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, मैं छिपाव का इस्तेमाल करके छिप गई। ओह, मैं थक गया हूँ। बातचीत करने में बहुत दिमाग लगता है और इतने अनजान अंदाज में बात करने से मेरे कंधे अकड़ जाते हैं। अगले 3 दिन ड्यूक के निवास पर जानकारी एकत्र करने के बाद मैं घर लौट आया। मैं समझ गया, ड्यूक स्लेस्टीन ने शर्तें स्वीकार कर ली हैं। हाँ, हम बिना किसी शोर शराबे या तलवारें भांजे शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करने में सक्षम थे। मैं समझ गया, लगता है तुमने अच्छा किया। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। इसके अलावा घर लौटते समय मैंने देखा कि शाही राजधानी में क्या हो रहा है। अच्छा, लड़ाई की स्थिति क्या थी? कोई घेराबंदी नहीं है और फिलहाल गतिरोध जारी प्रतीत होता है। अगर ऐसा है तो संभावना है कि साम्राज्य अभियान दल को रोक नहीं पाएगा और पीछे हट जाएगा। उस चुड़ैल के प्रभाव के बारे में क्या? हाँ, देखने से तो ऐसा लग रहा था कि 10-20% निवासी पहले से ही उसके प्रभाव में थे। वह सार्वजनिक स्थानों पर जादू टोना करने के लिए जाती थी और भाषण भी देती थी। मुझे लगता है कि उसने शायद उन लोगों को अपने वश में कर लिया था जो ऐसी चीजें कर सकते थे। यह अच्छा नहीं है। गेरहाद सांग की अभिव्यक्ति, जो इतनी सहजता से बोल रही थी, काफी गंभीर हो गई। हाँ, स्पष्ट कहें तो ये स्थिति काफी खराब है। एमी असल में बहुत खूबसूरत है क्योंकि वह इस खेल की नायिका है। वह न सिर्फ अपनी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ है बल्कि 10,000 में एक है या कुछ ऐसा ही। और अब ईर्ष्या की चुड़ैल के आशीर्वाद से एक महिला के रूप में उसका आकर्षण और भी बढ़ गया है। और अब तक मंदबुद्धि एमी अपने आप ही सोचती और कार्य करती रही है, लेकिन क्या होगा यदि कोई ऐसा व्यक्ति इसमें शामिल हो जाए जो एमी, जो एक शानदार मोहरा है, को दिखाना, परिदृश्य लिखना और चलाना जानता हो। इसमें कोई शक नहीं कि एमी के प्रभाव में आने वाले लोगों की संख्या में भारी इजाफा होगा। इसका प्रमाण यह है कि मैंने जो कुछ भाषण कार्यक्रम देखे हैं उनमें काफी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थीं। शायद जो लोग इसे बना रहे हैं, चाहे उनके मूल इरादे कुछ भी रहे हों, वे अब पूरी तरह से एमी के प्रभाव में हैं और अब वे अपने ज्ञान का प्रयोग प्रिय दान के संत के लिए कर रहे हैं। तो एलन इस बारे में क्या सोचते हैं? शायद, लेकिन मेरा मानना है कि सेंट्रारेन शाही सेना को हटा देगा। उसके बाद ड्यूक श्लेइस्टीन का दूसरा राजकुमार गुटचुरेल को हराने के लिए लड़ेगा। ये सही है, तो मैं इस बीच अन्ना के साथ तैयारी करूंगी। तैयारी, आप कहते हैं? हाँ, हम अन्ना का स्तर सुधारने के लिए पवन पर्वत की कालकोठरी में जा रहे हैं, क्योंकि स्तर बढ़ाने के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। हम सावधान रहो, मुझे लगता है आजकल वे मुझ पर भरोसा करते हैं और अब इन चीजों पर कोई आपत्ति नहीं करते। अन्ना की ताकत अब उस स्तर तक पहुंच गई है जहां अब ये कोई समस्या नहीं है, और मैं चाहता हूं कि जब तक मैं ऐसा करूं उसका स्तर कम से कम 30 तक पहुंच जाए। स्काई नाइट और आइस सेंट के दो आशीर्वादों के साथ अन्ना को कोई भी नहीं रोक पाएगा यदि वह सही स्तर पर आगे बढ़ जाए। मैं आगामी निर्णायक लड़ाई में किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता हूं। लेकिन चाहे आप अन्ना के लिए कितना भी कुछ करना चाहें, ऐसा कुछ भी न करें जिससे आपको अपना जीवन बर्बाद करना पड़े, ठीक है? हाँ, ऐसा कुछ आखिरी बार होने वाला था। अब अगर आप मुझे माफ करें। इस प्रकार मैं गेरहाद सांग के कार्यालय से निकलकर विशेष शहर में एक निश्चित स्थान पर चला गया। दक्षिणी द्वीप पर बेमौसम बर्फ गिर रही है। कल बारिश होगी क्योंकि परसों से ही बारिश हो रही है। गचारी, मैंने वही अस्पष्ट शब्द कहे और दरवाजा खुल गया। अंदर जाने पर 6 तातामी चटाइयों वाली यह छोटी सी दुकान संदिग्ध वस्तुओं से भरी हुई है, ठीक वैसे ही जैसे येलोडेन में थी। और पीछे काउंटर पर एक परिचित वृद्ध महिला बैठी है। ओह, स्वागत है, आज आप क्या ढूंढ रहे हैं? 10 बड़े बर्फ के पत्थर। बर्फ आत्मा पत्थर एक विशेष वस्तु है जो बर्फ आधारित राक्षसों के जादुई पत्थर को संसाधित करके बर्फ आधारित जादू को बढ़ाती है। खेल में आकाश ड्रैगन के जादुई पत्थर का उपयोग एक बड़े आकार के पवन आत्मा पत्थर को बनाने के लिए किया गया था, जिसका उपयोग खलनायक पर एक पवन जादू से हमला करने के लिए किया गया था जो अंतिम बॉस और शाही सेना बन गया। और इसी रुलू स्टो पर वे हमारे लिए यह प्रोसेसिंग कर सकते हैं। कीमती जादुई पत्थरों के इस्तेमाल के अलावा इसमें काफी पैसा भी खर्च होता है। बेशक इसका इस्तेमाल बिल चुकाने वाले भी करते हैं। 10 बड़े बर्फ के पत्थर। माफ करना, मेरे पास सिर्फ एक बड़ा बर्फ का पत्थर ही है। ब्लिज़र्ड फीनिक्स श्रेणी का जादुई पत्थर पाना इतना आसान नहीं है, आप जानते ही हैं। मैंने अपने जादुई बैग से 9 ब्लिज़र्ड फीनिक्स जादुई पत्थर निकाले और उन्हें काउंटर पर रख दिया। क्या आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं? मुझे इसकी जल्द से जल्द जरूरत है। यह शायद पहली बार था जब मैंने इस बूढ़ी महिला का आश्चर्यचकित चेहरा देखा जिसका रंग आमतौर पर नहीं बदलता। मैं ये ठीक है, जैसी एलन वॉन रामस्लेट सामा से उम्मीद थी। मैंने नहीं सोचा था कि वह छोटा लड़का इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। मैं इसे 2 हफ्तों में तैयार कर दूंगा, 3.6 मिलियन रैम्स, क्या ये ठीक है? ओ धन्यवाद, रैम्स, रैम्सलेट साम्राज्य की मुद्रा की इकाई है। बेशक, इसका नाम रैम्सलेट के रैम्स से आया है। फिलहाल इनका विनिमय 1 सेंट = 1 रैम्स की दर से होता है, लेकिन भविष्य में क्या होगा कौन जाने। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सेंट्रेलियन किंगडम की मुद्रा, जो निश्चित रूप से अपना क्षेत्र और शक्ति खो देगी, अपना वर्तमान मूल्य बरकरार रखेगी। वैसे मैंने पहले ही अपनी लगभग सभी सेंट परिसंपत्तियों को रैम्स परिसंपत्तियों में परिवर्तित कर लिया है। मैंने एक साहसी के रूप में अपनी संबद्धता को भी विशेष में पुनः लिख दिया है, इसलिए मुझे इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास पर्याप्त संपत्ति नहीं है। और इसलिए मैंने रुलू स्टोर छोड़ दिया। अगले दिन मैं अन्ना के साथ उड़ते ड्रैगन की घाटी की ओर चल पड़ा और हवाओं के मंदिर में पहुंचा। ए एलन सान, नमस्ते। आह, आपका महत्वपूर्ण व्यक्ति भी अच्छा कर रहा है। जैसे ही मैंने ब्यूटर रेव को मंदिर के सामने बर्फीले मैदान पर उतारा, जेरोम कुन बाहर कूद पड़ा। बहुत दिनों बाद मिले। होह, मेलिसा चान कहाँ है? आह ओम, तुम्हें पता है, अंदर। तो फिर चलो अंदर चलें। आओ अन्ना। ओ, इस प्रकार हम जेरोम के पीछे मंदिर में चले गए। और जब हम मंदिर में दाखिल हुए तो मंदिर के अंदर का वातावरण अप्रत्याशित रूप से गर्म था, जबकि बाहर का वातावरण ठंडा था। ओह, स्वागत है एलन सान, और आपकी महत्वपूर्ण महिला ठीक है ना? ये बहुत अच्छी बात है। मेलिसा चांद ने मंदिर में बहुत सारी घास बिछा दी, उस पर लेट गई और केवल अपना सिर हमारी ओर कर लिया।
हाँ, आप दोनों का धन्यवाद। अन्ना ठीक हो गए हैं, इसलिए हम आपकी दयालुता के लिए आभार व्यक्त करने और रिपोर्ट करने आए हैं।
मैं समझता हूँ, यह आपकी बहुत दयालुता है।
मैं भी मेलिसा चांद और जेरोम कुन की मदद से ही मैं अन्ना को बचा पाया।
बहुत बहुत धन्यवाद।
कोई बात नहीं, आपने हमारे लिए जो किया हम उसे कभी नहीं भूलेंगे।
हम तो बस आपका एहसान चुका रहे थे।
हाँ, ये सही है एलनसान।
यह आपके लिए धन्यवाद है एलनसान।
फिर भी मुझे खुशी है,
और वह मेरी मंगेतर अनास्तासिया है।
हम अगले पतझड़ में शादी कर रहे हैं।
मैं अन्ना का परिचय इस तरह कराता हूँ और उसे आगे लाता हूँ।
फिर अन्ना ने दृढ़ता से स्त्रीवत प्रणाम किया।
मेरा नाम अनास्तासिया क्लिनेल वॉन रामस्लेट है। मैं एलन की मंगेतर हूँ।
पिछली बार जब हम मिले थे तो मैं आपका ठीक से अभिवादन नहीं कर पाई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ।
मेलिसा सामा, जेरोम सामा, मैंने सुना है कि आप दोनों ने मुझे साम्राज्य से बचाने में मदद की थी और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ।
मुझे अफसोस है कि आपको धन्यवाद देने में मुझे इतना समय लग गया, जबकि
ये लंबा है, तुम्हें पता है।
क्या अन्ना चांद को इससे कोई दिक्कत नहीं है?
अगर एलन सांग की प्यारी औरत बच गई तो बस यही मायने रखता है।
हमने ज्यादा कुछ नहीं किया।
मेलिसा सान, लेकिन हाँ, जब आप शाही राजधानी को नष्ट करने जा रहे हों तो आपको हमें बताना चाहिए, है ना?
मैं आपको चुपके से निकलकर उसे नष्ट करने की इजाजत नहीं दूंगा, ठीक है?
जेरोम कुन भी उत्साह से अपना सिर हिलाता है।
मेलिसा चांद, वैसे भी मेरे पास अभी ऐसी कोई योजना नहीं है,
क्योंकि मैंने दोनों मास्टरमाइंडों को मार डाला है।
खैर, इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने उन्हें माफ कर दिया है।
क्या ऐसा है?
खैर, मैं अभी नहीं जा सकता।
हम एलन सान और अन्ना से पहले माँ और पिता बनने जा रहे हैं।
मेलिसा चांद ने ये कहा और अपना मुड़ा हुआ शरीर हिलाया।
तभी एक बड़ा सफेद अंडा दिखाई दिया।
तो बस इतना ही? क्या मेलिसा चांद इस अंडे को काफी देर तक गर्म रख रही थी?
बधाई हो मेलिसा चांद, जेरोम कुन।
बधाई हो फुफू।
शुक्रिया।
और अन्ना, तुम्हें उस अजीब तरीके से बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है?
तुम सामान्य तरीके से क्यों नहीं बोलती?
और तुम हमें अपनी मर्जी से बुला सकती हो, मुझे और जेरी दोनों को।
क्या ये ठीक नहीं है?
मेलिसा चांद भी यही कहती है।
ओह, ये सही है।
तो मेलिसा, जेरोम, आपसे मिलकर अच्छा लगा।
फुफू, आपसे मिलकर अच्छा लगा।
ये कहकर मेलिसा अपने अंडे गर्म करने वाले स्थान पर वापस आ गई।
अरे, क्या मैं तुम दोनों को अपना आशीर्वाद दे सकता हूँ?
खैर, बहुत सी चीजें हुई और मुझे ये स्वीकार करने में शर्म आती है, लेकिन मैं एक आइस सेंट बन गया हूँ।
आशीर्वाद बर्फ संत की क्षमताओं में से एक है।
हालांकि यह उस विकृत व्यक्ति के आशीर्वाद जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन इसे सौभाग्यशाली कहा जाता है, क्योंकि यह स्वस्थ विकास को बढ़ावा देता है और गंभीर बीमारियों से थोड़ा बचाता है, जो किसी को जीवन या मृत्यु के कगार पर ला सकती हैं।
ऐसा लगता है कि अन्ना इस क्षेत्र को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, इसलिए मैं एक एक करके इसकी जांच करूंगा।
ओह, क्या ऐसा है?
आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा है तो क्या मैं इसे अपने अजन्मे बच्चे के लिए ले सकती हूँ?
हमें पवन देवता का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए हमारे लिए यही काफी है।
अगर हम ज्यादा मांगेंगे तो हमें सजा भुगतनी पड़ेगी।
मेलिसा ने अन्ना के प्रस्ताव का हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया।
हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं इसे अपने बच्चे को देना चाहूंगा।
लेकिन ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम बच्चे के जन्म के बाद वापस आएंगे, ठीक है?
ओ, जब मैंने ये कहा तो अन्ना अनिच्छा से ही सही पीछे हट गए।
और हाँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आपके लिए ढेर सारा बीफ भी लाया हूँ।
और मुझे यकीन है कि आप इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे होंगे, है ना?
मैं ऐसा कहता हूँ और उन्हें वह गोमांस परोसता हूँ जिसे मैंने अपने जादुई थैले में बड़ी मात्रा में पैक किया है।
धन्यवाद एलन सान, सर्वश्रेष्ठ हैं।
जब मैंने मेलिसा को ये बताया तो वह बहुत खुश हुई और उसने गोमांस को ऐसे खाना शुरू कर दिया जैसे कि उसे खा रही हो।
ओह जेरी, तुम्हें नहीं चाहिए।
अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं सब खा जाऊंगा, ठीक है?
ओह क्या ये ठीक है?
एलन सान, ये हम दोनों के लिए लाए हैं, तुम्हें पता है।
तुम ऐसा कैसे नहीं कर सकते?
आई तादा किमासु।
जेरोम कुन को जब ये बताया गया तो उसने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई और मेलिसा चांद के साथ मांस खाना शुरू कर दिया।
वैसे मैं उस बिगड़ियल औरत को धन्यवाद देने गया और बाद में उसे दिव्य मार्गदर्शन के कर्मचारियों की देखभाल करने के लिए कहा, लेकिन उसने बिल्ली जैसे अंदाज में कहा, मैं समझ गया।
तो फिर मैं तुम्हारे बच्चे के जन्म का इंतजार कर रही हूँ।
लेकिन अन्ना ने जब ये सुना तो वह बहुत लाल हो गई और बहुत प्यारी लग रही थी।
पक्ष एमी 12।
मैंने नहीं सोचा था कि दान के संत की शक्ति इतनी प्रबल होगी।
राजा, मंत्री और शूरवीर सभी मुझसे सहमत हैं। स्पष्ट शब्दों में कहें तो अब ये सब दिमाग धोने जैसा लगता है। ये बहुत ही सुगम यात्रा रही है, विशेषकर तब से जब प्रधानमंत्री ने हार मान ली है। ऐसा लगता है कि दान के संत की शक्ति केवल उन लोगों पर काम करती है जो मुझसे प्रेम करते हैं। लेकिन जानते हो क्या, अगर वे मुझे थोड़ा भी पसंद करते हैं तो यह जरूर काम करेगा, और अगर मैं उन्हें बताता रहूंगा तो वे जरूर मेरी बात सुनेंगे और मेरे कहने पर बदल जाएंगे। प्रधानमंत्री को धन्यवाद जिन्होंने इसे समझ लिया। अब महल में रहने वाले सभी लोग मेरे हैं। मैंने उन्हें कई बार समझाया कि मैं दान का संत हूँ, उन्हें मुझ पर बिना शर्त विश्वास करना चाहिए और अपना सब कुछ मुझे अर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने मुझ पर विश्वास करना शुरू कर दिया। और फिर आम जनता के लिए प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने बस अपनी लिखी एक पांडुलिपि पढ़ी और जानबूझकर घायल सैनिकों के उपचार का नाटक किया और फिर दान पुण्य का काम वगैरह भी किया। खैर, एक अच्छे इंसान जैसा कुछ करने और उन्हें अपने बारे में बताने के बाद उन्हें तुरंत विश्वास हो गया कि मैं दान का संत हूँ। मुझे कालसामा और अन्य लोगों से प्यार है, इसलिए मेरा उनकी रानी बनने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अब यह व्यावहारिक रूप से मेरे अपने देश जैसा है। लेकिन मैंने सुना है कि ऑस्कर को रिहा कर दिया गया है और उसके पिता, जो दूसरे राजकुमार गुट के पक्ष में चले गए हैं, उसे पकड़कर कहीं ले गए हैं। मैं काफी समय से क्लाउड से संपर्क भी नहीं कर पाया हूँ। और क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि उन दोनों को पत्र लिखने के बाद भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला? मुझे लगा कि मैंने उन्हें सही ढंग से कैद कर लिया है। खैर, मुझे यकीन है कि हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, है ना एमी? जब मैं अकेले खिड़की से बाहर देख रहा था, कालसामा अपना काम खत्म करके अंदर आया। कालसामा, मैं कालसामा के पास दौड़ी और उसने मुझे प्यार से गले लगा लिया। फिर हमने जोश से चूमा। एमी, मुझे तुम्हारी याद आई। मैं भी, साफ सुथरे चेहरे वाले कालसामा को देखना हमेशा अच्छा लगता है। एमी, ओह, मार्कस, मार्कस भी मेरे पास आया। फिर कालसामा ने मुझे जाने दिया और मार्कस के पास छोड़ दिया। एमी, मुझे तुम्हारी याद आई। मैं भी, फिर मार्कस ने भी मुझे कसकर गले लगाया और कालसामा की तरह मुझे जोश से चूमा। फुफु, मुझे खुशी है कि तुम दोनों यहाँ हो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एमी है। एमी की खुशी मेरी खुशी है। मैं भी, मैं एमी के लिए कुछ भी करूँगा। शुक्रिया, कालसामा, मार्कस, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए सिर्फ मुझसे प्यार करो। हाँ बेशक, मैं कभी किसी दूसरी औरत की तरफ नहीं देखूंगा। क्या सच में ऐसा है? मैं रोज उनसे सिर्फ मुझसे प्यार करने के लिए कहती रही, तो जल्द ही उनकी यही हालत हो गई। अब उन्हें मेरे अलावा किसी और औरत को देखकर कुछ भी महसूस नहीं होता। ये बिल्कुल सही है, अब महल में कहीं भी कोई इस तरह की शिकायत नहीं करेगा, बल्कि वे तुम्हें प्यार से देखेंगे। हाल ही में मैं उनके साथ बिस्तर पर रहा हूँ और यह संतुष्टिदायक है। ये सही है एमी, मुझे अभी चर्च से खबर मिली है कि वे आपको दान के संत के रूप में मान्यता दे रहे हैं। खैर, अंततः मैं कालसामा की बात सुनकर इतना खुश हुआ कि मैंने ऊंची आवाज में कहा, हाँ, मैं लगातार उन्हें मना रहा था। वास्तव में हाँ, मैंने लगातार चर्च के पुजारियों और बहनों से मुलाकात की और धीरे धीरे उन्हें राजी किया। विशेषकर अनाथालय के लिए सहायता प्रभावी थी। मैं एक अनाथालय गया और वहां बच्चों को सिखाया कि मैं एक संत हूँ। बच्चों को तुरंत यकीन हो गया कि मैं दान का संत हूँ, जानते हो। चमकती आंखों से वे कहते, संत सामा आ गए हैं। खैर, मैं वास्तव में उन गंदे अनाथों के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन जब मैंने इसे सहन कर लिया तो वहां की बहनों और पुजारियों ने मेरी बात सुननी शुरू कर दी। धीरे धीरे मेरे पास अच्छी अफवाहें फैलने लगीं और जब तक मुझे इसका एहसास हुआ तब तक चुड़ैलों के बारे में कोई बात नहीं रह गई थी। और आज अंततः मुझे चर्च द्वारा ईश्वर द्वारा चुने गए दानशील संत के रूप में मान्यता दी गई। अब मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं बचा। फुफुफु, अब हमें बस उन इंपीरियल से निपटना है। पक्ष एमी तेरा, वो शाही सैनिक कितने जिद्दी हैं, है ना? मैं यहाँ के सैनिकों का उत्साहवर्धन कर रहा हूँ तो माना जाता है कि वो मौत को मात देने वाले और काफी मजबूत सैनिक हैं, फिर भी क्यों? क्या यह अजीब बात नहीं है, जबकि कालसामा और मार्कस भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। ओह, शायद उस बेवकूफ का इसमें हाथ है। यदि ऐसा है तो वह व्यक्ति बहुत ही निर्दयी व्यक्ति है। आप मुझसे कितनी नफरत करते हैं कि मैं उस देश के साथ सहयोग कर रहा हूँ जिसने आपकी प्रिय खलनायक का अपहरण किया है। लेकिन ये बहुत बुरा है। मैं दान की संत और इस दुनिया की नायिका एक सुखद अंत के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ, क्योंकि आप जानते हैं, है ना, यह मेरी पसंदीदा ओटोम गेम की दुनिया है। यह अजीब बात होगी यदि मेरी जिंदगी का अंत सुखद न हो, भले ही मैंने अपने चुनाव में कोई गलती न की हो। जब मैंने ऐसा सोचा तो मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। कालसामा, क्या हुआ? ओह एमी, जाहिर है भूमिगत सीवरों को इंपीरियल गार्ड ने निशाना बनाया है। ऐसा लगता है कि कोई इंपीरियल गार्ड को वहां से ले जा रहा है और वे शहर पर हमला कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? मैं, दान का संत, यकीन नहीं कर सकता कि इस शहर में जहां मैं हूं एक गद्दार भी है। हम क्या करने जा रहे हैं? हमें उन्हें एक एक करके नीचे गिराना होगा।
कोई बात नहीं एमी, हम तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे।
कालसामा ऐसा कहते हैं, लेकिन आखिरकार ऐसा लगता है कि वह अधीर हैं।
आखिर यह है क्या? क्या ये वह घटना हो सकती है जहां खेल की तरह शाही शहर एक बार नष्ट हो जाता है?
यदि ऐसा है तो यह अच्छी बात नहीं है। भले ही मैं इतनी दूर आ गया हूं, लेकिन मैं उन्हें इस तरह से हमारे पास आने नहीं दे सकता।
रुको, मैं सोचो, मैं जब मैंने एक क्षण के लिए इसके बारे में सोचा तो मेरा सिर दुखने लगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक अच्छा विचार आया।
कालसामा, मेरे पास एक विचार है, यह विश्वसनीय है।
क्या ये किसी संत की भविष्यवाणी है?
कालसामा मेरी ओर दयालुता से देखता है।
हाँ, दुश्मन सीव में है ना?
ये सही है। फिर हम सीव में जहरीली गैस डाल सकते हैं,
फिर सभी दुष्ट दुश्मन सैनिक मारे जाएंगे।
जब मैंने ऐसा कहा तो कालसामा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं।
फुफू, जैसी कि मुझसे उम्मीद थी। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो आसपास के और नीचे की ओर रहने वाले निवासियों को नुकसान होगा।
क्या ये बेकार है?
लेकिन अगर शाही राजधानी को शाही सैनिकों द्वारा नष्ट कर दिया गया तो सभी लोग मारे जाएंगे, है ना?
और यदि भूमिगत सीवरों में शाही सैनिक हैं, जिनका उपयोग हम खेल में भागने के लिए करते थे, तो हमारे लिए भागने का कोई रास्ता नहीं है, है ना?
मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम वेस्टडेल राज्य जा सकेंगे या नहीं, क्योंकि क्लाउड तो यहाँ है ही नहीं।
ऐसी स्थिति में हमारे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
हाँ, वैसे भी जहर से होने वाले नुकसान के कारण आम लोग ही मरेंगे, है ना?
तो फिर वे वही लोग थे जिन्हें मूलतः शाही सैनिकों द्वारा मार दिया जाना था, है ना?
हो, क्या बात है, फिर तो कोई बात ही नहीं।
कालसामा, तुम्हें ये करना चाहिए।
मैं दान का संत पीड़ितों के लिए प्रार्थना करूंगा, इसलिए यदि तुम ऐसा नहीं करते तो शाही राजधानी के सभी लोग मारे जाएंगे।
मैंने आंखों में आंसू भरकर विनती की और कालसामा ने अपना सिर हिलाया।
हाँ, ये ठीक है फूफू, अब हम जीत गए हैं। इससे वह घटना समाप्त हो जाएगी जिसमें शाही राजधानी पर हमला किया गया है, और हम बाद में जाकर छिपाव का स्क्रॉल प्राप्त कर सकते हैं।
तारांकन 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 तारांकन, आहा, ये बिल्कुल सही काम किया। मैंने सुना है कि सीवर इनलेट और आउटलेट के आसपास रहने वाले कुछ निवासियों की मृत्यु हुई है, लेकिन कोई गंभीर बात नहीं है।
इसके अलावा हम बिना किसी घटना के शाही सैनिकों को हराने में सक्षम थे, और वे जल्द ही पीड़ितों के लिए एक स्मारक सेवा आयोजित करने जा रहे हैं, इसलिए मुझे बस उनके लिए प्रार्थना करनी है।
अब हमें बस छिपाव का स्क्रॉल इकट्ठा करना है, लेकिन इसका इस्तेमाल कौन करे?
इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम स्कूल में सीवा प्रणाली के प्रवेश द्वार पर पहुंचे।
फिर उन्होंने दरवाजा खोला और मैं उस छोटे से कमरे में चला गया जिसे मैंने खेल में देखा था।
फिर यहाँ डेस्क पर, वहां नहीं,
क्यों?
आह, वह आदमी।
एमी, क्या हुआ?
यदि आपको किसी भी चीज में मदद की जरूरत हो तो कृपया हमें बताएं।
कालसामा और मार्कस दोनों ने मुझे चिंता के साथ यह बात बताई।
लेकिन तुम्हें पता है, अब मुझे सब समझ आ गया है।
अरे बेवकूफ, तुमने मेरा छिपाव का स्क्रॉल चुरा लिया।
टीएन, हाँ, क्योंकि आप अभी भी कहानी का अनुसरण करने के लिए मूर्ख हैं।
यही कारण है कि वह द्वंद्व युद्ध में ऐसा करने में सक्षम था और साम्राज्य को बेची गई खलनायक को वापस ले गया।
तो फिर इसका मतलब,
मैं कालसामा, मार्कस, मेरी एक विनती है, मेरी बात सुनो।
वर्ष समाप्त होने को है और ठंड का मौसम अपने चरम पर है।
जाहिर है, लुर्देन को घेरने वाली ईस्ट इंपीरियल सेनाएं पराजित हो गईं।
ऐसा लगता है कि लुर्देन में घुसपैठ करने वाले सभी जासूस पहले ही वापस जा चुके थे, इसलिए हमें विवरण नहीं पता है, और हमारा निर्णय पड़ोसी क्षेत्रों में जासूसों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित है।
और इस निर्णय को वापस लेने में निर्णायक कारक ये था कि चर्च भी एमी के साथ उलझ गया।
बहुत से लोग ज्यादा धार्मिक नहीं हैं, लेकिन मूलतः यहाँ के आसपास के सभी देशों के लोग चर्च के सदस्य हैं।
अगर वह चर्च का विश्वास जीत लेती है तो बहुत से लोग मानेंगे कि एमी एक संत है, भले ही वह वास्तव में एक डायन ही क्यों ना हो।
अगर हमारे जासूस चर्च के जरिए फंस जाते तो नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचता,
इसलिए हमने ऐसा होने से पहले ही पीछे हटने का फैसला किया।
इस स्थिति के जवाब में हमने ड्यूक श्लेस्टीन से संपर्क किया और शाही राजधानी को पुनः अपने नियंत्रण में लेने तथा उसे क्रियान्वित करने की योजना पर निर्णय लिया।
सबसे पहले ड्यूक श्लेस्टीन की सेना के नेतृत्व में द्वितीय राजकुमार के गुट ने अपनी सेना को लुर्देन की ओर आगे बढ़ाया, जिसमें द्वितीय राजकुमार सेनापति थे।
जवाब में हमारे रामस्लेट साम्राज्य ने क्राउन प्रिंस की सेना को रोकने के लिए सेंट्रारिन की दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी सीमाओं पर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करके खाद्य सहायता और अप्रत्यक्ष समर्थन प्रदान किया। परिणाम स्वरूप द्वितीय राजकुमार के गुट की सेनाएं आसानी से लुर्देन को घेरने में सफल हो गईं।
ईस्ट साम्राज्य के साथ युद्ध में थककर लुर्देन में बचे सैनिक कम से कम पूर्ण तो नहीं होंगे।
हालांकि ये पूरी तरह से अज्ञात है कि शाही राजधानी के सैनिक, जो अब कट्टरपंथियों में बदल चुके हैं, कितना प्रतिरोध करेंगे।
हमने अपनी तैयारियां पूरी कर ली और तय कार्यक्रम के अनुसार उस स्थान पर चले गए जहां द्वितीय राजकुमार और ड्यूक श्लेस्टीन हैं। इस बार मैं शिविर के मध्य में उतरा जहां ड्यूक श्लेस्टीन और द्वितीय राजकुमार थे, ब्यूटरेव पर नहीं बल्कि जेरोम कुन की पीठ पर। वैसे मैंने जेरोम कुन को आने के लिए नहीं कहा था, मैं तब से ही नियमित रूप से मांस बांटता आ रहा था, इसलिए मेलिसा चांद ने उसे मेरे साथ चलने का आदेश दिया। बेशक मैंने उसे बदले में उपहार के रूप में 5 ओर्क मांस दिए थे, इसलिए मेलिसा चांद की भोजन की स्थिति कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वाह, आप लोग अपना क्रम मत तोड़िए, ये पूर्व सूचना के अनुसार है। ड्यूक श्लेस्टीन द्वितीय राजकुमार के गुट के सैनिकों को शांत करता है जो जेरोम कुन को देखकर घबरा गए थे। बहुत समय हो गया महामहिम ड्यूक, मैं अन्ना को गोद में लेकर जेरोम कुन से नीचे उतरा, फिर उसे नीचे उतारा और उसका अभिवादन किया। आज अन्ना ने सफेद पोशाक पहन रखी है जो घूमने में आसान है, फिर भी कुछ हद तक पवित्र पोशाक है। एक उदाहरण के रूप में कहें तो यह ऐसा है जैसे एक संत हाथ में तलवार लेकर एक साहसी बन गया हो। इससे निस्संदेह ये संदेश मिलता है कि हमारे पक्ष में न्याय है और दूसरी ओर एक डायन है। काफी समय हो गया है ड्यूक श्लेस्टीन, महामहिम प्रिंस लुडविग। नहीं नहीं भाभी, महाराज आप असभ्य हो रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि महारानी राजकुमारी अनास्तासिया स्वयं आएंगी। द्वितीय राजकुमार अनास्तासिया को स्तब्ध भाव से देखता है जबकि ड्यूक श्लेस्टीन ऐसा कहने के बाद घुटनों के बल बैठ जाता है, लेकिन अन्ना अपनी नाराजगी स्पष्ट कर देती है। महाराज लुडविग, मैं आपकी भाभी या ऐसा कुछ नहीं हूँ, नहीं मैं बनने की योजना बना रही हूँ। एक मंगेतर वाली महिला से ऐसी बात कहने पर आपको शर्म आनी चाहिए, या आप मेरा अपमान कर रहे हैं। लेकिन महाराज, तुरंत माफी मांगिए, ये रामस्लेट राज्य की प्रथम राजकुमारी हैं जिनकी सगाई नायक एलेंडोनो से हुई है, क्या आप राजधानी वापस पाने का मौका गंवाना चाहते हैं? द्वितीय राजकुमार अन्ना के स्पष्टतः असहज स्वर से आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन ड्यूक श्लेस्टीन द्वारा कठोर स्वर में कहे जाने पर वह तुरंत माफी मांग लेता है। मुझे माफ करना महारानी अनास्तासिया, मैं अपनी पुरानी आदतों के लिए माफी मांगता हूँ, और हीरो एलेंडोनो से आपकी सगाई के लिए बधाई। नहीं कोई बात नहीं, मैं माफी स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं एलन की मंगेतर हूँ, यह मत भूलना। बिल्कुल क्षमा करें, अन्ना ने आखिरी पंक्ति ड्यूक श्लेस्टीन की ओर देखते हुए कही, दूसरे राजकुमार की ओर नहीं। वह शायद उन्हें किसी और बात पर ध्यान न देने के लिए मना रही थी, लेकिन दूसरे राजकुमार जो ये सब समझ नहीं पाते सीधे सीधे माफी मांग लेते हैं। जाहिर है भले ही उत्तराधिकारी ये दूसरा राजकुमार निकला, देश के पास कठिन रास्ते पर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो एमी डायन का ब्रेन वॉश करने का तरीका क्या है? हम पूरे लर्डन पर इस जादू को सक्रिय करने के लिए पहले से ही तैयार हैं। हालांकि ये जादू केवल उन विरोधियों को ही प्रभावित कर सकता है जो बाहर हैं। इमारत के अंदर विरोधियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हमें अधिक से अधिक पुरुषों को चित्रित करना होगा, है ना? यही मेरा मतलब है, अगर आप सही समय पर सिग्नल उठाएंगे तो हम यहाँ जादू चालू कर देंगे। हालांकि कृपया ध्यान दें कि इस जादू का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। अगर आप समय की चूक करते हैं तो आपका निशाना बेकार जाएगा और हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। ये जनरल के फैसले पर निर्भर है, इसलिए कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। मैं ऐसा कहता हूं और दूसरे राजकुमार की ओर देखता हूं। मैं समझ गया हीरो एलेंडोनो, आइए स्थिति का सावधानीपूर्वक आकलन करें और सही समय पर संकेत भेजें। सादर प्रणाम, न तो महामहिम और न ही महारानी कोई खून बहाना चाहते हैं, हम आपसे बस यही चाहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उनका अच्छा ख्याल रखें। ओह, इसे मुझ पर छोड़ दो, ड्यूक श्लेस्टीन दूसरे राजकुमार की ओर से जवाब देते हैं, जो यह नहीं समझ पाते कि उन्हें इतना सावधान क्यों रहना है। बेशक यह एक घोषणा है कि अगर वहां चीजें गलत होती हैं तो हम हस्तक्षेप करेंगे। पहली बात तो ये कि यह जादू सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाला जादू नहीं है। इसके अलावा एमी को रोकने के लिए जरूरत पड़ने पर हम महल पर धावा बोलने को तैयार हैं, और सबसे बुरी स्थिति में हम जबरदस्ती अंदर घुसकर एमी का सिर काट देंगे। हालांकि हम यहां अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हैं, इसलिए हमें अपनी संभवतः सर्वोत्तम कीमत पर अपनी चीजें बेचने की आवश्यकता है। बस इतना ही, फिर हम तैयारियों पर आगे बढ़ेंगे। उसका उत्तर सुनने के बाद हम एक बार फिर जेरोम कुन की पीठ पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र के सामने स्थित एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर चले गए। जैसा कि हम एक छोटी पहाड़ी की चोटी से देख रहे थे, उन्होंने लर्डेन की उत्तरी दीवार पर गुलेल से हमला किया। मुझे यह नहीं बताया गया था कि वे ऐसा कैसे करेंगे, लेकिन मैंने कभी भी अचानक से इतने जबरदस्त दबाव की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि ये स्पष्ट है कि द्वितीय राजकुमार का गुट, या कहें ड्यूक श्लेस्टीन, स्पष्ट रूप से लर्डन को बरकरार वापस लेने का कोई इरादा नहीं रखता है, बल्कि वह केवल उसे गिराना चाहता है। अब उस गुलेल के हमले के खिलाफ लर्डन गैरिसन के सैनिकों ने आक्रमण किया। शायद ये वो सैनिक हैं जो एमी के ब्रेनवॉश की वजह से पागल हो गए हैं। सामान्य बुद्धि यही कहती है कि ऐसी स्थिति में सैनिकों को गुलेल, अग्निबाण, बैलिस्टा आदि का इस्तेमाल करके गुलेल को नष्ट कर देना चाहिए, या फिर सैनिकों को जंगल में छिपाकर चुपके से उन पर हमला कर देना चाहिए। वह भयानक है। ऐसी स्थिति देखकर अन्ना की भौहें तन जाती हैं। मुझे लगता है कि एमी के आदेशों को सुनना पहली प्राथमिकता बन गई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक सैनिक भी ऐसे ही लोगों में से एक है। उनका इस्तेमाल करना और उन्हें ऐसे ही फेंक देना, ये तथ्य कि वह इन चीजों को बिना किसी दंड के आदेश दे सकती है, उसे चुड़ैल बनाता है। हालांकि जब अन्ना ने यह बात बुदबुदाई तो उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति उभरी। वह अपने लोगों के बारे में सोच रही थी, जिनमें वे सैनिक भी शामिल थे जिन्हें वहां व्यर्थ मरने के लिए भेजा जा रहा था, इसलिए शायद दोनों को अलग करना इतना आसान नहीं है। युद्धभूमि की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मैं सैकड़ों सैनिकों को ढालें लिए पंक्तिबद्ध होकर आक्रमण करते देखता हूँ। द्वितीय राजकुमार का दल भी धनुष बाणों से आक्रमण कर रहा है, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना उन पर आक्रमण करते देखना कम से कम इतना तो भयावह होगा ही। दूसरे राजकुमार का गुट धीरे धीरे सेंट्रेरेन के उत्साही सैनिकों से पराजित हो रहा है, जो अपने मित्रों की लाशों को भी ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और आखिरकार वे एक गुलेल पर हमला करके उसे नष्ट करने में कामयाब हो गए। जिस आदमी ने गुलेल को नष्ट करने में कामयाबी हासिल की, उसने अपनी मुट्ठी आसमान में ऊंची उठाई और ऊंची आवाज में चिल्लाया, संत अमर रहें। आवाज यहां तक पहुंची जो काफी दूर होनी चाहिए थी। देखा जा सकता है कि आवाज से दूसरे राजकुमार की सेना पर और दबाव पड़ रहा था और अशांति फैल रही थी, और दूसरे राजकुमार के गुट की सेना, जो बीच में आने में धीमी थी, को पकड़ लिया गया और उनकी एक और गुलेल नष्ट कर दी गई। जब सभी गुलेलें खामोश हो गईं, तो द्वार खुल गया और बड़ी संख्या में घुड़सवार अंदर घुस आए। हमला शायद भयभीत लोगों पर लक्षित था। दूसरे राजकुमार के गुट के तीरंदाज और जादूगर उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे उनकी गति को धीमा करने में असमर्थ रहते हैं। पैदल सेना की टुकड़ियां घुड़सवार सेना को रोकने के लिए तुरंत आगे बढ़ी और एक सघन दल बनाकर घुड़सवार सेना को रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई की। हालांकि वे उन्हें रोक नहीं पाए, क्योंकि वे भारी हथियारों से लैस पैदल सेना नहीं थे। दुश्मन की घुड़सवार सेना ने पैदल सेना को आसानी से तोड़ दिया और अग्रिम पंक्ति को पहले ही तहस नहस कर दिया। ये बुरी बात है, और जब सेंट्रेरेन पक्ष ये देखता है तो वे और सैनिक भेजते हैं। वे मुख्यतः पैदल सेना के प्रतीत होते हैं। तभी मुख्य शिविर से धुएं का संकेत उठा। जाहिर है अब समय आ गया था। ओह, ये तो मेरी सोच से भी जल्दी हो गया। ये जनरल का निर्णय है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। एलन, चलो ये करते हैं। फिर अन्ना ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। मेरे पास करने को कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने धीरे से अन्ना की पीठ पर हाथ रखा ताकि उसे पता चल सके कि मैं उसके साथ हूँ। अधिकतम पवित्र हिम जागृति, अन्ना ने मंत्र पढ़ा और जमीन में गड़े बर्फ के पत्थरों में जादुई शक्ति भेजनी शुरू कर दी। फिर केंद्र में शाही राजधानी के साथ एक वृत्त में व्यवस्थित सभी बर्फ के पत्थर एक साथ जादुई शक्ति से चमकने लगे। अगले ही क्षण शाही राजधानी के आसपास का क्षेत्र बर्फीले तूफान में घिर गया। जल्द ही बर्फीला तूफान थम गया और वे वहां थे, सैनिक जिनके सिर बर्फ से ढके हुए थे, मानो वे हिममानव हों। सैनिकों के सिर पर बंधी बर्फ अगले ही पल पिघल जाती है और वे सभी होश में आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि वे चारों ओर देख रहे हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वे यहाँ क्यों हैं। और फिर उन्होंने जल्द ही आत्मसमर्पण कर दिया और दूसरे राजकुमार के गुट के कैदी बन गए। दूसरे राजकुमार के गुट की सेना ने यह देखा और किले के द्वार की ओर दौड़ पड़ी। द्वार पर पहरा दे रहे सभी सैनिक जो बाहर खड़े थे होश में आ गए होंगे। हालांकि इमारत के अंदर पहरा दे रहे सैनिक स्वाभाविक रूप से अप्रभावित थे और एमी के कट्टरपंथियों द्वारा द्वार अभी भी कसकर बंद कर दिए गए थे। दूसरे राजकुमार के गुट की सेना ने एक तंबू लेकर किले के द्वार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पहरेदारों ने बेकार सैनिकों को नीचे गिरा दिया और फिर दूसरे कट्टरपंथी दीवार पर खड़े होकर दूसरे राजकुमार की सेना पर हमला करने लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे राजकुमार के गुट की सेना कमजोर हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सैनिकों का कौशल भी बुरा नहीं है। हालांकि जो व्यक्ति निर्देश दे रहा है वह बहुत ही घटिया है। मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में लंबी लड़ाई के लिए निशाना साधना मुश्किल है, लेकिन बड़ी मछली पकड़ने के लिए चारा शायद बहुत छोटा था। इस बीच किले के द्वार पर तैनात सैनिकों को पीछे हटा दिया गया। ये देखकर दूसरे रियासती गुट के सैनिक मुख्य शिविर की ओर पीछे हटने लगे। धिक्कार है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। हमारे पास बाहर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये सही है, एलन, जेरोम, चलो चलें। इसे मुझ पर छोड़ दो। फिर हम जेरोम कुन पर सवार होकर शाही महल की ओर रवाना हुए। लूर्डेन शहर में उस समय हड़कंप मच गया जब जेरोम कुन अचानक कहीं से प्रकट हुआ। जेरोम कुन जानबूझकर दहाड़ते हुए आसमान में नीचे उड़ रहा था, जिससे सैनिक और शहरवासी ऐसे भाग खड़े हुए मानो दुनिया का अंत हो गया हो। वैसे इस ड्रैगन की दहाड़ ड्रैगन प्रजाति की एक अनोखी क्षमता है, जिसके संपर्क में आने पर कमजोर लोग भय से ग्रस्त हो जाते हैं और गतिहीन या धीमे हो जाते हैं। अधिकांश मामलों में इस दहाड़ के विरुद्ध आगे बढ़ना कठिन होता है, जब तक कि आप कम से कम 25वें स्तर के न हो या आपका दिल बहुत मजबूत न हो। हालांकि कुछ सैनिकों ने गर्जना से घायल होने के बाद भी हमला किया, लेकिन उनके हमले जेरोम के कठोर शल्कों के कारण विफल हो गए और उन्हें खरोंच तक नहीं आई। अन्ना पवित्र बर्फ जागृति के साथ जेरोम कुंड से ऊपर ऐसे सैनिकों के ब्रेनवॉश को जारी करता है, और अंततः हमें महल के सामने जबरन उतरना पड़ा। हमें रोकने के लिए आए अधिकांश सैनिक पहले ही जेरोम कुंड की दहाड़ में मारे जा चुके थे। अरे यहाँ मुझे तो बस सबको बाहर करना है ना? हाँ कृपया। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि तुम कीचड़ वाली नाव में हो, ठीक है? ओह ये सही है। अन्ना और मैं जमीन पर उतरे और गेट की तरफ भागने ही वाले थे कि एक परिचित व्यक्ति ने मुझे आवाज दी। उफ एलन बॉय, तुम मुझे यहाँ नहीं छोड़ सकते, है ना? ये दुनिया दान के संत द्वारा निर्देशित है, और ऐसी महिला का संत जैसा वस्त्र धारण करना उसके विरुद्ध ईशनिंदा है, समझ रहे हो? मालिक, क्या बात है, मालिक भी उस औरत के जहर का शिकार हो गया है। फिर भी इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, इस तरह की बात निश्चित रूप से अपेक्षा के दायरे में है। मैंने अपनी जेब से द्वंद्वयुद्ध के लिए विशेष रूप से बनाई गई बंदूक निकाली जिसमें घातक गोलियां भरी हुई थीं और तेजी से गोली चला दी। क्या गा मास्टर वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है और अन्ना वहीं पवित्र बर्फ जागृति का प्रहार करती है। फिर मास्टर का सिर बर्फ में समा जाता है और तुरंत फट जाता है। ओह हम, मैं ऐसी जगह पर क्यों हूँ? मास्टर जी होश में आकर चारों ओर देख रहे हैं। मालिक हम, यह एलन बॉय है ना? तुम यहाँ क्यों हो और क्या हो रहा है? मास्टर ने मुझे देखा और उत्सुकता से पूछा। अन्ना ने ये देखा और मास्टर को पुकारा। आप एलन के तलवार मास्टर हैं, है ना? अरे एलन लड़के, संत के वेश में ये सुंदर महिला कौन है? गुरुजी, वह मेरी मंगेतर और रामस्लेट राज्य की पहली राजकुमारी अनास्तासिया सामा है। अरे रामस्लेट की राजकुमारी, एक्स माफ करना। मास्टर जल्दी से अन्ना के सामने घुटने टेक देता है। नहीं कोई बात नहीं, इससे भी महत्वपूर्ण बात, क्या आप जानते हैं कि मुझे एमी नाम की महिला कहाँ मिल सकती है? एमी, आह वह चैरिटी के संत जैसी व्यक्ति। हम ओह जरा सोचो तो, मैंने उस महिला को संत क्यों माना? जाहिर है मालिक, जिसे अतीत थोड़ा थोड़ा करके याद आ रहा है, अपनी गर्दन मरोड़ रहा है, यही उस महिला की शक्ति है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप जानते हैं कि वह महल में कहाँ है? आह मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने सुना है कि वह इन दिनों सिंहासन पर बैठी है। शायद मुझे यकीन है कि वह औरत महामहिम राजा अभी भी जिंदा है। अच्छा ठीक है, चलो एलन उसे रोकते हैं। ठीक है, माफ कीजिए गुरुजी। ओह और कृपया जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाए, ठीक है? मैं और मेरी माँ दोनों अब विशेन में रहते हैं, इसलिए अगर आप वहाँ आए तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आह ओह सावधान एलन लड़के। हाँ, महल के अंदर पहुँचते ही मैंने खुद को छिपाने के लिए एक धुएं का पर्दा बनाया। फिर अन्ना का हाथ मजबूती से पकड़कर मैंने छिपाना चालू कर दिया। ये भी एक ऐसी चीज है जिसे मैंने इस बार बहुत सारे शोध के माध्यम से खोजा है कि छिपाना लोगों या चीजों को तब तक छिपा सकता है जब तक वे उपयोगकर्ता के करीब हों। मुझे यकीन नहीं है कि यह इसलिए संभव था क्योंकि मैं छिपाना का इतना अधिक उपयोग कर रहा था कि मेरे कौशल का स्तर बढ़ गया था, या यह शुरू से ही संभव था, लेकिन मुझे पता चला कि यह वैसे भी संभव था। टीएन संभवतः शुरू से ही, क्योंकि उसके हथियार अदृश्य थे। इस प्रकार अन्ना के मार्गदर्शन में मैं आसानी से महल से होते हुए सिंहासन कक्ष के सामने पहुंच गया। फिर मैंने दूत के आने का इंतजार किया और उसके पीछे पीछे सिंहासन कक्ष तक गया। फिर एमी थी, जो एक भड़कीली पोशाक में सिंहासन पर गर्व से बैठी थी। उसके दोनों ओर युवराज और माकस बैठे थे। मंगा या गेम में यहीं से एमी के साथ झगड़ा शुरू होता है, जिसमें कहा जाता है तुम्हारे बुरे कर्म यहीं खत्म होंगे या ऐसा ही कुछ। लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं बनूंगा कि यहां आकर बकवास करूं और जोखिम बढ़ाऊं। पहली बात तो ये कि अन्ना के साथ जो हुआ उसके प्रति मेरी घृणा के अलावा अब मुझे एमी की कोई परवाह नहीं है। हम यहाँ केवल इसलिए आए थे क्योंकि अन्ना और जिन लोगों की हम रक्षा करने वाले हैं, अगर हम उन्हें अकेला छोड़ देते तो वे खतरे में पड़ जाते, और क्योंकि दुनिया में अव्यवस्था फैल जाती इसलिए हम उन्हें मारने आए थे। हाँ वास्तव में यही सब है, तो हम इसे एक ही वार में खत्म कर देंगे। अब अलविदा। मैंने सेगा को ऊपर उठाया, उसकी नली एमी के शरीर की ओर तान दी और ट्रिगर खींच दिया। दून अह घग गा क्या आश्चर्य। हालांकि उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी, मार्कस ने एमी और हमारे बीच हस्तक्षेप किया और उसकी रक्षा के लिए उसकी जगह ले ली। आह मुझे खुशी है मैं सुरक्षित रहा था। आह मेरी। इन शब्दों के साथ ही मार्कस के खून से लथपथ शरीर से धीरे धीरे शक्ति खत्म हो गई। नहीं मार्कस, क्यों मार्कस, एमी को रोते हुए देखना और ये तथ्य कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को गोली मारकर मार डाला जिसे मैं जानता था, मेरे मन में उसके लिए सहानुभूति की भावना भी नहीं आती। मेरे दिमाग में केवल यही प्रश्न घूम रहा है कि आखिर कैसे। ओह, जाहिर है मैं बहुत निर्दयी रहा हूँ। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं एमी पर अगली गोली चलाने के लिए फिर से सेगा को पकड़ता हूँ। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, अगले ही क्षण युवराज ने चिल्लाकर कहा और हमारे बीच की दूरी तुरंत कम कर दी। हालांकि अन्ना स्काई नाइट तलवार निकालती है और राजकुमार की तलवार को उससे रोक देती है। तलवारों की तलवारों से टक्कर हुई और कमरे में धातु जैसी ध्वनि गूंज उठी। अनास्तासिया, मेरे रास्ते से हट जाओ। यह आदमी न होता। क्राउन प्रिंस अन्ना को खत्म करने की कोशिश में अगला वार करता है। ये चाल हमने क्लास में देखी चाल से कहीं ज्यादा परिष्कृत है। ये जरूर कोई हीरो वाला बफ होगा जो उसने खुद पर लगाया है। अगर ये मुझे लग जाता तो शायद मैं एक ही वार में मर जाता। हालांकि अन्ना आसानी से युवराज की तलवार को रोक लेती है। युवराज उसकी चाल के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ अपना संतुलन खो देता है और लड़खड़ा जाता है। महाराज, अब अपने स्वप्न से जागने का समय आ गया है। क्या अन्ना, जिसने ऐसा कहा मानो उसे डांट रही हो, ने क्राउन प्रिंस की तलवार को हल्के से झटक कर उसे दूर कर दिया और फिर उसके पेट पर एक तेज किक मारी। गाह हा, युवराज का शरीर झुक गया, वे दर्द से कराह उठे और घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। स्तर में अंतर इतना अधिक है कि अब यह मेल भी नहीं रह गया है। स्काई नाइट का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आइस सेंट का आशीर्वाद और पवन पर्वत कालकोठरी के उच्च गति कालकोठरी के माध्यम से प्रशिक्षण के साथ अन्ना की वर्तमान स्थिति शारीरिक और जादुई शक्ति दोनों में एक ऐस है। यहां तक कि हीरो बफ के साथ भी वर्तमान क्राउन प्रिंस अपने पैरों पर खड़ा नहीं दिखता है। पवित्र बर्फ जागृति, क्राउन प्रिंस का सिर बर्फ में लिपट गया और तुरंत टूट गया। क्या मैं था एमी? अन्ना क्राउन प्रिंस पर अंतिम प्रहार करती है जो एमी द्वारा किए गए ब्रेन वॉश के विफल हो जाने के बाद भ्रमित हो जाता है। बर्फ से बंधी पवित्र दुनिया, अन्ना के जादू से युवराज का शरीर बर्फ में लिपट जाता है। यह क्या है अनास्तासिया? धिक्कार है। ओह मन, सभी चीजों का स्रोत मन, एक ज्वाला कवच बनो और मेरी रक्षा करो। ज्वाला कवच, युवराज अपने शरीर पर एक अग्नि कवच धारण करते हैं। अनुकूलता को देखते हुए इससे बर्फ पिघलनी चाहिए, लेकिन अन्ना द्वारा बनाई गई बर्फ पिघलने का कोई संकेत नहीं है। अरे, आग में बर्फ पिघलनी चाहिए। महाराज, वह बर्फ पवित्र बर्फ है, ये सामान्य तरीकों से नहीं पिघलेगी। आप जैसे हैं वैसे ही आपको बंदी बना लिया जाएगा। अरे लानत है अनास्तासिया, युवराज घृणा भरी निगाहों से अन्ना को घूरता है और जोर से चिल्लाता है। हालांकि जब वह चिल्लाया तो क्राउन प्रिंस का मुंह बर्फ से सील हो गया और वह और कुछ नहीं बोल सके। इसकी पुष्टि करने के बाद एना ने क्राउन प्रिंस में अपनी सारी रुचि खो दी और अपनी पीठ उसकी ओर मोड़ ली जो अभी भी कुछ बुदबुदा रहा था, और फिर एमी की ओर मुड़ी। मैंने अपनी साइगा को इस बार उसे जरूर मारने के लिए तैयार किया। हालांकि एमी अन्ना से नाटकीय और मधुर स्वर में बात करती है। अनास्तासिया सामा, कृपया जाग जाओ। अनास्तासिया सामा ऐसा नहीं चाहती थी। ये वह पंक्ति है जो खेल में नायिका ने खलनायिका से कही थी जो अंतिम लड़ाई के दौरान अंधेरे से भ्रष्ट हो गई थी। अब समझ आया, खेल में यहाँ दान के संत की शक्ति सक्रिय थी और इससे जादुई तलवार की शक्ति कमजोर हो जाती थी क्योंकि इससे उसकी निराशा कुछ हद तक दूर हो जाती थी। लेकिन यहाँ अन्ना किसी जादुई तलवार में नहीं फंसी है, और यदि ऐसा होता भी तो न तो क्राउन प्रिंस और न ही मार्कस जो एमी की रक्षा करता है कमजोर खलनायक से लड़ने और उसे हराने में सक्षम हो पाता। लेडी संत, अचानक हुई इस स्थिति से स्तब्ध सैनिकों को होश आया और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। जैसे ही मैंने उन्हें रोकने के लिए अपना साइगा आगे बढ़ाया, अन्ना ने मुझे रोकने के लिए एक छोटा सा इशारा किया और फिर उसने अपना जादू चलाया। पवित्र बर्फ जागृति, अगले ही क्षण सैनिकों के सिर को पवित्र बर्फ से ठंडा कर दिया जाता है और उनका ब्रेन वॉश बंद कर दिया जाता है। एह क्या हो, होश में आने पर सैनिक रुक जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब एमी ने ये देखा तो वह बहुत परेशान हो गई। हाय हाय, क्यों तुम खलनायिका यहाँ क्यों हो? क्या हो रहा है? कोई पवित्र बर्फ अवरोध, अन्ना ने एक और अनजान जादू किया और सिंहासनों के बीच बर्फ का एक गुंबद बन गया और हमें घेर लिया। शायद यह उस बर्फ के संत जादू जैसा ही है जिसने युवराज को रोक रखा था। मैंने साइगा को एमी की ओर इशारा किया, लेकिन अन्ना ने मेरी ओर देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। जहां तक मेरा सवाल है, शब्दों का आदान प्रदान करना भी बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं अभी एमी को गोली मार देना चाहता हूं, लेकिन जाहिर है अन्ना के पास एक विचार है। जब मैंने अपनी बंदूक नीचे की और थोड़ा सा सिर हिलाया तो अन्ना ने भी सिर हिलाया और फिर एमी के पास पहुंची। अरे हाय, कोई मेरी मदद करो, कोई, एमी चीखती हुई भागती है और बर्फ तोड़ने की कोशिश में गुंबद की दीवार पर जोर से मारती है। लेकिन जाहिर है बर्फ नहीं टूटती। अरे छोड़ो भी, चाहे आपने उनका कितना भी ब्रेन वॉश कर लिया हो, मार्कस और क्राउन प्रिंस दोनों ने आपकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, और यही तो आप बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। बर्फ बंधन। जब अन्ना ने अपना जादू चलाया तो बर्फ ने एमी को रोक लिया। फिर एमी को अपनी ओर घुमाने के लिए मजबूर करते हुए अन्ना ने भावशून्य स्वर में एमी से कहा, आप जानते हैं मेरा मानना है कि अगर लोगों को अपने पापों का पश्चाताप हो और वे अपने पापों का प्रायश्चित कर लें तो उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। स्वागत है दोस्तों, सबसे पहले देरी के लिए और कुछ भी न बताने के लिए क्षमा चाहता हूँ। __ greater than मैं अपनी वास्तविक जिंदगी की स्थिति से काफी निराश था और ब्रेक पर था, इस वजह से मुझे सिर्फ 3 अध्याय पूरे करने में 1 महीना लग गया। खैर अब हम युद्ध के अंतिम चरण पर हैं, अध्याय का आनंद लें। अनिनसार। अन्ना की बातें सुनकर एमी, जो हल्के से घूम गई थी, के चेहरे पर आशा भरी अभिव्यक्ति थी। शायद एमी ने सोचा कि वह उसे बचा लेगी, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें माफ नहीं कर सकता, तुमने युवराज और उन लोगों को बहकाया और भ्रष्ट किया है जो भविष्य में सेंट्रल किंगडम के स्तंभ बनने वाले थे। नतीजतन इस देश में इतनी उथल पुथल मच गई है कि कई निर्दोष लोगों का खून बह गया है। अन्ना ने एमी से यह बात एक ठंडे भाव से कही जो मैंने काफी समय से नहीं देखा था। फिर वह अपनी आवाज का लहजा बदलती है और गुस्से के साथ कहती है, यही सब नहीं है, किसी अज्ञात कारण से तुमने मुझे ईस्ट एम्पायर को बेचने की हिम्मत कैसे की? क्या ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम एक महिला के रूप में आकर्षक नहीं थी? एमी ने अन्ना के गुस्से पर उन्मादपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की। नहीं, ये खंडन भी नहीं है। सबसे पहले तो उसमें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह उस व्यक्ति को इस तरह से जवाब दे जिससे उसे अपनी जान की भीख मांगनी चाहिए। उस आदमी और मेरी सगाई सिर्फ राजनीतिक मकसद से हुई थी, अगर कोई फर्क भी था तो प्यार नहीं था। फिर भी मेरी पवित्रता को भंग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और एलन पर भी ऐसे घातक घाव करने की? इना अपना गुस्सा एमी पर निकालती है, हालांकि किसी कारण से एमी जोरदार वापसी करने की कोशिश कर रही है। फुफू हम, लेकिन ये तो बहुत बुरा हुआ, दर्जनों आदमियों ने तुम्हें अपवित्र किया है, यही तुम्हारी सजा है। नहीं, आखिर हो क्या रहा है? क्या उसे पता भी है कि अभी क्या हालात हैं? फुफू आपको निराश करने के लिए क्षमा करें, मेरी पवित्रता सुरक्षित है, प्रकाश की आत्मा ने मेरी रक्षा की। लेकिन अन्ना ने विजयी भाव से यह कहा और अपने दाहिने हाथ से परी के बालों के आभूषण को धीरे से छुआ। आह, अजीब सी आवाज में एमी अन्ना को भयानक भाव से घूर रही है। पहले तो एलन की तरह मैंने भी सोचा था कि तुम्हें मार देने से सब कुछ कितनी जल्दी सुलझ जाएगा, लेकिन जब मैंने देखा कि महामहिम का ब्रेन वॉश करने के बाद मार्कस का क्या हुआ, और जब तक हम यहाँ आए एलन के तलवारबाज और उन सभी सैनिकों का क्या हुआ जिनका ब्रेन वॉश मुझे तोड़ना था, तो मैंने अपना विचार बदल दिया।
तब फिर वह तुरंत आशान्वित दिखती है। नहीं, सच में मुझे समझ नहीं आ रहा इस औरत के दिमाग में क्या चल रहा है। इसके बाद जो शब्द आए वे किसी भी तरह से सकारात्मक नहीं होंगे। ओह, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, लेकिन मुझे वो आवाज बंद कर लेने दो। अह, ये सुनकर एमी की आंखें चौड़ी हो गईं। बर्फ में सन्नाटा छाया हुआ है, चांदी जैसी दुनिया में कोई आवाज नहीं है। हे मेरी पवित्र बर्फ, अनातासिया क्लेनर वॉन रामस्लेट के नाम पर मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, ईर्ष्या की भयावह चुड़ैल एमी वॉन ब्लीस की आवाज को शांत करो जो मेरे सामने खड़ी है, पवित्र बर्फ की आवाज की मुहर। तभी एमी का गला बर्फ से लिप गया जो तुरंत टूटकर गायब हो गया। एमी घबरा जाती है और फिर नीली पड़ जाती है जब उसे पता चलता है कि वो बोल नहीं सकती। अब यह महिला कभी नहीं बोल पाएगी। चलो एलन, मैंने हल्का सा सिर हिलाया और क्राउन प्रिंस तथा एमी को अपनी बनाई हुई रस्सी से बर्फ के चारों ओर लपेट दिया। अन्ना तुम तैयार हो? ओह, चलो इन दोनों को साथ लेकर भाग चलें। नहीं, उससे पहले, अन्ना ने ऐसा कहा और मार्कस के पास गई जो खून के तालाब में डूब रहा था। हो सकता है कि बहुत देर हो चुकी हो, लेकिन कुछ न कुछ तो हो ही सकता है। ऐसा कहकर अन्ना ने पवित्र बर्फ जागृति और पवित्र बर्फ उपचार का प्रयोग तेजी से किया। इसके बाद मार्कस पवित्र बर्फ में लिप गया। क्या वो कम से कम एक बार भी सांस ले रहा था? ये बहुत ही असंभव है कि मार्कस के शरीर पर शॉटगन से हमला होने के बाद वो बच जाएगा। और यद्यपि मार्कस एमी के प्रति आसक्त था, वो उन लोगों में से एक था जो लंबे समय से अन्ना को परेशान कर रहे थे। यद्यपि मार्कस उसका शत्रु था, फिर भी उसने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया, जैसी कि उम्मीद थी अन्ना को निश्चित रूप से संत बनने के लिए चुना गया। और मुझे यकीन है कि वह बाहर युद्ध में शहीद हुए सैनिकों का इलाज करना चाहती है, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि गेहौत्सान ने मना किया है। अब हम इस बार बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, चलो चलें। इस तरह हम शाही महल से भाग निकले, एमी और युवराज को बर्फ पर घसीटते हुए और रास्ते में आने वाले हर सैनिक का दिमाग खराब करते हुए। फिर हम जेरोम की पीठ पर सवार होकर मुख्य शिविर की ओर बढ़े जहां द्वितीय राजकुमार और ड्यूक श्लेस्टीन थे। क्या भाई, महामहिम युवराज, दूसरे राजकुमार और ड्यूक शिलेस्टीन ने आश्चर्य से कहा। हमने खुद उसे शाही महल से अगवा किया था, जैसा कि पहले ही वादा किया गया था। युवराज को सौंप दिया जाएगा, कृपया जैसा चाहें वैसा करें। क्राउन प्रिंस बड़बड़ा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह क्या कह रहे हैं। तो उस चुड़ैल के बारे में क्या? हाँ, मेरा रामस्लेट राज्य उसे उचित दंड देगा और उसका निपटारा करेगा। उसकी आवाज पहले ही दबा दी गई है, इसलिए वह इससे बुरा कुछ नहीं कर पाएगी। क्या ऐसा है? लेकिन हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण हिस्से खुद ही किए हैं। आप जानते हैं महामहिम ड्यूक, हम आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं, ठीक है? हाँ, फिर हम जेरोम कुन के साथ उड़ गए और ड्यूक को पीछे छोड़ दिया, जिसने तीखी प्रतिक्रिया दी, और क्राउन प्रिंस को, जो बर्फ से मुक्त हो गया था। वैसे अन्ना, तुम इस औरत के बारे में क्या करने वाली हो? ओह, मैंने सुना है कि यह महिला लंबे समय से कह रही है कि उसे उम्मीद है कि कुछ गुंडे मेरे साथ बलात्कार करेंगे। एक महिला होने के नाते मुझे समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों सोचती है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर वह भी मेरे जैसे हालात से गुजरे तो मुझे थोड़ा बेहतर महसूस होगा। यह सही है। ओह, मैंने सुना है कि खदानों में वेश्याओं को बहुत ऊंचे वेतन पर काम पर रखा जाता है, लेकिन फिर भी यह एक कठिन काम है। इसलिए मैंने सुना है कि बहुत कम लोग स्वेच्छा से इसके लिए आगे आते हैं और जल्द ही उन्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। जो बचते हैं वे इस महिला जैसे ही होते हैं जिन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। एमी, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था और मुंह खुला हुआ था, बर्फ में फंसी हुई थी, कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज में एक शब्द भी नहीं निकला। इस प्रकार एमी के साथ हमारी लड़ाई समाप्त हो गई। अंतिम अध्याय, ग्रामीण ए ने खलनायिका के साथ विवाह बंधन में बंध गया। लूडन की लड़ाई के बाद दिन तेजी से बीत गए हैं और पतझड़ आ गया है। अब तक मैं एमी द्वारा ब्रेनवॉश किए गए लोगों को छुड़ाने और सेंट्रेरन साम्राज्य के साथ युद्ध समाप्ति की बातचीत में व्यस्त था। खैर, इन लगातार परेशानियों के कारण यह मुश्किल हो रहा था। सबसे पहले हम तब मुश्किल में पड़ गए जब इस डी ब्रेनवॉशिंग प्रक्रिया के दौरान हमसे अन्ना को चर्च को सौंपने के लिए कहा गया। चर्च को शायद एक डायन का समर्थन करके अपने अंदर पैदा हुए अविश्वास को दूर करना था, लेकिन हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। चूंकि रामस्लेट राज्य का चर्च मूलतः रामस्लेट गुट का सह संस्थापक था, इसलिए घरेलू चर्च को सेंट्रेरन के चर्च से स्वतंत्र बनाकर इसका समाधान किया गया। हालांकि चूंकि मूल विचार एक देश और एक पैरिश का है, इसलिए इसे स्वीकार कर लिया जा सकता है। इसके अलावा सेंट्रेरन किंगडम के साथ युद्ध समाप्ति की बातचीत भी थोड़ी गड़बड़ा गई थी। गेहौत्सान एक बार गुस्से में आकर मेज छोड़कर चले गए, जिससे झड़प हो गई। दूसरा पक्ष संभवतः सर्वोत्तम संभव शर्तों की तलाश में था, लेकिन अंत में उन्होंने देश के दक्षिण पश्चिम में अन्न भंडार का एक हिस्सा और देश के दक्षिण पूर्वी भाग में पहाड़ी क्षेत्र का एक हिस्सा देकर समझौता कर लिया। हम भाग्यशाली थे कि यह पहाड़ी क्षेत्र हमें दे दिया गया, इसलिए मेलिसा और जेरोम के साथ फ्लाइंग ड्रैगन घाटी का पूरा क्षेत्र हमारा क्षेत्र बन गया। दूसरी ओर सेंट्रेरन साम्राज्य ने अपने भूभाग का 40% से अधिक तथा गेहूं उत्पादन का भी अधिक हिस्सा खो दिया। हमने मूल रूप से अपनी पूर्व व्यवस्था के अनुसार सीमाओं को स्थानांतरित न करने की योजना बनाई थी। यही कारण है कि हमने ड्यूक शिलेस्टीन को कई बार पकड़ा था। खैर, वे अभी भी इस पर जोर दे रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वे इसके हकदार हैं। इसके अलावा यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो अन्य देश हम पर कड़ी नजर रखेंगे, और यह ऐसी बात है जिसके बारे में हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सहयोगवश युवराज, या यूं कहें कि पूर्व युवराज, जिसने इतना कुछ किया था, को नए राजा द्वितीय युवराज द्वारा एक हल्की सजा दी गई तथा उसे मृत्युदंड दिए बिना उसके उत्तराधिकार के अधिकार को छीन लिया गया। मैंने जो सुना है उसके अनुसार पूर्व क्राउन प्रिंस मानसिक रूप से काफी सदमे में हैं और उन्होंने अपने कमरे से बाहर आना बंद कर दिया है, और अभी तक उनकी हालत में कोई खास बदलाव नहीं आया है। खैर, मुझे नहीं पता कि वो बाहर आएंगे या नहीं आ सकते। इसके अलावा उस देश में अभी भी एक बड़ी आग सुलग रही है क्योंकि पूर्व राजा को कैद कर लिया गया था, लेकिन अब ये हमारी चिंता का विषय नहीं है। न तो मुझे और न ही अन्ना को अब इस बात में कोई दिलचस्पी है कि पूर्व युवराज या पूर्व राजा के साथ क्या होता है। अतीत को दोहराना और अब बदला लेना समय की बर्बादी है। चूंकि हम इतने खुश हैं, मैं उस खुशी को अन्ना और अपने परिवार के साथ बांटना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर मैं ऐसा करने में समय लगा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि उस समय का उपयोग उन लोगों के लिए करना ज्यादा सार्थक होगा जिनकी हमें रक्षा करनी है। ओह, वैसे शायद आपको इसमें रुचि न हो, लेकिन क्लाउड, जो एमी के रिवर्स हरेम सदस्यों में से एक था, के बारे में मैंने जो एकमात्र अफवाह सुनी है वह ये है कि वह बीमारी से उबर रहा है। संक्षेप में यही तो बात है। जहां तक मेरी बात है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। अब आज मेरे और अन्ना के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित विवाह दिवस है। मैंने एक शानदार टक्सीडो पहना और पवित्र समारोह में शामिल होने के लिए निकल पड़ा। चूंकि यह रामस्लेट साम्राज्य की प्रथम राजकुमारी अन्ना का विवाह है, इसलिए देश विदेश से कई मेहमान उपस्थित हैं। ज़ोस साम्राज्य से महामहिम राजा, महामहिम रानी और द्वितीय राजकुमारी, एस्ट साम्राज्य से महामहिम तृतीय राजकुमार, नॉसन के यूनाइटेड किंगडम से महामहिम प्रथम राजकुमार, वेस्टडेल साम्राज्य से महामहिम प्रथम राजकुमारी और सेंट्रेरन साम्राज्य से महामहिम राजा लुडविग, जो कम उम्र में ही सिंहासन पर बैठे थे, उनकी मंगेतर श्लेस्टीन की डचेस और ऑस्कर तथा अब स्वस्थ मार्कस भी उपस्थित थे। टीएन, तो लियो के अलावा बाकी सभी जीवित हैं। उसके बाद मार्कस बच गया और उसने अन्ना से माफी मांगी, जिसे अन्ना ने स्वीकार कर लिया और उसे माफ कर दिया। हालांकि इन सब गड़बड़ियों के चलते मार्कस की अपने माता पिता के घर में स्थिति काफी नाजुक है और वह बेदखल होने के कगार पर है। मैंने सुना है कि वह अपना नाम साफ करने की कोशिश कर रहा है, मानो वो बदल गया हो। मैं अकेले ही विशेन कैथेड्रल के गलियारे से होते हुए, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, वेदी के सामने तक गया और फिर मुड़कर प्रवेश द्वार की ओर देखा। आगे की पंक्ति में मेरी माँ बैठी हैं, उनके साथ एलिजाबेथ सान और फ्रेडरिक सान भी हैं, जो पहले से ही फूट फूट कर रो रहे हैं। नहीं, अभी तो जल्दी है, तुम्हें पता है, लेकिन सच में शुक्रिया। थोड़ी देर इंतजार के बाद चर्च के दरवाजे खुले और अन्ना अपनी शादी की पोशाक में गेहोर्ड सान के साथ प्रकट हुई। हालांकि मैं अन्ना के चेहरे के भाव नहीं देख पाया, जो घूंघट से छिपे हुए थे, लेकिन मुझे लगा कि उनके चेहरे पर खुशी और अकेलेपन के मिले जुले भाव थे। वे धीरे धीरे गलियारे से होते हुए हमारी ओर आ रहे थे। ये देखना बहुत मजेदार था कि छोटे बच्चे अन्ना को गलियारे से होते हुए उसकी खूबसूरत पोशाक और घूंघट का किनारा ऊपर उठाने में मदद कर रहे थे। फिर वे मेरे सामने आए, मैंने गेहोर्ड सान की तरफ देखा और उनसे आगे बढ़कर उनकी सुरक्षा का जिम्मा ले लिया, और फिर हम दोनों वेदी के सामने पहुंच गए। उपस्थित लोग खड़े हो गए, पाइप ऑर्गन बजाते हुए भजन गाए गए और फिर उपस्थित लोगों को बैठा दिया गया। फिर पादरी ने बाइबल से प्रेम पर प्रवचन दिया और प्रार्थना की। फिर मुझे पादरी से पुष्टिकरण मिला। दूल्हे एलन, क्या आप अनातासिया को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, ताकि आप बीमारी और स्वास्थ्य में, खुशी और दुख में, अमीरी और गरीबी में एक दूसरे को प्यार, सम्मान, सांत्वना और सहायता प्रदान करें, जब तक आप जीवित रहें, उसके प्रति वफादार रहें और मृत्यु तक वफादार बने रहें? हाँ, मैं कसम खाता हूँ, मैंने बिना रुके उत्तर दिया। दुल्हन अनातासिया, क्या आप एलन को अपना पति मानती हैं, जिससे आप बीमारी और स्वास्थ्य में, खुशी और दुख में, अमीरी और गरीबी में एक दूसरे को प्यार, सम्मान, सांत्वना और सहायता देंगी, जब तक आप जीवित हैं, उसके प्रति वफादार रहेंगी और मृत्यु तक वफादार रहेंगी? अनातासिया एक क्षण रुकती है, फिर सांस लेती है और अपना मुंह खोलती है। हाँ, मैं कसम खाता हूँ, फिर पुजारी हमसे पूछता रहता है, क्या आप एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं? हमने एक दूसरे की ओर देखा, फिर बिना संकेत दिए एक साथ उत्तर दिया, हाँ, मैं इसे पेश करता हूँ। फिर हमारे सामने एक अंगूठी लाई गई। यह अंगूठी कीमती मिथ्रिल से बनी थी और इसके अलावा यह एक खास अंगूठी थी जिसे अन्ना ने उस विकृत व्यक्ति से आत्माओं का आशीर्वाद देने के लिए कहा था। तो फिर अंगूठी बदल लो। दूल्हे एलन, क्या तुम यह अंगूठी दुल्हन अनातासिया के प्रति अपने प्यार की निशानी के तौर पर दे रहे हो? हाँ, मैं देता हूँ। दुल्हन अनातासिया, क्या आप दूल्हे एलन की ओर से प्यार के प्रतीक के रूप में इस अंगूठी को स्वीकार करती हैं? हाँ, मैं इसे प्राप्त करता हूँ। दुल्हन अनातासिया, क्या आप दूल्हे एलन के प्रति अपने प्यार की निशानी के रूप में यह अंगूठी दे रही हैं? हाँ, मैं देता हूँ। दूल्हे एलन, क्या आप दुल्हन अनातासिया की ओर से प्यार के प्रतीक के रूप में इस अंगूठी को स्वीकार करते हैं? हाँ, मैं इसे प्राप्त करता हूँ। तो फिर अंगूठियाँ बदल लो। फिर मैंने अपनी शादी की अंगूठी एना के हाथ में पहनाई और उसने अपनी अंगूठी मेरे हाथ में पहनाई। मैं हमेशा एना का हाथ थामे रहता हूँ, लेकिन आज शायद इसलिए कि उसने शादी का जोड़ा पहना है, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। फिर घूंघट उठाओ और अपनी दुल्हन को चूमो, पुजारी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा, और मैंने धीरे से अन्ना का घूंघट उठाया। वहां मुझे अन्ना का चेहरा दिखाई दिया, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत जिससे मैं प्यार करता हूँ। उसके चेहरे पर एक सौम्य भाव और गालों पर एक हल्की सी लाली, और हाँ, मैं कैसे कहूँ, वो अप्रतिरोध्य है। एलन, माफ करना, मैं मोहित हो गया था, मूर्ख। फुसफुसाहट में हुई इस बातचीत के बाद मैं धीरे से अन्ना को चूम लेता हूँ। तो फिर अपने विवाह प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करें। मैं और एना दोनों हस्ताक्षर करते हैं और अंत में पुजारी भी हस्ताक्षर करता है। देवियों और सज्जनों, अभी अभी एक जोड़ा पैदा हुआ है जिसने ईश्वर से एक मन्नत मांगी है, कोई भी उन्हें अलग नहीं कर पाएगा। विवाह समारोह अब समाप्त हो गया है। इस तरह अन्ना और मैं विवाहित जोड़े बन गए। मैं अपनी प्रेमिका को गलियारे से नीचे ले जाती हूँ। वहाँ कई जाने पहचाने चेहरे हैं जिन्हें मैं पहले इतनी घबराहट में देख नहीं पाई थी। मार्गरेट और इसाबेला, जो पीछे की ओर मास्टर और वरिष्ठ साहसी हैं, और यहाँ तक कि मोनिका सान भी उपस्थित हैं। हालांकि मोनिका सान के अलावा मास्टर और सेनपाई अपने सूट में पूरी तरह से बेमेल लग रहे थे, जो उधार लिए हुए लग रहे थे, और मैं थोड़ा हंसा। जैसे ही हम उनके पास से गुजरे, गिरजाघर के दरवाजे खुल गए। जब हम दरवाजे से बाहर निकले तो जोरदार जयकारे के साथ हमारा स्वागत हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने सारे लोग जश्न मनाने आए हैं। एलन सान, अन्ना चान, आप अंततः पति पत्नी बन गए हैं, है ना? बधाई हो। एलन सान, अन्ना सान, बधाई। मेलिसा चान और जेरोम कुन गिरजाघर के सामने चौक में खड़े हैं। मेलिसा चान ने अपनी पूंछ पर एक रिबन बांध रखा है और जेरोम कुन ने टाई पहन रखी है। दोनों ही खास तौर पर रामस्लेट साम्राज्य के राज चिन्ह पर सिलकर बनाए गए हैं। धन्यवाद मेलिसा चान, जेरोम कुन। जैसे ही हमने उन्हें धन्यवाद दिया, मेलिसा चान और जेरोम कुन के बीच एक नन्ही सी ड्रैगन प्रकट हुई। उसका नाम सीएल चान है और वह मेलिसा चान और जेरोम कुन की प्यारी बेटी है। मेलिसा चान की तरह उसका शरीर भी सुंदर और गोरा है, हालांकि उसकी आंखें जेरोम की तरह सुनहरी हैं। क्यों? तभी सीएल चान मीठी मीठी आवाजें निकालते हुए दौड़ता हुआ हमारे पास आया। हम पहले भी कई बार वहां जा चुके हैं और सीएल चान को हमसे बहुत लगाव हो गया है। हम धीरे से सीएल चान को सहलाते हैं और वह प्रसन्नतापूर्वक अपनी आंखें सिकोड़ लेती है। मैंने सीएल चान को अपनी बाहों में लिया और हम दोनों उस टोकरी में चढ़ गए जो हमारे सामने रखी थी। आमतौर पर हम घोड़ागाड़ी में बैठकर पूरे शहर में परेड करते, लेकिन मेलिसा चान का विचार था कि जेरोम कुन टोकरी को हवा में लटकाकर उड़े। मेलिसा चान के लिए यह शायद सिर्फ उन्हें भाग लेने के लिए राजी करने का मामला था, लेकिन विभिन्न देशों के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में ये प्रदर्शन काफी चौंकाने वाला रहा होगा। फिर हम जिस टोकरी में बैठे हैं वह धीरे धीरे आकाश में तैरती है और सड़क पर चलती है, लगभग 5 से 6 मीटर की ऊंचाई बनाए रखती है। सड़क पर लोग हाथ हिला रहे थे। जब हमने भी हाथ हिलाया तो मेरी नज़र अन्ना से मिली। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और मैं अन्ना को बताता हूँ कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। अन्ना, मुझसे शादी करने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हें खुश रखूंगा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओह एलन, मैं भी नहीं, शादी तो पहले ही खत्म हो चुकी है ना? ठीक है, अन्ना ने ये कहते हुए दृढ़ निश्चय दिखाया और फिर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कान दी। एलन, मैं भी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मेलिसा चान, जो ये सुन रही थी, आश्चर्यचकित होकर बुदबुदाई। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम दोनों एक दूसरे की मदद करोगे और खुश रहोगे, है ना? जब मैंने ये सुना तो मैंने बारी बारी से मेलिसा चान और जेरोम कुन को देखा और फिर सीएल चान को, जो मेरे पैरों के पास छटपटा रहा था। और अंत में जब मैंने अन्ना की ओर देखा तो मैंने व्यापक रूप से सिर हिलाया। यह सही है, हाँ अन्ना, चलो साथ मिलकर खुश रहें। हाँ एलन, मेरे पति। हमने एक दूसरे की ओर देखा और लगातार बधाई के बीच एक दूसरे को भावुकता से गले लगा लिया। रिंगून, रिंगून। विशेन के उत्साही शहर में गिरजाघर की घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। टील नोट। इसके साथ ही उपन्यास की मुख्य कहानी समाप्त हो जाती है। एमी का एक और पीओवी बाकी है जो आफ्टवर्ड्स के बाद एक अतिरिक्त के रूप में रिलीज हुआ था। मैं उसे और आफ्टवर्ड्स को अगले हफ्ते बाद में एक साथ अपलोड करूंगा।